जाओ शिजी, अज्ञानी मत बनो। क्या आप जानते हैं कि कितने लोग देश की सेवा करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास सेवा करने का कोई रास्ता नहीं है? क्या कृतघ्न झाओ वुजियांग, राजधानी में तुम्हारी अनैतिकता और पागलपन के बारे में अफवाहें फैल रही हैं? आज तुम्हें देखकर ये सच है। झाओ वुजियांग, अभी तो तुम घमंडी हो, लेकिन अगर तुमने शाही हुक्म का खुलेआम उल्लंघन किया तो अगला कदम तुम्हारी 9 पीढ़ियों का विनाश होगा। अधिकारियों ने उन पर मौखिक हमला किया और उनकी आलोचना की। लॉन्ग जान भी खड़ा हुआ और बोला, झाओ वुजियांग, सम्राट तुम्हें प्यार करता है और चाहता है कि तुम अपने पिता की वसीयत को विरासत में दो, उत्तरी सीमा की रक्षा करो और देश की सेवा करो। तुम मना क्यों करते हो? कमांडर लॉन्ग सही कह रहे हैं, सीमा की रक्षा करना आपके पूर्वजों के लिए गौरव की बात है। झाओ वुजियांग को केवल अपने आनंद की परवाह है, उसे मौत का डर है। उत्तर के प्रतिष्ठित राजा ने वास्तव में एक अविश्वासी स्वार्थी खलनायक को जन्म दिया। अधिकारी और अधिक उत्तेजित हो गए, मानो वे झाओ वुजियांग का इस बात के लिए कटु उपहास कर रहे हों कि उसने इतना अच्छा अवसर क्यों नहीं भुनाया जो वे चाहते थे लेकिन पा नहीं सके। इससे भी अधिक घृणित बात यह थी कि सभी की नजरों में झाओ वुजियांग अपने कान नोच रहा था, उदासीन और बेजान दिख रहा था। उसने चारों ओर देखा, चूंकि आप सभी इतने वाकपटु हैं तो आप क्यों नहीं जाते? जैसे ही उसने ये कहा, सारा स्थान शांत हो गया। झाओ वुजियांग ने व्यंग्य किया। लॉन्ग जान को पता था कि यह लोगों का दिल जीतने का एक अच्छा मौका है। झाओ शिजी, वयस्कों ने कड़ी मेहनत की है और महान योगदान दिया है, अब वे बूढ़े हो गए हैं, वे यात्रा का सामना कैसे कर सकते हैं? अब समय आ गया है कि ग्रेट जिया के युवा पुरुष लहर दर लहर उठें। झाओ वुजियांग मुस्कुराया और कहा, तो आप पहले जाएंगे, मैं आजकल व्यस्त हूँ। मैं भी व्यस्त हूँ, मेरे पिता ने मुझे सपने में कहा था कि मैं उन्हें जल्दी से एक पोता दे दूँ। झाओ वुजियांग के शब्दों ने ली ज़ायुआन की आंखों को डुबा दिया। क्या मैं अपनी बेटी के लिए इतना उत्सुक हूँ कि वह तुम्हारे लिए एक बच्चा पैदा करे? झाओ वुजियांग, महाराज, झाओ वुजियांग ने पहल करते हुए कहा, देश की सेवा करना इस विषय का कर्तव्य है। हालांकि यह विषय युवा और अज्ञानी है और मेरा शरीर शराब और महिलाओं द्वारा खोखला कर दिया गया है। यह महत्वपूर्ण कार्य इस विषय को शर्मिंदा और सहन करने में असमर्थ लगता है। ली ज़ायुआन के चेहरे पर धुंधली मुस्कान थी। झाओ वुजियांग को पता था कि वह हार नहीं मानेगा और उसने आगे कहा, लेकिन यह विषय निश्चित है कि हिंसान की धमकियां सिर्फ दिखावा हैं। क्या तुम्हें इतना यकीन है? ली ज़ायुआन ने पूछा। दरबारियों ने एक के बाद एक सलाह दी, महाराज, युद्ध कोई बच्चों का खेल नहीं है। झाओ वुजियांग बस बहाने ढूंढ रहा है। भगवान यान सही कह रहे हैं, यह विषय आपके महामहिम से शाही आदेश की अवहेलना करने के लिए झाओ वुजियांग को कड़ी सजा देने की विनती करता है। यह विषय सक्रिय रूप से झेनबेई राजा की हवेली में जाकर उसकी संपत्ति जब्त करने का अनुरोध करता है। अगर झाओ वुजियांग नहीं जाता है तो हमारे पास अभी भी विकल्प के रूप में कमांडर लॉन्ग हैं। हाँ, कमांडर लॉन्ग वहां हैं। लॉन्ग जान का चेहरा तमतमा उठा। ये पुरानी चीजें मुझे क्यों परेशान कर रही हैं? ली ज़ायुआन की नज़र हमेशा झाओ वुजियांग पर थी। अगर आपका अनुमान गलत हो गया जिससे हिंसान ग्रेट ज़िया की उत्तरी सीमा पर हमला कर दे तो आपको क्या करना चाहिए? झाओ वुजियांग जानता था कि ये लोग उसे आसानी से जाने नहीं देंगे, इसलिए वह केवल गारंटी दे सकता था। यदि हिंसांग ने ग्रेट ज़िया के क्षेत्र के एक इंच पर आक्रमण करने की हिम्मत की तो यह विषय चिए रिझाओ के शरीर से मांस का एक टुकड़ा काट देगा। यदि वे एक पैर पर आक्रमण करने की हिम्मत करते हैं तो यह विषय चिए रिझाओ की बांह काट देगा, और उस समय यह विषय मौत से माफी मांगने के लिए तैयार है और महान ज़िया को विदेशी दुश्मनों का विरोध करने में मदद करने के लिए झेनबेई राजा की हवेली की सभी बचत की पेशकश करने के लिए तैयार है। ये कहते ही सारा स्थान शांत हो गया। दरबारियों ने आश्चर्य से झाओ वुजियांग को देखा। उन्होंने शुरू में सोचा था कि झाओ वुजियांग एक शराब की थैली और चावल की बोरी थी जो जीवन के लिए लालची थी और मौत से डरती थी, लेकिन उन्होंने उससे ऐसी बातें कहने की हिम्मत करने की उम्मीद नहीं की थी। इस बच्चे ने अपनी मौत की गारंटी दे दी है, वे और क्या कह सकते हैं? कहने को और कौन सा चेहरा बचा है? यहां तक कि लॉन्ग जान भी कुछ देर के लिए अवाक रह गया। उसे महसूस हुआ कि उसने झाओ वुजियांग में वह प्रतिभा देखी है जो मूल रूप से उसकी थी। ली ज़ायुआन ने कुछ देर तक झाओ वुजियांग को देखा। ये देखते हुए कि झाओ वुजियांग ने अब तक सब कुछ कह दिया है, वह केवल कुछ समय के लिए हार मान सकता था और इंतजार कर सकता था कि क्या होता है। अल्पविराम, प्रारंभिक अदालत में जो बातें हुई वे तेजी से फैल रही हैं। ली युनरुई मूल रूप से इंपीरियल स्टडी में सुलेख की नकल कर रही थी, लेकिन जब उन्होंने चेन गोंगगोंग द्वारा बताई गई खबर सुनी तो उन्होंने अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाई। झाओ वुजियांग ने वास्तव में खुले तौर पर पिता सम्राट से अपना आदेश वापस लेने के लिए कहा था। चेन झेंगहुआ ने दयालुता से मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। सातवीं राजकुमारी शिजी ने एक बार दरबार में अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया था। ये सिर्फ इतना है कि चीफ चेन को उम्मीद नहीं थी कि सातवीं राजकुमारी इतनी खुशी से उछल पड़ेगी। ऐसा लगता है कि सम्राट की राय की अवज्ञा करना बहुत सराहनीय बात है। क्या ऐसा हो सकता है कि बड़ी होने पर बेटियों का हृदय विद्रोही हो जाए? लियुनरुई ने अपने छोटे छोटे पैर हिलाए और दरबार में झाओगुजियांग की अतुलनीय राजसी आभा की कल्पना की। उसके नाजुक चेहरे पर मुस्कान और गहरी होती गई। झाओगुजियांग अपने लियुनरुई की पत्नी बनने के योग्य है, वह जो करना चाहती थी वह कर रही है, इतनी राजसी है और अंत में बिना किसी नुकसान के वापस लौट रही है। लियुनरुई ने चीफ चेन को कुछ सोना देते हुए कहा, अगर पिता सम्राट के पास झाओगुजियांग के बारे में कोई नई खबर है तो इस राजकुमारी को जल्द से जल्द बताना, याद रखें। अल्पविराम। झेनबेई किंग्स हवेली। झाओगुजियांग, जो लंबे समय से दरबार से वापस नहीं आया था, पहले अपने कौशल का अभ्यास कर रहा था, जब सबसे बड़ी राजकुमारी ली झाओ हुआ फिर से मुखौटा पहनकर निजी तौर पर उससे मिलने आई। तुम फिर यहाँ क्यों आए हो? आसपास कोई न होने पर ली झाओ हुआ ने धीरे से अपना घूंघट खोला, उसके नाजुक चेहरे पर धिक्कार की झलक थी। उसकी पतली जैद उंगलियां झाओगुजियांग की ओर इशारा कर रही थी। तुम्हारा साहस सचमुच बढ़ता ही जा रहा है। तुमने आज सुबह सुबह दरबार में सम्राट का विरोध करने का साहस किया, इससे मैं चिंतित हो गया और दौड़कर आया। इस खूबसूरत महिला का आईलाइनर वाकई बहुत दमदार है, उसे इतनी जल्दी खबर कैसे पता चली? उसने कहा कि वह जल्दी में थी, लेकिन वास्तव में उसने विशेष रूप से एक खूबसूरत पोशाक पहन ली थी और घूंघट के नीचे अपने गालों पर हल्का मेकअप भी लगाया था। कितनी स्वादिष्ट महिला है। हाँ हाँ, मैं न केवल सम्राट का खंडन करने का साहस करती हूँ, बल्कि शायद मैं आपका भी खंडन करने का साहस कर सकती हूँ, झाओगुजियांग ने सोचा, ली झाओहुआ के पास आने पर आई हल्की सुगंध को सूंघते हुए और मुस्कुराया। बड़ी राजकुमारी, आप मुझ पर हंस रही हैं, मैं अभी भी अपनी ताकत को अच्छी तरह जानता हूँ। उत्तरी सीमा पर पद संभालना कठिन है। हम, वह अचानक मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रही है? उसमें नाराजगी का भाव क्यों है? ली झाओहुआ का दिल कांप रहा था। उसने झाओगुजियांग को उसके दिल में मौजूद अहंकार के लिए दोषी ठहराया, लेकिन उसे यह अहंकार पसंद भी था। यदि यह उसके दिल में अभिमान नहीं था, लेकिन झाओगुजियांग व्यक्तिगत रूप से अभिमानी था, तो ये सोचकर ली झाओहुआ नाराज और शर्मिंदा दोनों थी। वह कैसे बेतहाशा सोच रही थी? ये सब झाओगुजियांग की गलती है। झाओगुजियांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने यह अभिमान किया। वह अपने स्वर में दोष व्यक्त करने से खुद को रोक नहीं सकी। सम्राट के साथ चलना बाघ के साथ चलने जैसा है। सावधान रहो, तुम अपना रवैया नरम कर सकते हो और दया की भीख मांग सकते हो। सार्वजनिक रूप से उसका चेहरा ठुकराने से बेहतर है कि तुम सीधे सम्राट को अपना आदेश वापस लेने दो। सम्राट पहले से ही आपसे सावधान है। झाओगुजियांग ने आश्चर्य से ली झाओहुआ की ओर देखा। ली झाओहुआ इतना उत्साहित क्यों लग रहा है? बड़ी राजकुमारी, याद दिलाने के लिए धन्यवाद, लेकिन मैंने ये शब्द पहले ही कह दिए हैं, इसलिए आइए जिएं और खुश रहें। अजीब बात है, यह महिला मेरे बारे में इतनी चिंतित क्यों है? अगर मैं सचमुच एक दिन मर जाऊं, तो क्या वह सचमुच दुखी नहीं होगी? जैसा कि अपेक्षित था, परिपक्व महिलाएं पुरुषों की अधिक देखभाल करना जानती हैं। तो फिर इस परिपक्व महिला की देखभाल कौन करेगा, जो दूसरों की देखभाल करना जानती है, लेकिन अपने शयन कक्ष में अकेली है और उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है? ली झाओहुआ ने झाओगुजियांग की आंतरिक आवाज को एक के बाद एक सुना, विशेष रूप से अंतिम कुछ वाक्य, जिससे उसे थोड़ा अजीब लगा। क्या वह सचमुच दुखी होगी? जवाब है नहीं। झाओगुजियांग अब उसकी नजर में सिर्फ एक मोहरा है, क्योंकि वह झाओगुजियांग की आंतरिक आवाज सुन सकती है, वह उसे और भी अधिक देख सकती है। उसने पहले तो सोचा था कि वह भविष्य में उसका इस्तेमाल कर सकती है, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि यह मोहरा उसे लगभग मार ही डालेगा। महल में अभी भी कुछ चीजें हैं, इसलिए चलो इसे यहीं छोड़ देते हैं। ऐसा कहने के बाद ली झाओहुआ का सुंदर शरीर धीरे धीरे नजरों से ओझल हो गया। झाओगुजियांग को पता था कि उसे ली झाओहुआ ने चुना है और वह शाही सत्ता के खेल में एक मोहरा बन गया है। ग्रैंड मास्टर सम्राट ली ज़ायुआन अथाह है। सबसे बड़ी राजकुमारी ली झाओहुआ कई वर्षों से अपनी तलवार छुपा रही है और अब वह अपनी तलवार निकालने वाली है। इसमें मुख्य पात्र लॉन्ग जान भी है, जिसे भाग्य का आशीर्वाद प्राप्त है। वह किसी भी पक्ष में खड़ा होना नहीं चाहता, उसमें शामिल होना तो दूर की बात है। अधिक सटीक रूप से कहें तो वह चौथे पक्ष से संबंधित है। सुरक्षा की दृष्टि से झाओगुजियांग उस स्थान पर आया जहां चे रिझाओ को कैद किया गया था। चे रिझाओ दिन भर घर में ही सीमित रहने के कारण दिन का प्रकाश देखे बिना ही अधिक थका हुआ दिखने लगा। जब उसने झाओगुजियांग को देखा तो वह उत्साहित हो गई। क्या तुम्हें वह मिल गया? क्या तुम्हें असली अपराधी मिल गया? मैंने कहा था कि मेरे साथ अन्याय हुआ है। झाओगुजियांग ने अपने हाथों से कागज और कलम निकाला और उन्हें चे रिझाओ को सौंप दिया। हसांग सम्राट को एक पत्र लिखो। क्या पत्र? चे रिझाओ ने यह संकेत सुना, कुछ ऐसा हुआ था जिसके बारे में उसे पता नहीं था। तुम्हारे पिता का विचार ग्रेजिया पर आक्रमण करने का है, झाओ बुजियांग ने कहा। उसे एक पारिवारिक पत्र लिखो जिसमें उसे अपनी प्यारी बेटी की खातिर युद्ध शुरू न करने के लिए कहा जाए। अगर तुम मुझे जाने नहीं दोगे तो मेरे पिता हमला कर देंगे। मुझे जल्दी से जाने दो। चे रिझाओ ने मुख्य बिंदु को समझा। झाओ बुजियांग के कपड़ों को दोनों हाथों से पकड़ लिया और जंजीरें खड़खड़ाने लगी। हमले के बाद क्या हुआ? झाओ बुजियांग ने शांत स्वर में पूछा। सबसे खतरनाक कौन है? चे रिझाओ की अभिव्यक्ति जम गई। अगर युद्ध वास्तव में शुरू हुआ तो वह और इन प्रतिनिधिमंडलों में शामिल लोग सबसे खतरनाक होंगे, युद्ध की लपटों में सबसे पहले बलिदान होने वाले लोग। तो मैं ये तुम्हारे भले के लिए कर रहा हूँ, झाओ बुजियांग की आवाज मंत्रमुग्ध करने वाली थी। उन्होंने कागज और कलम चिए रिझाओ को सौंपते हुए कहा, अपनी हानसांग भाषा का उपयोग करना याद रखना। झाओ बुजियांग को इस बात की परवाह नहीं थी कि चिए रिझाओ क्या सोचता है। वह मुड़ा और चिए रिझाओ के कारावास स्थान से चला गया। जैसे ही वह कारावास से बाहर निकला, उसने राहत की सांस ली और विजयी भाव से मुस्कुराया। जब तक चिए रिझाओ पत्र लिखने के लिए सहमत होता है, तब तक वह अपने लिए एक सुरक्षा कवच जोड़ लेगा ताकि हानसांग सम्राट को जिद्दी होने और हमला करने से रोका न जा सके। उस समय उसने दरबार में जो शेखी बघारी, उससे सचमुच उसकी मृत्यु हो गई। जैसे ही वह बाहर आया, बूढ़ा बटल कहीं से प्रकट हो गया। महाराज, महल से शाही फरमान आ गया है। बूढ़ा सम्राट फिर कौन सा पतंगा बना रहा है? झाओ बुजियांग ने शाही फरमान स्वीकार कर लिया। आदेश में कहा गया है कि हाल ही में मार्शल आर्ट के कई लोग झुजियान विला में आ रहे हैं। शाही दरबार को चिंता है कि अनियंत्रित हरे जंगल के नायक एक साथ इकट्ठा होंगे और ऐसी चीजें करेंगे जो महान जिया दरबार को प्रभावित करेंगे। चूंकि झाओ बुजियांग उत्तरी सीमा पर पदभार ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए वह अब शाही दरबार की ओर से जाँच करने के लिए झुजियान विला जाएगा। अगर उसे कुछ भी असामान्य लगता है तो उसे तुरंत इसकी सूचना देनी चाहिए। झुजियान विला, मूल कार्य में तियानजियान भूखंड का स्थान। ये तियानजियान सरल नहीं है, ये पूर्ण स्तरीय हथियार है जिसे लॉन्ग झान ने समापन तक इस्तेमाल किया था। विशेष रूप से तियानजियान, जो आधा मारने के लिए और आधा जीवन के लिए है, एक जादुई हथियार है जो तलवार मास्टर को अभ्यास करने और चोटों को ठीक करने में मदद कर सकता है। कथानक के अनुसार तियानजियान का संबंध लॉन्ग झान से है। बेचैन करने वाला, आह बेचैन करने वाला, तियानजियान का मुझसे कोई लेना देना नहीं है। जियांगू में प्रवेश करते ही यह अवश्यंभावी है कि लड़ाई और हत्याएं होंगी। अगर मैं मर गया तो क्या होगा? झाओ बुजियांग को पता था कि उसकी वर्तमान ताकत पर्याप्त नहीं थी और उसे अपनी ताकत में सुधार करने के लिए समय का लाभ उठाने की जरूरत थी। इसलिए कुछ ही देर बाद उसने कालकोठरी का दरवाजा खोला। दानव, मैं चाहता हूं कि तुम मुझे अभ्यास में मदद करो। अल्पविराम, 3 घंटे बीत गए। झाओ बुजियांग ने यांगलोंग पवित्र शरीर के प्रभाव को परिष्कृत किया। उसकी आंतरिक शक्ति बहुत बढ़ गई और उसने अंततः 8वें रैंक के योद्धा के दायरे में तेजी से कदम रखा। उन्होंने इस स्थिति का लाभ उठाकर झेन्यांग हृदय रहस्य के दूसरे स्तर, झेन्यांग फिंगर फोर्स को भी समझ लिया। उसकी उंगलियां किंग कांग जितनी सख्त हैं और उसकी ताकत दीवारों को भेदने की है। झाओ बुजियांग ने लियू रुयान को देखा, जो पहले से ही थक चुका था। वास्तव में वह भी थक गया था, लेकिन अपनी उंगलियों को देखते हुए अचानक उसे एक विचार आया। कास्टिंग स्वॉर्ड मैनर जा रहा हूं, मुझे नहीं पता कि लौटने में कितना समय लगेगा। मुझे लगता है कि मेरी ताकत अभी भी पर्याप्त नहीं है। लियू रुयान ने झाओ बुजियांग के मन की बात सुनी और ठंडी सांस ली। तो झाओ बुजियांग कास्टिंग स्वॉर्ड मैनर जा रहा था। कनिष्ठ भाई और वरिष्ठ बहन निश्चित रूप से स्वर्ग तलवार के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए कास्टिंग स्वॉर्ड मैनर जाएंगे। ये सबसे अच्छा होगा अगर झाओ बुजियांग की मृत्यु जूनियर भाई और सीनियर बहन के हाथों हो। अपना गुस्सा निकालने के लिए लियू रुयान ने अपने मुंह के कोने से पानी के दाग पोंछे। उसकी आंखें तेज थीं और वह चुपके से झाओ बुजियांग को देख रही थी। ये कैसा नजारा है? झाओ बुजियांग ने गौर से देखा। लियू रुयान की आंखें दूसरी ओर चली गईं और उसने अपना सिर घुमाया। तुम्हें इससे क्या लेना देना है? अगर मेरी ताकत पर्याप्त नहीं है तो मुझे कड़ी मेहनत करनी होगी। कड़ी मेहनत करने का सबसे अच्छा तरीका लियू रुयान पर है। झाओ बुजियांग ने कुछ कदम आगे बढ़ाए और सीधे लियू रुयान के पतले जैद पैरों को पकड़ लिया। उसने अपनी आंतरिक शक्ति को अपनी दो उंगलियों के बीच समेट लिया। सच्चे यांग हॉट सूत्र की अनोखी शक्तिशाली आंतरिक शक्ति उसकी उंगलियों पर इकट्ठी हो गई। लियू रुयान की भयभीत आंखों में दोनों उंगलियां तेजी से बड़ी हो गईं। अल्पविराम, समय पानी की तरह बहता गया, चुपचाप झाओ बुजियांग की उंगलियों से फिसलता गया। 2 घंटे बाद झाओ बुजियांग कालकोठरी से बाहर निकल गया। जब वह ड्रैगन पोषण पवित्र शरीर की शक्ति को अवशोषित कर रहा था तो दरवाजे के बाहर से एक आवाज आई। नमस्कार महाराज, युवा मास्टर स्नान कर रहे हैं, कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें। महाराज, क्या मैं उसकी मंगेतर पत्नी हूँ? क्या मैं उसे नहाते हुए भी नहीं देख सकती? झाओ बुजियांग, जैसे ही ली युनरुई ने झेनबेई राजकुमार की हवेली में प्रवेश किया, उसने ऐसा व्यवहार किया जैसे कि यह उसका अपना घर हो, और वह सीधे झाओ बुजियांग के बेडरूम में भाग गई। आज ली युनरुई गुलाबी और सफेद रंग की लंबी ड्रेस पहने हुए थी, एक नाजुक मेहमान। जब वह दौड़ रही थी तो उसके पतले जेड पैर कभी दिखाई दे रहे थे और कभी छिप रहे थे। यह महिला मुझे फिर से क्यों परेशान कर रही है, लेकिन ये पैर वाकई लंबे और सफेद हैं। झाओ बुजियांग ने उसकी ओर देखा। शुरू में उनका और ली युनरुई का रिश्ता नहीं चल पाया, इसका कारण था ली युनरुई का सगाई तोड़ने से इनकार करना। ली युनरुई ने झाओ बुजियांग के आंतरिक विचारों को सुना लेकिन देखा कि झाओ बुजियांग के कपड़े बरकरार थे। उसने इतनी जल्दी स्नान कर लिया, अफसोस की बात है। ली युनरुई ने सीधे मुद्दे पर बात की। झाओ बुजियांग, मैं तुम्हारे साथ कास्टिंग स्वॉर्ड मैनर जाना चाहता हूँ, तुम्हें मुझे ले जाना होगा, ये यात्रा अत्यंत खतरनाक है। राजकुमारी, कृपया सम्मान रखें, झाओ बुजियांग ने अवाक होकर कहा। मैं तुम्हारे साथ क्या करने जा रहा हूँ, क्या तुम मार्शल आर्ट जानते हो? एक बोझ, आप, ली युनरुई की सुंदर भौहें सिकुड़ गईं। झाओ बुजियांग, क्या आपको लगता है कि मैं बेकार हूँ? मैंने ऐसा नहीं कहा। हाँ, तुमने ऐसा किया। यह मत सोचो कि सिर्फ इसलिए कि मैंने तुम्हारे साथ सगाई नहीं तोड़ी, तुम मुझे मनमाने ढंग से धमका सकते हो। मैं अभी भी एक राजकुमारी हूँ, सम्राट की सबसे प्यारी बेटी। झाओ बुजियांग ने अपने हाथ फैलाए। क्या सगाई तोड़ना कोई बड़ा उपकार नहीं है? यदि आपने इसे तोड़ने से इनकार नहीं किया होता तो वह कमीना लॉन्ग जान ऐसा नहीं दिखता जैसे वह मुझे हर बार देखकर मुझे मारना चाहता हो। ली युनरुई ने इन दिनों जो शिकायतें दबा रखी थी वे अकारण ही उसके दिल में उमड़ पड़ी। जब उसे पता चला कि झाओ बुजियांग पर चिबा रिझाओ की हिंसा को बढ़ावा देने का आरोप लगाया गया है तो उसने हर दिन सम्राट से गुहार लगाई। जब उसे पता चला कि झाओ बुजियांग ने सच्चाई उजागर कर दी है तो उसने तुरंत झाओ बुजियांग के लिए पुरस्कार पाने की कोशिश की। जब उसे पता चला कि सम्राट पुरस्कार देने के लिए तैयार नहीं है तो उसने झाओ बुजियांग के गुस्से को शांत करने के लिए सबसे पहले लॉन्ग जान और अन्य को दंडित किया। अंत में उसे उसकी उदासीनता ही मिली। मरा हुआ बदमाश। ली युनरुई की आंखें आंसुओं से भर गईं और अगले ही पल वह फूट फूट कर रोने लगी। मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगा, झाओ बुजियांग। ली युनरुई के झेनबेई राजकुमार की हवेली से बाहर भाग जाने के बाद अंधेरे में छुपकर झेनबेई राजकुमार की हवेली की निगरानी कर रहे लोगों के दो समूहों ने ये दृश्य देखा और वे भी संदेह से भर गए और तुरंत अपने अपने स्वामियों को रिपोर्ट करने के लिए वापस चले गए। झाओ बुजियांग ने ये दृश्य देखा। उसे लंबे समय से पता था कि उस पर नजर रखी जा रही है, तो अभी वह अंधेरे में रहने वालों के लिए एक शो पेश कर रहा था। उसे ली युनरुई से दूरी बनाए रखनी पड़ी, तभी वह सम्राट के निशाने पर आने से बच सका। कम से कम उसे तब तक रुकना था जब तक उसका सस्ता बूढ़ा आदमी वापस नहीं आ जाता। जहां तक ली युनरुई की बात है, वह उसे समझा नहीं सका। शायद जब उसे अपने पिता की असली पहचान पता चलेगी तो वह समझ जाएगी। अल्पविराम। इंपीरियल अध्ययन कक्ष के अंदर ली ज़ायुआन को खुफिया जानकारी मिली। महाराज, राजकुमार के भवन की निगरानी करने वाले लोगों ने सुना है कि सातवीं राजकुमारी चाहती है कि युवा मास्टर झाओ उसे कास्टिंग स्वॉर्ड मैनर ले जाए, लेकिन युवा मास्टर झाओ भी आपके दिए गए आदेशों का दृढ़ता से पालन कर रहा है। वह अकेले जाना चाहता है और राजकुमारी को ले जाने के लिए तैयार नहीं है, ली ज़ायुआन ने ठंडे स्वर में कहा। झाओ बुजियांग समझदार हो गया है। क्या युनरुई ठीक है? वह ठीक है। राजकुमारी ने शाही उद्यान में नौकरों को एक प्राचीन पेड़ को कोड़े मारने का आदेश दिया और कहा कि यह झाओ बुजियांग है। कोड़े मारते समय वह हंसने लगी। चेन गोंगगोंग ने चेहरे पर मुस्कान के साथ उत्तर दिया। महाराज, चेन झेंग हुआ एक पल के लिए झिझका, मुख्यतः इसलिए कि उसे सातवीं राजकुमारी से बहुत सारा पैसा मिला था। उसने फिर भी खुद को संभालते हुए सुझाव दिया। ज़ेनबेई राजकुमार के महल में पहले से ही बहुत से सैनिक नहीं हैं। इन दिनों उन्हें हानसांग दूतों की भी रक्षा करनी है। हालांकि यंग मास्टर झाओ की कास्टिंग स्वॉर्ड मैनर की यात्रा में कुछ ही दिन लगेंगे, क्या हमें झाओ बुजियांग को एस्कॉर्ट करने और आपके आदेशों को पूरा करने में उसकी सहायता करने के लिए और लोगों को भेजना चाहिए? कोई जरूरत नहीं है, ली ज़ायुआन ने बिना किसी परवाह के अपना हाथ हिलाया। चेन झेंगहुआ का दिल दहल गया। उसने बुद्धिमानी से कुछ और नहीं कहा, कहीं सम्राट उसकी असलियत न जान जाए। वह देख सकता था कि सम्राट को झाओ बुजियांग के जीवन या मृत्यु की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। शायद कास्टिंग स्वॉर्ड मैनर की यह यात्रा झाओ बुजियांग के लिए एक जाल है, एक मृत अंत। अल्पविराम। सबसे बड़ी राजकुमारी के महल के अंदर ये जानने पर कि झाओ बुजियांग को मार्शल दुनिया के मामलों को संभालने के लिए भेजा गया था, ली झाओहुआ को पता था कि सम्राट झाओ बुजियांग को पसंद नहीं करते थे, तो फिर उसे हाल ही में झाओ बुजियांग की तलाश नहीं करनी चाहिए, कहीं ऐसा न हो कि सम्राट को लगे कि वह उसके खिलाफ जा रही है। सौभाग्यवश वहां शतरंज के कई मोहरे थे। जियो लैन, मेरा आदेश दो और जियो की कैंप के कमांडर लॉन्ग जान को बुलाओ। लॉन्ग जान को पता चला कि सबसे बड़ी राजकुमारी उससे मिलना चाहती थी और वह जल्दी से सबसे बड़ी राजकुमारी की हवेली की ओर दौड़ा। यह अधीनस्थ लांग झान महारानी सबसे बड़ी राजकुमारी को नमस्कार करता है, लांग झान ने सम्मानपूर्वक कहा। आप उठ सकते हैं। ली झाओहुआ ने लॉन्ग झान की ओर देखा और ठंडे स्वर में कहा, मैं चाहता हूं कि आप कास्टिंग स्वॉर्ड मैनर जाएं। बस मुझे अपना आदेश दे दो। लॉन्ग झान की नज़र स्वाभाविक रूप से ली झाओहुआ के सुंदर शरीर से हट गई और उसने धीरे से अपनी आंखें नीची कर ली। उसने अपनी बड़ी बहन लिंग किंगक्सू से पहले ही जान लिया था कि राजकुमारी ली झाओहुआ गुप्त रूप से अपनी शक्ति का निर्माण कर रही थी और उसके पास एक बहुत बड़ी निजी सेना थी। यदि वह ली झाओहुआ के अच्छे पक्ष में आ सके तो वह निश्चित रूप से तेजी से आगे बढ़ेगा। इसके अलावा ली झाओहुआ ने राजधानी की कुख्यात उच्छृंखल महिला के रूप में अपनी प्रतिष्ठा को बरकरार रखा। उसके वस्त्र पारदर्शी थे जिनसे उसके पूरे शरीर की झलक मिलती थी और उसका रूप सुंदर और आकर्षक था जिसमें आकर्षण बना रहता था। tuon.com द्वारा इतनी सुंदर, क्या भविष्य में उसे अपना साथी बनाना अद्भुत नहीं होगा? ली झाओहुआ ने लॉन्ग जान की ओर एक ब्रोकेड बॉक्स बढ़ाया। स्वॉडकास्टिंग विला जाओ और यह ब्रोकेड बॉक्स मेरे एक पुराने दोस्त को दे दो। यदि तुम सफल हो गए तो मैं तुम्हें अच्छा इनाम दूंगा। लॉन्ग जान ने देखा कि ब्रोकेड बॉक्स में जटिल ताले की दो परतें थीं, जिससे उसे समझ में आ गया कि राजकुमारी को अभी भी उस पर पूरा भरोसा नहीं है। राजकुमारी को जीतने के लिए वह जानता था कि उसे यह कार्य पूरा करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना होगा। उसने सावधानी से ब्रोकेड का बक्सा लिया और दृढ़ता से कहा, कृपया निश्चिंत रहें राजकुमारी, मैं मिशन अवश्य पूरा करूंगा। राजकुमारी ने सिर हिलाया, फिर भी वह ठंडी थी। झाओ बुजियांग की तुलना में लॉन्ग झान भी ऐसा व्यक्ति था जिसका उपयोग किया जा सकता था। हालांकि झाओ बुजियांग की तुलना में लॉन्ग झान के पास अब अधिक ताकत थी और वह एक उपयोगी मोहरा होगा। उस रात उत्तर गैरिसन ड्यूक मनो सावधानी से काम लेने और ध्यान आकर्षित करने से बचने के लिए झाओ बुजियांग ने रात के अंधेरे में अकेले ही स्वॉर्ड कास्टिंग विला की यात्रा करने का फैसला किया। जाने से पहले उन्होंने बार बार पुराने बटलर को निर्देश दिया कि उनके जाने के बाद वह उत्तरी गैरिसन ड्यूक मैनर की रखवाली करें और लियू रुयान को भागने न दें, न ही चिबा हिझाओ को भागने दें या मारे जाने दें। नियमित रूप से उन्हें नशीली दवाइयां देना, उन दोनों महिलाओं को बेहोश रखना, बस इतना कि वे जीवित रहें और जब मैं वापस आऊं तो किसी को राजकुमारी से मदद मांगने के लिए भेजना यदि आवश्यक हो। ये पुष्टि करने के बाद कि सब कुछ ठीक है, उसने रात का फायदा उठाया और फुर्ती से एक अदृश्य कुत्ते के बिल में से रेंग कर अंधेरे में समा गया। हर बार जब वह किसी सड़क के कोने से गुजरता तो वह नीचे बैठ जाता और ऐसा दिखावा करता कि वह अपने जूते में गिरे छोटे से पत्थर को ढूंढ रहा है, लेकिन वास्तव में वह आसपास की गतिविधियों पर गुप्त रूप से नजर रख रहा था ताकि यह सुनिश्चित कर सके कि कोई उसका पीछा तो नहीं कर रहा है। कई बार जांच करने के बाद भी उन्हें कुछ भी असामान्य नहीं लगा। जब तक वह राजधानी से बाहर नहीं निकल गया तब तक वह सड़क के कोनों की आड़ में फिर से बैठने का नाटक करता रहा। इस बार सतर्क उसे कुछ असामान्य बात नजर आई। अंधेरे में एक धुंधली आकृति चमकी जो उसकी नजर से बच गई। मैं पहले से ही इतना सतर्क हूं और फिर भी मेरा पीछा किया जा रहा है। कौन अब भी इतना दुष्ट है? झाओ बुजियांग ने ऐसा दिखावा किया कि उसे कुछ भी ध्यान नहीं है और उसने अपनी गति बढ़ा दी। उसका पीछा कर रहा व्यक्ति डरते डरते एक छोटे से जंगल के किनारे आया, इधर उधर देखा, झाओ बुजियांग की आकृति को खोजा और असमंजस में बुदबुदाया, कहाँ है वह? दादाजी यहाँ हैं। झाओ बुजियांग एक ऊंचे पेड़ से नीचे उतरा और उसने अनुयायी की छाती पर अपनी कोहनी से प्रहार किया। अपेक्षित धीमी ध्वनि नहीं हुई। झाओ बुजियांग की कोहनी किसी नर्म और लचीली चीज से टकराए। हे भगवान, सुनहरे रेशमी कवच! ये देखकर कि कोहनी का प्रहार अप्रभावी था, झाओ बुजियांग ने अनुयायी के बकझक करने का इंतजार नहीं किया और अपना हाथ नीचे की ओर बढ़ाया। बंदर ने आड़ू चुरा लिया। आड़ू कहाँ है? उसने खाली हवा पकड़ ली, उसकी तलवार जैसी भौहें सिकुड़ गईं। झाओ अनुयायी शर्मिंदा और क्रोधित था। इससे पहले कि वह बोलना समाप्त कर पाती, झाओ बुजियांग ने उसके मुखौटे वाले मुंह को ढक दिया, उसे जोर से नीचे धकेल दिया और उसे पकड़ लिया। अनुयायी को झाओ बुजियांग ने जकड़ लिया था, जिससे वह हिलने डुलने में असमर्थ हो गया था तथा कीड़ों की चहचहाट वाले छोटे से जंगल में केवल अस्पष्ट रोने जैसी आवाजें ही निकाल पा रहा था। तुम्हें मेरे पीछे आने को किसने भेजा है? झाओ बुजियांग ने अनुयायी का मुखौटा उतार दिया, जिससे एक नाजुक और प्यारा चेहरा सामने आया जो बहुत परिचित भी था। ओह, आप कैसे हैं? इस परिचित चेहरे को देखकर झाओ बुजियांग अभिभूत हो गया। सातवीं राजकुमारी, तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो? स्पष्टतः वह लॉन्ग झान की नायिका थी, लेकिन वह उससे क्यों चिपकी हुई थी? इसका क्या मतलब है? ली यूनरुई का गोरा चेहरा लाल बादलों से ढक गया था जब उसकी छाती पर हमला किया गया था और झाओ बुजियांग द्वारा उसका आड़ूप चुरा लिया गया था। झाओ बुजियांग के अभी भी निर्दयी प्रश्नों को सुनकर उसने झाओ बुजियांग को कसकर गले लगा लिया और उसे जाने देने से इनकार कर दिया। झाओ बुजियांग, दिखावा करना बंद करो। हम, झाओ बुजियांग हैरान था। लियुनरुई की आंखों में सितारे थे, वह झाओ बुजियांग को ऐसे घूर रहा था। आज झाओ बुजियांग के साथ बहस के बाद वह महल में लौटी और उसे पता चला कि उसके पिता उत्तरी गैरिसन ड्यूक मैनर की निगरानी के लिए लोगों को भेज रहे थे। तब उसे समझ में आया कि उसके पिता की निगरानी और नापसंदगी के कारण झाओ बुजियांग की आज की हरकतें वास्तव में उसे फंसाए जाने से बचने के लिए थीं। वह उसकी रक्षा करना चाहता था, इसलिए उसने उसे धक्का दे दिया। चाहे तुम कहीं भी जाओ, इस बार मुझे दूर धकेलने के बारे में भूल जाओ। लियुनरुई ने झाओ बुजियांग को और अधिक कसकर गले लगाया, इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं की कि झाओ बुजियांग उसके पूरे शरीर पर दबाव डाल रहा था। झाओ बुजियांग ने महिला को समझाने की कोशिश की, ये बहुत खतरनाक है, अगर मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा तो न केवल तुम खतरे में पड़ोगे बल्कि मैं भी खतरे में पड़ जाऊंगा। मुझे पता था कि तुम हमेशा मेरे बारे में चिंतित रहते हो। तुम्हारे दिल में मैं हूं, तुम जो कहना चाहते हो उसके विपरीत कह रहे हो। लियुनरुई को झाओ बुजियांग की कमजोरी समझ में आ गई थी। वह जानती थी कि झाओ बुजियांग दिल से उसकी परवाह करता है। झाओ बुजियांग की मातृभाषा अवाक थी, कहने को कोई शब्द नहीं है, है ना? लियुनरुई विजयी भाव से धीमे स्वर में गुनगुना रहे थे। हमें सुख दुख बांटना चाहिए और पिता को ये साबित करना चाहिए कि हम सचमुच प्रेम में हैं। सच्चा प्यार मेरी गांड, झाओ बुजियांग ने संघर्ष किया। लियुनरुई एक प्रेम मस्तिष्क था, लेकिन वह नहीं था। लेकिन लियुनरुई ने पहले ही अपनी टांगों से उसकी कमर को कसकर जकड़ लिया था और अपनी बाहें उसके बाजुओं के चारों ओर लपेट ली थी। मैंने कहा, इस बार तुम मुझे धक्का देने के बारे में भूल जाओ। लियुनरुई की आवाज बोलते समय थोड़ी व्यथित हो गई, मानो वह फिर से रोने वाली हो। ठीक है, मैं तुम्हें ले चलूंगा। आवाज मत करना, वरना बाद में लोग तुम्हें आकर्षित करेंगे। झाओ बुजियांग ने अंततः समझौता कर लिया। हम्फ, तभी लियुनरुई ने धीरे से अपने पैर ढीले किए, लेकिन उसे डर था कि झाओ बुजियांग भाग जाएगा, ऐसा लग रहा था कि वह कभी जाने नहीं देगी। झाओ बुजियांग असहाय था और लियुनरुई के साथ स्वॉर्ड कास्टिंग विला की ओर चल पड़ा। रात में छोटा सा जंगल बहुत सुनसान था, कभी कभी कीड़ों की चहचहाट और पक्षियों की आवाजें आती थीं। लियुनरुई भी उसके बगल में चहचहा रहा था और झाओ बुजियांग कभी कभी जवाब देता था। उसी समय लॉन्गझान और लिंग किंगक्सू भी राजधानी से निकलकर स्वॉर्ड कास्टिंग विला की ओर चल पड़े। हालांकि अपनी यात्रा के दौरान दोनों ज्यादातर चुप ही रहे। लिंग किंगक्सू अभी भी एक अमर की तरह ठंडी थी, चुपचाप अपने शरीर में चोटों को समायोजित कर रही थी, शेष सच्ची आंग शक्ति को हल कर रही थी। लॉन्गझान अपनी बड़ी बहन के करीब जाना चाहता था, लेकिन उसे बातचीत का विषय नहीं मिल पाता था और वह बीच में ही रुक जाती थी। आखिरकार राजधानी छोड़ने के बाद लिंग किंगक्सू की आंखें चमक उठी। वह अपने दिल में कुछ संदेहों को हल करना चाहती थी। उसने संकोच से कहा, कनिष्ठ भाई, मैं जानता हूं कि संप्रदाय हमेशा सख्त और प्रतिबंधात्मक रहा है, और आप पहाड़ से नीचे जाने के बाद राजधानी में गए, एक कमांडर बन गए, और सम्राट आपके बारे में आशावादी है, असीमित क्षमता के साथ। तुम्हारा भविष्य उज्ज्वल है, लेकिन यद्यपि शाही दरबार तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करता है, क्या तुम्हें अभी भी याद है कि तुम्हें ये कौशल किसने सिखाया था? क्या तुम अभी भी दाओ संप्रदाय के सदस्य हो? लिंग किंगक्सू को संदेह था कि लॉन्ग झान विद्रोही इरादे रखता है, और उसने अपने शब्दों से उसकी परीक्षा ली। लॉन्ग झान ने तुरंत कहा, वरिष्ठ बहन, निश्चिंत रहें, लॉन्ग झान यह नहीं भूलेगी कि मुझे मार्शल आर्ट किसने सिखाया। मैं जीवन में दाओ संप्रदाय की सदस्य हूँ और मृत्यु में दाओ संप्रदाय की भूतनी हूँ। मेरी निष्ठाएं बिल्कुल भी विभाजित नहीं है। लिंग किंगक्सू ने सिर हिलाया, ऐसा प्रतीत हुआ कि वह सहमत थी, लेकिन उसके दिल में अभी भी इस मामले को लेकर संदेह था। उसकी चोटों में बची हुई सच्ची यांग ऊर्जा उसे लगातार लॉन्ग झान से सावधान रहने की याद दिलाती रही। बड़ी बहन और छोटा भाई एक दूसरे के आगे आगे तलवार कास्टिंग विला की ओर बढ़े। रात के समय एक पक्षी ने पंख फड़फड़ाए और दोनों एक साथ वापस मुड़ गए। लिंग किंगक्सू ने धीरे से अपना पतला हाथ ऊपर उठाया और एक कबूतर उसकी उंगली पर आकर बैठ गया। उसने कबूतर से गुप्त पत्र निकाला और भौहें सिकुड़े बिना नहीं रह सकी। TWKAN द्वारा COM, बड़ी बहन, क्या हुआ? लॉन्ग झान ने एक ही नज़र में कबूतर को पहचान लिया, क्योंकि उसे पता था कि यह वरिष्ठ बहन के अधीनस्थों की ओर से विशेष संचार के लिए आया है। लिंग किंगक्सू ने गहरी आवाज में कहा, लियुनरुई पहले ही क्योटो छोड़ चुके हैं। सातवीं राजकुमारी बिना किसी कारण के क्योटो क्यों छोड़कर चली गई? लॉन्ग झान हैरान था, लेकिन जल्द ही उसकी मोटी बहें उठ गईं, यह महसूस करते हुए कि लियुनरुई ने झाओ बुजियांग का पीछा किया होगा। ये भी अच्छा था, क्योटो छोड़ने का मतलब था जियांगू दुनिया में कम प्रतिबंध। तलवार कास्टिंग विला की यह यात्रा उसे स्वर्गीय तलवार को जब्त करने का अवसर देगी और लियुनरुई के साथ कच्चे चावल को पके हुए चावल में पकाने का अवसर भी देगी। यदि वह लियुनरुई को जीत सकता है तो कमांडर के रूप में लॉन्ग झान की स्थिति को भी बढ़ावा मिलना चाहिए। अल्पविराम, शाही महल, शाही अध्ययन। ली ज़ायुआन ने अपने हाथ में लिए स्मारक को जोर से मेज पर पटक दिया। युनरुई कब चला गया? रात होने के आसपास नपुंसक चेन ने अपनी भौहें नीची की और सिर हिलाया। झाओ बुजियांग हवेली में नहीं है। सातवीं राजकुमारी संभवतः झाओ बुजियांग के साथ चली गई होगी। ली ज़ायुआन गुस्से में था। तलवार कास्टिंग विला की यह यात्रा खतरों से भरी थी। उसने झाओ बुजियांग को जाने का आदेश दिया ताकि इस संभावित खतरे को खत्म करने का मौका मिल सके। लेकिन युनरुई झाओ बुजियांग के साथ इस मौज मस्ती में शामिल क्यों हुई? क्या उसे नहीं पता था कि यह कितना खतरनाक था? क्या आज उनमें झगड़ा नहीं हुआ? युनरुई को बुलाओ, ली ज़ायुआन ने आदेश दिया, लेकिन एक पल सोचने के बाद उसने अपना विचार बदल दिया। इसे भूल जाओ, सीधे मेरा फरमान जारी करो और उसे लोगों को लेकर युनरुई को खोजने दो। हाँ, नपुंसक चेन ने झुककर उत्तर दिया। ये बूढ़ा नौकर जाकर छठे राजकुमार महाराज को सूचित करेगा। अल्पविराम, छठे राजकुमार ली युनी का निवास। एक सुंदर युवक अपने हाथों में पुरानी पुस्तकें लेकर उलट पलट रहा था। उसके सामने खड़े नौकरों को बोलने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि वे सोच रहे थे कि उसका ध्यान पढ़ाई पर है। उन्हें यह नहीं पता था कि प्राचीन पुस्तकों के पन्नों पर विभिन्न मुद्राओं में नग्न महिलाओं की तस्वीरें थीं। अफसोस, ये हमेशा पुरानी किताबें ही होती हैं। मुझे आश्चर्य है कि क्या बाजार में इससे अच्छी दिखने वाली किताबें भी होंगी। वह युवक नाजुक आकृति का था, रेशमी ब्रोकेट पहने हुए था और उसकी भौहें शाही शक्ति और धन की झलक दिखाती थीं। लेकिन इस समय वह उत्साहहीन था। उसे केवल यही लग रहा था कि जीवन उबाऊ है। अचानक खोजे चेन एक शाही फरमान लेकर आए, जिससे युवक डर गया और उसने जल्दी से प्राचीन पुस्तकें रख दी तथा फरमान प्राप्त कर लिया। शाही फरमान सुनाने के बाद नपुंसक चेन भी विदा लेकर चला गया। उसे छठे राजकुमार से आग्रह करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वह जानता था कि छठा राजकुमार हमेशा से सातवीं राजकुमारी पर मोहित रहा है और स्वाभाविक रूप से जल्द उसका पीछा करने निकल पड़ेगा। निश्चित रूप से ली युनरुई को पता चला कि ली युनरुई ने झाओ बुजियांग का पीछा जियांगो में किया था और जोर से शाप दिया। क्या ये फिर से झेनबेई वांग हवेली का वह दानव झाओ बुजियांग है? युनरुई दयालु और शुद्ध है। झाओ बुजियांग ने उसे किस तरह का आकर्षण दिया है? वह झाओ बुजियांग के साथ क्योटो कैसे छोड़ सकती है? हवेली के नौकरों ने जल्दी जल्दी अपना सामान पैक किया ताकि वे छठे राजकुमार का मूड खराब करने का साहस न कर सकें। आधे घंटे बाद ली युनरुई ने अपनी सेना इकट्ठी की। महाराज, क्या हमें सचमुच इतनी सारी घाव भरने वाली दवाएं और उपचार करने वाली दवाएं लाने की जरूरत है? ली युनरुई के विश्वासपात्र ने धीमी आवाज में पूछा। ली युनरुई की आंखें भयंकर थीं। मुझे डर है कि मैं झाओ बुजियांग को मार डालने से खुद को नहीं रोक पाऊंगा। जब वह झाओ बुजियांग, जिसने उसकी बहन का अपहरण किया था और अपहृत बहन को पकड़ लेगा, तो वह निश्चित रूप से उस कमीने झाओ बुजियांग को सबक सिखाएगा। जब से युनरुई ने सगाई तोड़ने का प्रयास विफल कर दिया है, तब से वह अब अपने अच्छे भाई से चिपकी नहीं रहती, बल्कि सारा दिन उस झाओ बुजियांग के बारे में सोचती रहती है। ये झाओ बुजियांग यह और झाओ बुजियांग वह है, और वह अब खेलने के लिए उसकी हवेली में नहीं आती है। वह कभी भी उस अयोग्य उत्तराधिकारी झाओ बुजियांग को अपनी बहन ली युनरुई को अपवित्र करने की अनुमति नहीं देगा। अल्पविराम, देखना, झाओ बुजियांग ने छींक ली और ली युनरुई के साथ छोटे जंगल से बाहर चला गया। सड़क धीरे धीरे चौड़ी होती जा रही थी। क्या तुम मुझे कोस रहे हो? उसने ली युनरुई को संदेह से देखा। हम, ली युनरुई ने अपनी आंखें बड़ी कर ली और अपना सिर हिलाया, थोड़ा दोषी महसूस करते हुए, ये सोचते हुए कि उसने अभी अभी अपने दिल में कहा था कि झाओ बुजियांग रोमांटिक नहीं था और झाओ बुजियांग ने इसे महसूस किया था। झाओ बुजियांग ने अपनी बाहों में टटोला एक नकली दाढ़ी ढूंढी, उसे अपने चेहरे पर चिपका लिया और एक छोटी गोल टोपी निकाली और उसे अपने माथे पर रख लिया, फिर मुस्कुराया और एक मुनाफाखोर की आभा उसके अंदर से निकली। ली युनरुई ने घृणा से कहा, तुम क्या कर रहे हो? ये बहुत अजीब लग रहा है। झाओ बुजियांग ने आत्मविश्वास से कहा, जियांगू में चलते हुए सब कुछ दिल से होता है। काय, ली युनरुई ने बुदबुदाया, झाओ बुजियांग को घूरा, फिर अपनी आंखें घुमाई। क्या आपके पास और दाढ़ी है? मुझे चिपकाने के लिए एक दे दो। झाओ बुजियांग अवाक था। क्या आपने कभी किसी महिला को उसके चेहरे पर दाढ़ी के साथ देखा है? यह नीचे की तरह नहीं है, वहां तो दाढ़ी भी नहीं होगी। ली युनरुई ने कुछ देर सोचा और अपने सिर पर लगे सारे हेयरपिन उतार दिए। एक पल में उसके चिकने काले बाल झरने की तरह नीचे गिर गए। चांदनी के नीचे ली युनरुई इस समय बहुत खूबसूरत लग रही थी और झाओ बुजियांग कुछ और नजरें डालने से खुद को रोक नहीं सका। क्या आप मुझे अपना भेष बदलने में मदद कर सकते हैं? ली युनरुई ने मुस्कुराते हुए कहा। झाओ बुजियांग ने अपने दिल में शिकायत की, लेकिन फिर भी वह ली युनरुई को उसके बाल बांधने में मदद करने के लिए आगे आया। उसके बालों को एक विवाहित महिला की तरह स्टाइल किया। और उसने ली यूनरुई के चेहरे को अपने गंदे हाथों से रगड़ने का अवसर लिया। ली यूनरुई के चेहरे पर हल्का मेकअप लगा दिया और उसके चेहरे पर मिट्टी का एक छोटा सा टुकड़ा दबा दिया ताकि वह एक गांव की लड़की की छवि के करीब हो सके। ली यूनरुई ने झाओ गुजियांग को नाराजगी से देखा। झाओ गुजियांग इतना आलसी था कि उसे उसकी परवाह नहीं थी और उसने अपनी गति तेज कर दी। स्वोर्ड कास्टिंग विला ग्रेट शिया क्यूशू के युनशुई प्रांत में स्थित है, जो जिंग प्रांत के निकट है जहां क्योटो स्थित है। क्योंकि यह क्योटो से बहुत दूर नहीं है, इस बार तलवार कास्टिंग विला के मामले ने शाही अदालत का बहुत अधिक ध्यान आकर्षित किया है। झाओ गुजियांग और ली यूनरुई शोर के बीच हाई समय के अंत में युनशुई प्रांत में पहुंचे। यात्रा से थककर दोनों ने रात को आराम करने का निर्णय लिया और कल सुबह जल्दी ही रवाना होने का निर्णय लिया। वांग जिंग इन सुलेख बुरा नहीं है, ली यूनरुई ने सराय का नाम देखते हुए कहा। झाओ गुजियांग सराय में चला गया। जब वेटर ने दोनों का सामान देखा तो उसने जल्दी से उनका अभिवादन किया। क्या तुम दोनों सराय में रह रहे हो? झाओ गुजियांग ने सिर हिलाया। एक प्रति वह प्रति व्यक्ति एक कमरा कहने ही वाला था जब उसे अचानक याद आया कि ली यूनरुई अब उसकी पत्नी होने का नाटक कर रही थी, और अब जब वे स्वॉर्ड कास्टिंग विला से ज्यादा दूर नहीं थे तो वे आसानी से कोई खामी नहीं बता सकते थे। एक सुपीरियर कमरा, ली यूनरुई ने अपने होठों को दबाया, उसके गाल लाल हो गए और उसने बोलने की पहल की। ठीक है, कृपया इस तरफ आइए अतिथि। वेटर आगे चल रहा था और लगातार सराय में उपलब्ध भोजन और पेय पदार्थों का परिचय दे रहा था। ली यूनरुई ने चुपके से झाओ गुजियांग की ओर देखा और जब उसने पाया कि झाओ गुजियांग उसकी ओर देख रहा है तो उसने धीमी आवाज में समझाया। हम एक बूढ़े विवाहित जोड़े हैं, हम संभवतः नहीं कर सकते, है ना? वह काफी चतुर है, उसमें कोई खामी नहीं दिखती, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लगता है कि वह मेरे शरीर के पीछे पड़ी है। ली यूनरुई के गाल और भी अधिक लाल हो गए और उसने अपने दिल में शर्म और घबराहट को छिपाने के लिए धीरे से खर्राटे लिए। दोनों कमरे में दाखिल हुए और वेटर ने जानबूझकर यह कहते हुए छोड़ दिया कि अगर उन्हें किसी चीज की जरूरत हो तो वे उसे बुला सकते हैं। दरवाजा बंद करके ली यूनरुई खुशी से बिस्तर पर लेट गई। आधी रात तक चलने से वह थक गई थी। जब वह रास्ते में झाओ गुजियांग से बात कर रही थी तो उसे इसका एहसास नहीं हुआ, लेकिन अब जब वह कमरे में है तो उसे नींद आ रही है। स्नान करने के बाद उसे बेहतर महसूस होगा। उसने अपना भेष उतारना और कपड़े उतारना शुरू कर दिया। मैं एक स्नान लेना चाहता हूँ, ली यूनरुई ने चारों ओर देखा और भौहें सिकोड़ते हुए कहा, यहाँ पानी क्यों नहीं है? झाओ गुजियांग, क्या तुम मेरे लिए नहाने का पानी ला सकते हो? क्या आपको लगता है कि यह शाही महल है जहाँ आपकी सेवा करने के लिए बहुत से लोग हैं? झाओ गुजियांग ने दुखी होकर कहा। यदि आप कठिनाई सहन नहीं कर सकते तो जल्दी वापस चले जाइए। ली यूनरुई ने अपने कपड़े उतारना बंद कर दिया और दबी हुई आवाज में ओह कहा। ओह, तो मैं खुद पानी ले आऊंगा, लेकिन अगर दूसरे लोग मुझे पहचान ले तो क्या होगा? झाओ गुजियांग अवाक रह गया। ठीक है, मैं जाऊंगा। मैं जानता था कि तुम सर्वश्रेष्ठ हो, ली यूनरुई मुस्कुराई। वह जानती थी कि झाओ गुजियांग वास्तव में उसकी परवाह करता है। झाओ गुजियांग कमरे से बाहर चला गया। पानी लाने वाले स्थान पर पहुंचकर चारों ओर अंधेरा था और रोशनी मंद थी, तभी अचानक एक शिकायत भरी आवाज सुनाई दी। ये कैसी टूटी फूटी जगह है, इसे सुपीरियर कमरा कहते हैं लेकिन अंदर कोई धूप बत्ती नहीं जल रही है, यहाँ तक कि एक सभ्य महिला भी नहीं, एक महिला भी नहीं, मैं शांति से कैसे सो सकता हूँ? झाओ गुजियांग ने ध्वनि के स्रोत की ओर देखा। ऐसा लग रहा था कि वह किसी धनी परिवार का लाडला युवा स्वामी था। आप कौन हैं? युवा मास्टर ने निकट आती हुई हलचल को देखा और झाओ गुजियांग को मापा। ये भाई, क्या आप व्यापारी हैं? झाओ गुजियांग ने अपने गाल पर दाढ़ी को छुआ और सिर हिलाया। एक व्यापारी अच्छा है, उत्तर और दक्षिण की यात्रा करता है, मुझे लगता है कि आप इस जगह से परिचित हैं। युवा स्वामी करीब झुके और फुसफुसाए। आसपास क्या महिलाओं की संगति का आनंद लेने के लिए कोई जगह है? नहीं, झाओ गुजियांग ने देखा कि वह एक आदमी आत्मा था और आगे कहा, महिलाओं की संगति का आनंद लेने के लिए, लड़कियों को खोजने के लिए, या तो राजधानी की ओर जाओ या आगे शुयुन प्रांत में। दो प्रांतों का ये चौराहा मुख्यतः यात्रियों के लिए है। युवा स्वामी निराश दिखे, वह महिलाओं के बिना कैसे रह सकते थे। तथापि झाओ गुजियांग ने विषय बदल दिया। ये देखकर कि यह व्यक्ति देखने में अच्छा लग रहा है, उसने अपनी छाती से एक पीली पड़ चुकी प्राचीन पुस्तक निकाली और उसे सौंप दी। यदि आप सचमुच अकेले हैं तो इससे उबरने के लिए इसे देखिए। युवा मास्टर ने कवर पर नजर डाली, उसका चेहरा आश्चर्य से भर गया। स्प्रिंग पैलेस ऑफ फूल रिकॉर्ड, स्प्रिंग पैलेस 100 फ्लावर रिकॉर्ड झाओ गुजियांग की बहुमूल्य लियू बेई पुस्तकों में से एक थी। मूलतः उन्होंने योजना बनाई थी कि जब वे अकेले यात्रा करते हुए ऊब जाएंगे तो अपना अकेलापन दूर करने के लिए इसे पढ़ेंगे। कौन जानता था कि ली यूनरुई उसके साथ आने पर जोर देगी। अब उसके लिए इसे देखना असुविधाजनक हो गया था। हुआ यूं कि उसके सामने खड़ा युवक अकेलेपन को सहन नहीं कर सका, इसलिए उसने उस व्यक्ति को अपना काम संभालने दिया और चोरी का माल ठिकाने लगाने में उसकी मदद करने लगा। युवा मास्टर ने कुछ पन्ने पलटे, उनके हाथ कांप रहे थे। अच्छी किताब है भाई, ये खजाना तुम्हें कहाँ से मिला? हम दोनों दुनिया के अंत में रहने वाले लंपट हैं, जब हम मिलेंगे तो यह मत पूछिए कि किताब कहाँ से आई। झाओ बुजियांग ने सूखी खांसी ली और छोटी पीली किताब को युवा मास्टर की बाहों में ठूंस दिया। युवा स्वामी ने जल्दी से उसे अपनी बाहों में डाल लिया और झाओ बुजियांग की ओर देखकर मुस्कुराया। लेकिन अपनी पहचान के बारे में सोचते हुए वह बिना बदले किसी का उपकार कैसे प्राप्त कर सकता था, इसलिए उन्होंने भी बढ़िया जैद का एक टुकड़ा निकाला और झाओ बुजियांग को सौंप दिया। भाई, इसे नापसंद मत करो, अगर भविष्य में आपको कुछ ऐसा सामना करना पड़ता है जिसे आप कुछ समय तक हल नहीं कर सकते हैं, तो बस ये जैद लें और मुझे खोजने के लिए राजधानी में आएं और मैं निश्चित रूप से आपकी मदद करूंगा। झाओ बुजियांग ने सिर हिलाया और जैद ले लिया। तो फिर मैं, युवा मास्टर ने अपनी बाहों में छोटी पीली किताब को थपथपाया। झाओ बुजियांग ने फिर से सिर हिलाया, ये जानते हुए कि लोग अकेलेपन में बहुत अधीर हो जाते हैं। युवा स्वामी पुनः मुस्कुराए, अलविदा कहा और मंद रोशनी वाली जगह से चले गए। झाओ बुजियांग ने धीरे से गर्म पानी की एक बड़ी बाल्टी निकाली और अपने कमरे की ओर चल दिया। एक ही समय पर युवा मालिक विंग रूम में छिपकर छोटी पीली किताब पढ़ रहे थे, उसमें तल्लीन थे जब किसी ने दरवाजे पर हल्के से दस्तक दी। आवाज नियमित थी। दरवाजा खोला गया और नौकरों की पोशाक पहने दो अनुयायी कमरे में दाखिल हुए और जब उन्होंने युवा स्वामी को देखा तो वे तुरंत जमीन पर घुटने टेक दिए। नमस्कार छठे राजकुमार महामहिम। महाराज, हम इतनी दूर से यहाँ तक पहुँचे लेकिन हमें झाओ बुजियांग का कोई सुराग नहीं मिला, क्या ऐसा हो सकता है कि हम बहुत धीमे थे? छठे राजकुमार ने अपना सिर हिलाया, छोटी पीली किताब को मेज पर रख दिया और गहरी आवाज में कहा, असंभव। झाओ बुजियांग, वह मूर्ख, अपना दिन शराब पीने और व्यभिचार में बिताता है, उसकी किडनी पहले से ही कमजोर है, वह इतना तेज नहीं हो सकता। पीछा जारी रखो, यदि आप अभी भी उसका पता नहीं लगा पा रहे हैं तो सेना को सीधे तलवार कास्टिंग विला के बाहर तैनात कर दें, हम निश्चित रूप से उसे पकड़ने में सफल होंगे। महाराज बहुत बुद्धिमान है, अनुयायी ने खुश होकर कहा। आप लोग पहले नीचे जाएं, छठा राजकुमार महिमा और धार्मिकता से भरा हुआ था। मैं एक किताब पढ़ना चाहता हूं। महाराज आप सचमुच बहुत मेहनती हैं, अब हम विदा लेते हैं। रुको, भविष्य में जब तुम बाहर जाओगी तो बहुत से लोग होंगे और सबकी आंखें आपस में मिली जुली होंगी, मुझे महाराज मत कहना। हाँ महाराज, ठीक है महाराज, कोई समस्या नहीं महाराज। अल्पविराम। झाओ बुजियांग पानी लेकर कमरे में लौटा और ली यूनरुई उससे चिपक गई और छेड़खानी करने लगी। झाओ बुजियांग, पानी लाने में मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद, अपनी कर्कश आवाज बंद करो। झाओ बुजियांग ने गर्म पानी टब में डाला। ली यूनरुई ने मुंह बनाया, उसकी आंखों में एक धूर्तता भरी नजर थी। उसने धीरे से अपने बाहरी वस्त्र को खोला जो सुगंधित हवा में लिपटा हुआ था और उसे झाओ बुजियांग के माथे की ओर फेंक दिया। झाओ बुजियांग ने उसे पकड़ लिया और कुर्सी पर रख दिया। क्या आप हर जगह कचरा नहीं फेंक सकते? ली यूनरुई ने कोई आंतरिक वस्त्र नहीं पहना था, केवल ऊपरी शरीर पर गुलाबी और सफेद चोली पहनी हुई थी। ये देखकर कि झाओ बुजियांग ने चारा नहीं खाया है, उसने अपने पैर को जोर से पटका और कपड़े का एक और टुकड़ा झाओ बुजियांग पर लगा जिसने झाओ बुजियांग के माथे को ढक दिया। झाओ बुजियांग ने उसे खींचकर हटाया और पाया कि यह एक चोली थी। झाओ बुजियांग ने एक बार फिर सही तरीके से चोली को फेंक दिया लेकिन उसकी आंखें चुपके से देखने लगी। ली यूनरुई बाथटब में घुटनों के बल खड़ी थी और दोनों हाथों से पानी से खेल रही थी। झाओ बुजियांग, मेरे कंधे इतने दुख रहे हैं कि मैं अपने कंधों तक नहीं पहुंच पा रहा हूं। ली यूनरुई ने धीरे से कहा, अपने चांदी के दांतों से अपने होंठ काटते हुए, उसके गाल लाल हो गए। उसने झाओ बुजियांग की ओर नहीं देखा, बस सीधे पानी की सतह को घूर रही थी। क्या आप इसकी मालिश करने में मेरी मदद कर सकते हैं? समय नहीं है, झाओ बुजियांग ने सिरे से इनकार कर दिया। किसी को बहुत अधिक दयालु नहीं होना चाहिए क्योंकि अक्सर दयालुता का फायदा उठाया जाता है, खासकर तब जब बात अत्यधिक दयालुता की हो। कृपया कृपया। ये देखकर कि झाओ बुजियांग अविचल था, ली यूनरुई ने फिर से शिकायत की, क्या तुम मुझसे इतनी नफरत करते हो? मैं अभी भाग जाऊंगा। ली यूनरुई को टब से बाहर निकलने के लिए तैयार खड़ा देखकर, ठीक है, झाओ बुजियांग ने असहायता से अपना हाथ हिलाया। यदि कोई महिला इस तरह से देखी जाती तो उसके मंगेतर के रूप में वह न केवल हरे रंग की टोपी पहनता बल्कि सम्राट द्वारा उसका सिर भी काट दिया जाता। टब के किनारे तक चलते हुए झाओ बुजियांग ने अपना बड़ा हाथ ली यूनरुई के सुगंधित कंधे पर रख दिया। ली यूनरुई ने अंदर से आत्मसंतुष्ट महसूस करते हुए झाओ बुजियांग की मालिश का आनंद लिया। यह आदमी आमतौर पर जिद्दी होता है, जब बात आती है तो वह अभी भी उसे अपनी उंगली के इर्द गिर्द लपेटे हुए है। झाओ बुजियांग ने ली यूनरुई के कंधों की मालिश की, उसकी नजर ऊपर से नीचे की ओर घूम रही थी। उसने देखा कि ली युनरुई ने अपने हाथों को अपनी छाती पर रखा हुआ था। अरे वाह, वह तो एक सज्जन से भी पहरा दे रही है। ली युनरुई ने झाओ हुजियांग की ताकत में वृद्धि महसूस की, ये जानते हुए कि वह दुखी था क्योंकि वह देख नहीं सकता था। झाओ हुजियांग, आपको क्या लगता है हमारा विवाहित जीवन कैसा होगा?
पता नहीं, क्या तुम्हें लगता है कि हम हर दिन कमरे में शरारती हरकतें करेंगे?
पता नहीं, आपको क्या लगता है भविष्य में हमारे कितने बच्चे होंगे?
पता नहीं, क्या आप अभी कोशिश नहीं करना चाहते?
औरत, आग से मत खेलो, मुझे जानवर बनने पर मजबूर मत करो। झाओ हुजियांग का शरीर धीरे धीरे गर्म हो गया। ली युनरुई ने झाओ हुजियांग के आंतरिक विचारों को सुना और एक नाजुक सी सिसकारी भरी।
झाओ हुजियांग, क्या तुम मुझे छूने से डरते हो?
अगले ही पल छपाक से वह टब में खड़ी हो गई। उसकी आंखें वसंत से भरी हुई थी, वह सीधे झाओ हुजियांग को देख रही थी। झाओ हुजियांग अब इसे सहन नहीं कर सका और आगे झपटा, लेकिन एक पैर तेजी से उठा और झाओ हुजियांग की छाती को अवरुद्ध कर दिया। ली युनरुई ने अपना पिछला मोहक व्यवहार बदल दिया और गंभीर और अलग हो गई।
मैं तो बस तुम्हें चिढ़ा रहा हूँ, जब तुम मुझसे सच में शादी कर लोगे तभी मैं तुम्हारे साथ पति पत्नी वाली बातें कर पाऊंगा।
झाओ हुजियांग समझ गया, उसने उसे पकड़ लिया और फिर छोड़ दिया। वह इस महिला की चालों में फंस गया था और एक कल्टरफिश बनने वाला था। झाओ हुजियांग तब से बाहर भागा, जमीन पर बैठ गया और अपनी इच्छाओं को शांत करने के लिए ध्यान करना शुरू कर दिया। ये देखकर ली युनरुई ने अपने दिल में विजयी भाव से सांस ली। उसकी माँ सही थी, एक आदमी को नियंत्रित करने की कुंजी यह है कि न तो बहुत करीब रहो और न ही बहुत दूर रहो। ठीक अब की तरह वह उसे देने के लिए तैयार थी, लेकिन जैसे ही झाओ हुजियांग अधीर हो गया उसने मना कर दिया। देखने में शर्मीली लेकिन वास्तव में नियंत्रणकारी, झाओ हुजियांग पहले से ही अलग थलग रहने का नाटक कर रहा था, लेकिन क्या वह अभी उसके प्रलोभन का विरोध करने में असमर्थ नहीं था? अब झाओ हुजियांग को शांत होने की जरूरत थी, वह बाद में उसे फिर से बहकाएगी। मध्यरात्रि, नहाने के बाद खुशबूदार खुशबू से लथपथ ली युनरुई सोने के लिए झाओ हुजियांग से चिपक गई। जब झाओ हुजियांग घृणा से एक इंच दूर चला गया तो ली युनरुई एक इंच और करीब आ गई। जब झाओ हुजियांग एक फुट दूर चला गया तो ली युनरुई ने झाओ हुजियांग को गले लगा लिया, जब तक कि दोनों गहरी नींद में नहीं सो गए। अगली सुबह दोनों ने अपनी यात्रा जारी रखी और स्वॉर्ड कास्टिंग विला के और करीब पहुंच गए। दोपहर के आसपास दोनों यात्रियों को दूर स्थित बर्फ से ढके पहाड़ दिखाई देने लगे। वह पर्वत शिखर जहां बर्फ कभी नहीं पिघलती, वह स्वॉर्ड कास्टिंग विला है। इस शहर से गुजरने के बाद हम पहाड़ पर चढ़ सकते हैं और विला में प्रवेश कर सकते हैं। सड़क पर अधिक से अधिक लोग हैं। जब वे दोनों नगर में प्रवेश करने वाले थे तो उन्होंने देखा कि नगर के द्वार पर बहुत से लोग एकत्रित हैं जो संघर्ष कर रहे थे। झाओ हुजियांग ने संपर्क किया और उन्हें पता चला कि कुछ जियांगू गिरोह निमंत्रण के लिए लड़ रहे थे। ये पता चला कि स्वॉर्ड कास्टिंग विला की स्वर्गीय तलवार के जन्म की खबर पहले से ही जियांगू में फैल चुकी थी, जिसने बहुत सारे जियांगू नायकों को आकर्षित किया। पहाड़ पर जाने के लिए केवल एक ही सड़क थी और विला में केवल सीमित संख्या में जियांगू नायकों को ही रहने की सुविधा थी। लोगों के आने जाने को सीमित करने के लिए स्वॉर्ड कास्टिंग विला ने निमंत्रण वितरित किए। केवल निमंत्रण वाले लोग ही विला में प्रवेश करने और स्वर्ग की तलवार के जन्म के भव्य अवसर को देखने के योग्य थे। इसलिए जियांगू में लोग निमंत्रण के लिए एक दूसरे से लड़ने और मारने लगे। इतना रोमांचक, क्या ये तलवारों और छायाओं का पौराणिक संघर्ष है? स्विश स्विश स्विश। ली युनरुई की बड़ी बड़ी आंखें उत्सुकता और उत्साह से भरी थीं। उसने महल में ये चीजें पहले कभी नहीं देखी थीं। झाओ हुजियांग ने ली युनरुई को पकड़ लिया, जो लड़ने वाली भीड़ के पास जाने के लिए उत्सुक था। मेरे पैर को उत्तेजित करते हुए एक लापरवाह चाल और वे उन चाकू, तलवार, लाठी, कुल्हाड़ियों, जुए और कांटों से प्रभावित होंगे। वह स्वर तलवार का जन्म बिल्कुल भी नहीं देखना चाहता था। झाओ हुजियांग और ली युनरुई एक गाड़ी के पीछे छिप गए। अधिक से अधिक लोग लड़ने के लिए शहर के द्वार में घुस गए और शहर के बाहर पहले से ही खाली था। चीख पुकार और दहाड़ के साथ लड़ाई और भी तेज होती गई। लगातार चीख पुकार और आहें सुनाई देने लगी। शहर के दरवाजे के अंदर लड़ रहे 99% लोग मर चुके थे। निमंत्रण के लिए लड़ रहे अंतिम दो लोग एक साथ मर गए। शहर के द्वार पर छोटे पहाड़ के समान लाशों का ढेर लग गया और निमंत्रण तलवार कास्टिंग विला द्वारा डाला गया एक टोकन खून से सना हुआ झाओ हुजियांग के पैरों पर लुढ़क गया। झाओ हुजियांग ने घृणा से निमंत्रण को दूर फेंक दिया, वह उसे छूने को तैयार नहीं था। लेकिन ली युनरुई ने एक जिज्ञासु बच्चे की तरह एक रुमाल निकाला, निमंत्रण पत्र को लपेटा और उसे उठा लिया। इसे मत उठाओ, स्वॉर्ड कास्टिंग विला अच्छी चीज नहीं है। झाओ हुजियांग ने भौहें सिकोड़ते हुए ली युनरुई को मलबे के ढेर में छिपा दिया और उनकी आकृतियों को ढक दिया।
क्यों? ली युनरुई ने असमंजस में पूछा। वह झाओ गुजियांग द्वारा दीवार के सहारे खड़ी थी। दोनों एक दूसरे के करीब थे और वह झाओ गुजियांग की मजबूत मर्दाना आभा को फिर से सूंघ सकती थी।
शश, झाओ गुजियांग ने आगे बढ़कर ली यूनरुई के मुंह को ढक दिया। उसके चेहरे पर सतर्कता थी। अगले ही क्षण, जैसा कि उसे मूल कहानी से पता था, तलवार कास्टिंग विला की वेशभूषा पहने तलवारबाजों का एक समूह शहर के द्वार से बाहर निकला, ढेर में पड़ी सभी लाशों को गधा गाड़ियों पर घसीटा और फिर विला की दिशा में भाग गया। ली यूनरुई और भी हैरान हो गया। स्वॉर्ड कास्टिंग विला क्या कर रहा था? उसने गायब हो रहे तलवारबाजों की ओर अपनी सुंदर आंखें उठाई और फुसफुसाया, ये किस लिए है? झाओ गुजियांग की तलवार जैसी भौहें और भी अधिक सिकुड़ गईं। यदि आपके पास कोई महान खजाना होता तो क्या आप सभी को बताते?
मैं आपको बता दूंगी कि यह मेरे पास है।
ली यूनरुई मासूम दिख रही थी, उसकी खूबसूरत आंखें चमक रही थी। बाधा मत डालो, झाओ गुजियांग ने ली यूनरुई को घूर कर देखा। उन्होंने ये खबर जारी की और यह निमंत्रण इसलिए जारी किया ताकि लोगों को लड़ने के लिए लुभाया जा सके। फिर वे सभी लाशें इकट्ठा करते हैं। तथाकथित स्वर्ग तलवार, एक तलवार 10,000 हड्डियों से बनाई जाएगी। स्वर्ग तलवार के निर्माण के अंतिम चरण में लोगों को तलवार के लिए बलिदान देना होगा। ली यूनरुई झाओ गुजियांग के गंभीर हाव भाव को घूर रही थी। उसने अपने लाल होठों को भींच लिया। उसने उसे गलत नहीं समझा था। झाओ गुजियांग राजधानी में बहुत दूर रहता था, लेकिन वह बहुत कुछ जानता था। वह वास्तव में अपनी क्षमताओं को छिपा रहा था। अभी भी लड़ाई की आवाज़ आ रही है। ली यूनरुई के कान एक लोमड़ी की तरह तीखे थे। उसने झाओ गुजियांग को गले लगाने का अवसर लिया, अपना सिर झाओ गुजियांग की बाहों में छिपा लिया। उसकी पतली जेड उंगली उस ओर इशारा कर रही थी जहां से वह और झाओ गुजियांग आए थे। वहां झाओ गुजियांग ने ली यूनरुई की उंगली का अनुसरण किया और अपनी आंखें सिकोड़ ली। अलग अलग गिरोह की वेशभूषा पहने मार्शल कलाकारों के दो समूह एक पुरुष और एक महिला को घेर रहे थे। वह पुरुष लंबा और शक्तिशाली था और स्त्री अमर के समान पवित्र और शीतल थी। क्या ये लॉन्ग जान और लिंग किंगसू हो सकते हैं? ऐसा लग रहा था कि लॉन्ग जान और लिंग किंगसू किसी कारणवश यहां आते समय दूसरे गिरोह के लोगों से भिड़ गए थे। लॉन्ग जान और लिंग क्विंगजू ने झाओ गुजियांग को कई बार फंसाया था। झाओ गुजियांग की नजरें बदल गईं। दुश्मनों का सामना करते समय वह हमेशा सावधान और प्रतिशोधी रहता था। इसके अलावा वह और ली यूनरुई अब भेष बदल चुके थे, इसलिए वे उन्हें पहचान नहीं पाएंगे। सभी सड़क के भाइयों, झाओ गुजियांग ने एक अलग आवाज में चिल्लाया, ये व्यक्ति लॉन्ग जान है, जियाओ की शिविर का कमांडर, हमसे स्वर्गीय तलवार छीनने के लिए यहाँ आया है। ये जियांगू लोग हमेशा से शाही दरबार के लोगों को नापसंद करते थे। जब लॉन्ग जान ने किसी को उसकी पहचान उजागर करते हुए सुना तो उसने इधर उधर देखा, लेकिन पहचान नहीं सका कि वह कौन था। जैसा कि अपेक्षित था, शाही दरबार का कुत्ता। शाही दरबार भी हमारे जियांगू खजाने में शामिल होना चाहता है, उसे मार डालो। लॉन्ग जान ने अपने दांत पीस लिए और झाओ गुजियांग को घूरने लगा। ये व्यक्ति कौन है? वह वास्तव में मुझे जानबूझकर फंसाने का साहस कर रहा है। झाओ गुजियांग ने डरते हुए कहा कि कहीं लॉन्ग जान मर न जाए, उन्होंने अभी अभी हमारा निमंत्रण भी छीन लिया। जागीर का निमंत्रण? कौन सा निमंत्रण? लॉन्ग जान और भी हैरान हो गया। फिर उसे ये देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि उसे और लिंग किंगसू को घेरने वाले मार्शल आर्टिस्ट अचानक गुस्से से भर गए, ऊर्जा से भर गए और उनके हमले और भी भारी हो गए। हर कदम में हत्या की मंशा थी। लिंग किंगसू ने झाओ गुजियांग की ओर ठंडी नजर से देखा, जो भाग गया था। वह स्वयं भी भेष बदलने में माहिर थी। उसने तुरंत समझ लिया कि दूसरे व्यक्ति का रूप नकली था, आवाज भी नकली थी। ये व्यक्ति कौन है जो अपना सिर और पूंछ छिपा रहा है और जानबूझकर हमें फंसा रहा है? लिंग किंगसू को आगे सोचने का समय ही नहीं मिला जब उसने अचानक लॉन्ग जान की चीख सुनी। भीड़ से घिरे हुए लॉन्ग जान के दाहिने हाथ पर जियांगू विशेषज्ञ ने वार किया। लिंग किंगसू केवल अपने विचारों को इकट्ठा कर सकती थी और मदद करने के लिए आगे बढ़ सकती थी। कास्टिंग स्वॉर्ड मैनर के प्रवेश द्वार पर स्वर्गीय तलवार के भव्य समारोह को देखने के लिए आप दो सम्मानित अतिथियों का मेरे कास्टिंग स्वॉर्ड मैनर में स्वागत है। गार्ड ने विशेष निमंत्रण की जांच की और झाओ गुजियांग और ली यूनरुई को जाने दिया। गार्ड ने उनके व्यापारी पोशाक पर सवाल नहीं उठाया। इस बार स्वर्गीय तलवार के प्रकट होने के साथ बहुत से लोग आए थे, सभी क्षेत्रों से, प्रत्येक के पास अपने अपने विशेषज्ञ थे। ली यूनरुई ने झाओ गुजियांग की बांह पकड़ते हुए कास्टिंग स्वॉर्ड मैनर में कदम रखा और उत्साह से चारों ओर देखने लगा। वहां बहुत सारे लोग क्यों नहीं हैं? इस युवती को आप नहीं जानते? एक दयालु व्यक्ति जो जियांगू कहानीकार की तरह कपड़े पहने हुए था, कमर में हथौड़ा और हाथ में पंखा लिए हुए था, उसने ली यूनरुई को देखा और समझाया, मैंने सुना है कि शाही दरबार ने भी लोगों को भेजा है, यहां तक कि एक राजकुमार को भी। झाओ गुजियांग झेनबेई के राजकुमार का बेटा, ठीक है, किसी ने अपना सिर हिलाते हुए और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा।
ऐसे निकम्मे आदमी का क्या फायदा जो दिन भर सिर्फ औरतों से खेलना जानता हो। इस तरह का कचरा हमारे जियांगू लोगों की स्वर्गीय तलवार की लालसा करने की हिम्मत करता है। अगर वह आने की हिम्मत करता है तो उसे यही मरना चाहिए। उसकी टांगें तोड़ दो, शाही दरबार को आकर उसे ले जाने दो, झाओ गुजियांग ने सभी को बोलते हुए देखा। इस बार उन्होंने सम्राट के आदेश पर जियांगू में प्रवेश किया था, जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता था। लेकिन जैसे ही वह यहां पहुंचा, उसने अपना नाम सुना। जाहिर है किसी ने जानबूझकर कास्टिंग स्वॉर्ड मैनर में उसके आगमन की खबर फैला दी थी। इसका उद्देश्य जियांगू के लोगों को उसे निशाना बनाने के लिए मजबूर करना था। आखिर कौन मुझे मरवाना चाहता है? झाओ गुजियांग मन ही मन खुश था कि उसने भेष बदला हुआ था और अजनबी लोग उसे पहचान नहीं पाएंगे। झाओ गुजियांग यहाँ है, झाओ गुजियांग यहाँ है, भीड़ में अचानक एक आवाज गूंजी। झाओ गुजियांग चौंक गया, लेकिन उसने देखा कि ये लोग उसकी ओर नहीं बढ़ रहे थे। कास्टिंग स्वॉर्ड मैनर में कहीं और छठे राजकुमार ली युनई अधिक से अधिक लोगों से घिरे हुए थे और घबराए हुए लग रहे थे। उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि एक निमंत्रण से केवल दो लोगों को ही मनों में प्रवेश की अनुमति मिल सकेगी। इसलिए उन्होंने अपनी पहचान बताते हुए कहा कि वे शाही दरबार से हैं और चाहते हैं कि जागीरदारों को समझदारी दिखाई जाए तथा उन्हें और अधिक लोगों को लाने की अनुमति दी जाए। अप्रत्याशित रूप से उसे अभी भी केवल एक व्यक्ति को लाने की अनुमति थी और उसे इस अज्ञात कोने में रोक दिया गया था। ये राजकुमार ली युनई है, महान जिया राजवंश का छठा राजकुमार। आप सभी को जल्दी से पीछे हट जाना चाहिए। जियांगू नायकों के एक समूह ने उसे घेर लिया, लेकिन ली युनई के शब्दों ने उन्हें नहीं रोका। किसी ने उपहास किया, क्या बूढ़े सम्राट ने तुम्हें यहाँ भेजा है? सम्राट के आदेशानुसार आपको पता होना चाहिए कि क्या महत्वपूर्ण है। ली युनई ने ठंडे स्वर में चिल्लाया, उसकी आभा और अधिक उग्र हो गई। मुझे लगता है कि आप झाओ गुजियांग हैं, है ना? किसी ने एक नज़र में ली युनई की असली पहचान ली। उन्हें बहुत पहले से ही खुफिया जानकारी मिल रही थी कि शाही दरबार द्वारा भेजा गया व्यक्ति झेनबेई के राजकुमार झाओ गुजियांग का बेकार बेटा था। झाओ गुजियांग, ली युनई ने अपनी भौहें उठाई। ये राजकुमार भी उसे ढूंढ रहा है। अभी भी दिखावा कर रहे हो? ऐसा मत सोचो कि हम नहीं जानते कि तुम झाओ गुजियांग हो। एक धूप नजर वाला व्यक्ति भीड़ के बीच में आया, उसने हाथ उठाया और एक पीली पड़ चुकी प्राचीन पुस्तक निकाली, मानो कुछ दिखा रहा हो। यह क्या है? यह आपके शरीर से लिया गया है? ली युनई चौंक गया, उसने अपनी छाती को छुआ। अरे नहीं, उसकी छोटी पीली किताब गायब हो गई थी। जिस व्यक्ति ने उसकी चीजें चुराई थी उसके हाथ बहुत तेज और गुप्त थे। क्या ये जियांगू का कोई चोर हो सकता है? स्प्रिंग पैलेस 100 फ्लावर रिकॉर्ड्स। चोर ने सबके सामने छोटी पीली किताब खोली, अपना सिर हिलाया और उपहास करते हुए कहा, तस्क तस्क तस्क, आप अभी भी कहते हैं कि आप झाओ गुजियांग नहीं हैं। तुम कामुक हो और अपने साथ एक छोटी सी पीली किताब रखते हो। क्या तुम्हें उम्मीद नहीं थी कि यह तुम्हें धोखा देगी? तुम्हारे पास बहस करने के लिए और क्या है? झाओ गुजियांग, तुम अपना पूरा दिन व्यभिचार में बिताते हो, बाहर जाते समय भी इस तरह की चीजें अपने साथ रखते हो, और फिर भी तुम छठा राजकुमार होने का दावा करते हो। बेशर्म, दूसरों को फंसाना हम जियांगू लोगों के बीच सबसे घृणित व्यवहार है। राजकुमार ली युनई चुप हो गए। वह बहस कैसे कर सकते थे? वह बहस नहीं कर सका। वह छठे राजकुमार ली युनई थे, वह एक छोटी पीली किताब कैसे ले जा सकते थे? यदि यह बात फैल गई तो क्या उनकी प्रतिष्ठा झाओ गुजियांग जितनी खराब नहीं हो जाएगी? चूंकि झाओ गुजियांग की प्रतिष्ठा पहले से ही बहुत खराब थी और झाओ गुजियांग ने उसकी प्यारी बहन को बहकाया था, इसलिए वह दोष झाओ गुजियांग पर डाल सकता था। ली युनई ने अपना हृदय कठोर कर लिया। ये सही है, मैं झाओ गुजियांग हूँ। तुमने यह बात स्वीकार की है। मारो उसे, भीड़ में से एक जोरदार आवाज आई। मारो उसे, शाही दरबार के इस कुत्ते को, राजकुमार के निकम्मे बेटे को मारो। मारो उसे, लोगों का एक समूह उमड़ पड़ा। ली युनई घबरा गई। रुको, असल में मैं छठा राजकुमार ली युनई हूँ। झाओ गुजियांग, तुम छोटे चोर, बहस करने की कोशिश मत करो। छठा राजकुमार ली युनई, मैं अभी भी ली युनलोंग हूँ। मारो उसे, इस बेशर्म व्यक्ति को मारो, ऐसा करो जिससे झेनबेई के राजकुमार का नाम बदनाम हो। अगले ही पल ली युनई को आक्रोशित जियांगू लोगों ने घेर लिया। ... कास्टिंग स्वॉर्ड मैनर के एक अतिथि कक्ष के अंदर झाओ गुजियांग ने ली युनरुई को ईमानदारी से निर्देश दिया। अच्छा बनो। ली युनरुई स्वर्गीय तलवार के प्रकट होने के भव्य अवसर को देखने के लिए उसके साथ जाने पर जोर देती रही, लेकिन वहां खतरों से भरा हुआ था। क्या ली युनरुई सिर्फ अराजकता को और नहीं बढ़ा रहा था? लेकिन ली युनरुई ऐसा नहीं सोचती थी। वह सोचती थी कि ज्यादा लोगों का मतलब ज्यादा ताकत है, और सच्चे प्यार का मतलब है खुशियां और दुख बांटना। उसने झाओ गुजियांग की सख्त निगाहों को नजरअंदाज कर दिया और झाओ गुजियांग की बगलों में गुदगुदी करने लगी। वह चाहती थी कि झाओ गुजियांग समझौता कर ले। लेकिन जैसे ही उसने झाओ बुजियांग को दो बार गुदगुदी की, उसके सिर के किनारे थोड़ी के नीचे का नर्म मांस झाओ बुजियांग के काटने से टकराया और वह सो गई। झाओ बुजियांग ने ली यूनरुई को बेहोश करने के बाद उसे उठाया, बिस्तर पर लिटाया और रजाई से ढक दिया। मूल कहानी में स्वर्गीय तलवार प्रतियोगिता एक कत्लेआम है जिसमें हर कोई एक दूसरे से लड़ता है, जिसके कारण बहुत से लोग मरते हैं और घायल होते हैं। वह बच्चा लॉन्ग जान भी भाग्य का नायक है। नायकों से लड़ते समय वह गलती से स्वर्गीय तलवार पर खून का एक कौर थूक सकता है, स्वर्गीय तलवार की मान्यता प्राप्त कर सकता है और घेराबंदी से बाहर निकल सकता है। झाओ बुजियांग को असहाय महसूस हुआ। नायक होना बहुत अच्छी बात है, उसके जैसे छोटे खलनायक के विपरीत जिसे हर कदम पर सावधान रहना पड़ता है। मुझे आश्चर्य है कि अगर मैं उसके सामने स्वर्गीय तलवार पर खून थूक दूं तो क्या होगा, झाओ बुजियांग ने सोचा। इस काटने का बल बिल्कुल सही था, मस्तिष्क को क्षति पहुंचाए बिना बेहोश करने के लिए पर्याप्त। ली यूनरुई को अचानक जागने से रोकने के लिए झाओ बुजियांग ने थोड़ी हल्की नींद की दवा दी। वह अपने आप जागने से पहले कम से कम एक या दो घंटे सोती थी, जो उसके लिए तियानजियांग की यात्रा करने और वापस आने के लिए पर्याप्त समय होता था। झाओ बुजियांग कमरे से बाहर चला गया। किसी को भी अंदर घुसने और ली यूनरुई को नुकसान पहुंचाने से रोकने के लिए उसने अपनी जेब से कई तरह की नींद की दवाएं और जहर निकाले, उन्हें जमीन और दरवाजे पर बिखेर दिया। गूगल खोज TWKAN। यदि इस दौरान कोई भी व्यक्ति अंदर घुसता है तो वह विशेषज्ञ न होने पर या तो मर जाएगा या घायल हो जाएगा। सिद्धांततः कोई विशेषज्ञ नहीं आएगा, क्योंकि विशेषज्ञों का लक्ष्य तियानजियांग था। इसके बाद उसने धीरे से दरवाजा बंद किया, अपनी दोनों मूंछों को अपने गालों पर छुआ, अपनी टोपी का किनारा नीचे किया और रात में गायब हो गया। तलवार कास्टिंग विला के पीछे। तियानजियांग पहले ही तैयार हो चुका था और अब तलवार पोषण कुंड में था, अंतिम तलवार बलिदान की प्रतीक्षा कर रहा था। तलवार पोषण पूल के बाहर शोर धीरे धीरे बढ़ गया। झाओ बुजियांग नीले पत्थर के रास्ते पर चलते हुए तलवार देखने आए मार्शल कलाकारों के बीच घुल मिल गया। उनके चेहरे पर हमेशा एक सरल और ईमानदार मुस्कान रहती थी, एक ऐसी मुस्कान जो मार्शल दुनिया में यात्रा करने वालों की नजरों में एक मुनाफाखोर की मुस्कान जैसी लगती थी। उसकी आंखें खुलेआम अनेक मार्शल कलाकारों को देख रही थी, मानो वह अपने लक्षित ग्राहकों को खोज रहा हो। वास्तव में उन्होंने एक विसंगति की खोज की थी। विला में प्रवेश करने के बाद उसने चुपचाप वहां उपस्थित लोगों की संख्या का अनुमान लगाया। तार्किक रूप से कहें तो स्वॉर्ड कास्टिंग विला के अंदर के लोगों के अलावा केवल 36 बाहरी लोग ही होने चाहिए, लेकिन अब अज्ञात कारणों से वहां कुछ और लोग थे जो तलवार कास्टिंग विला की पोशाक नहीं पहने हुए थे और जिन्हें उसने पहले नहीं देखा था। इससे उन्हें याद आया कि मूल कहानी में तलवार कास्टिंग विला के अपने लोगों, शाही दरबार और लॉन्ग झान के पीछे ताओवादी संप्रदाय के अलावा सूर्य चंद्र दानव संप्रदाय, पांच पर्वत तलवार संप्रदाय और अन्य मार्शल बल भी थे। हालांकि ये लोग मजबूत नहीं थे। उनमें से सबसे मजबूत तलवार कास्टिंग विला का वर्तमान मास्टर था, जो पांचवीं कक्षा का शीर्ष विशेषज्ञ था। तलवार पौष्टिक पुल साधारण पुलों के विपरीत इसका आकार न तो गोल था और न ही चौकोर, बल्कि लहरदार, दोनों सिरों पर थोड़ा नुकीला, बीच में सबसे चौड़ा जैसे किसी महिला की गर्वित वक्रता और बीच में सबसे संकरा जैसे किसी महिला की कसी हुई कमर। पुल का पानी बीच में विभाजित था, स्पष्ट रूप से सीमांकित यिन और यांग के दो रास्तों की तरह। बाईं ओर का पुल का पानी नीला था और दाईं ओर का पानी रक्त लाल था। तलवार पोषण कुंड के चारों ओर सभी प्रकार की तलवारें डाली गईं और पूरा तलवार पोषण पूल केवल बीच में जहां पूल का पानी स्पष्ट रूप से विभाजित था एक तलवार डाली गई थी। इसकी हड्डी तेज और भयंकर थी, तलवार की मूठा समान दांतेदार, एक मौसमग्रस्त और गड्ढेदार पहाड़ी पत्थर की तरह। तियानजियांग, सबकी सांसें तेज हो गईं। तियानजियांग उनके ठीक सामने था, ऐसा लग रहा था कि वे पहुंच में हैं। हालांकि तलवार पोषण पूल के सामने जमीन पर डाली गई तलवारों ने एक अदृश्य तलवार बाढ़ बना दी, तलवार की ऊर्जा बढ़ गई जिसने सभी को रोक दिया। भीड़ में कुलीनता और ऐश्वर्य से परिपूर्ण ली यूनई ने भीड़ के चारों ओर देखा। वह पहले से ही गुस्से से भरा हुआ था, लेकिन तथाकथित तियानजियांग को केवल दूर से ही देखा जा सकता था, उसके पास नहीं जाया जा सकता था और स्वॉर्ड कास्टिंग विला ने उसे लेने के लिए किसी को भी नहीं भेजा था। ये राजकुमार ली यूनई महान जिया राजवंश का प्रतिनिधित्व करता है। विला मास्टर जियान डोंगलाई कहाँ है? वह अभी तक क्यों नहीं आया है? हमें ज्यादा इंतजार मत करवाओ। हालांकि जैसे ही उसने ये कहा, उसने तलवार देखने आए अन्य लोगों में संदेह पैदा कर दिया, न कि जियान डोंगलाई में। क्या झाओ बुजियांग शाही दरबार का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा है? बकवास, मुझे साफ साफ याद है कि तुमने दिन में झाओ बुजियांग होने का दावा किया था। वह ली यूनई है, उस समय यह महज एक गलतफहमी थी। लेकिन उस भाई ने जो कहा वह सही है, क्या झाओ बुजियांग शाही दरबार का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा है? दूसरों की शंकाएं सुनकर ली यूनई का चेहरा उतर गया। झाओ बुजियांग, उस कमीने ने मेरी बहन का अपहरण कर लिया। ऐसा मत सोचो कि केवल तुम ही उसे ढूंढ रहे हो, मैं भी उसे ढूंढ रहा हूँ।
झाओ बुजियांग, जो भीड़ में छिपा हुआ था, उसने ली युनई द्वारा देखे जाने के डर से अपना सिर सिकोड़ लिया, अपनी टोपी का किनारा नीचे कर लिया। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि जिस धनी युवा मालिक को उसने उस रात वॉन्जिंग सराय में छोटी सी कामुक पुस्तक दी थी, वह ली युनरुई का भाई ली युनई उसका नामात्र का साला था। इससे वह सचमुच शर्मिंदा हो गया, मुख्यतः इसलिए कि पिछले झाओ बुजियांग का इन राजकुमारों से कोई संपर्क नहीं था और वह उन्हें जानता भी नहीं था। ली युनई उसे पहचान सकती थी, लेकिन अब झाओ बुजियांग भेष बदल चुका था। ये देखकर कि स्वॉडकास्टिंग विला से कोई भी उस पर ध्यान नहीं दे रहा था, ली युनई ने चारों ओर देखा और उसकी नजरें तुरंत झाओ बुजियांग पर पड़ी। उसकी आंखें चमक उठी, भैया तुम भी यहाँ क्यों हो?
हाँ, क्या संयोग है। झाओ बुजियांग ऊपर से मुस्कुराया, लेकिन अपने दिल में कोस रहा था।
भाई, जिस बारे में बात कर रहा हूँ, तुम्हारा स्प्रिंग पैलेस 100 फ्लावर्स रिकॉर्ड वाकई अद्भुत है। अंदर की जैद युवतियों की मुद्राएं आंखों को भा रही हैं। ली युनई शायद ही लॉन्ग झान को छोड़कर वहां मौजूद किसी को जानती थी। उसने अपने समान रुचि वाले किसी व्यक्ति को देखा और उसे एक विदेशी भूमि में किसी पुराने मित्र से मिलने जैसी आत्मीयता का एहसास हुआ और उसने तुरंत खुलकर बात की। बस इतना है कि बहुत अधिक टीवी देखना आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है।
आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक?
झाओ बुजियांग ने भौहें सिकोड़ी। क्या ली युनई इतना कमजोर था कि सिर्फ देखना उसके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक था? ली युनई ने सूखी खांसी की और सिर हिलाया। वह इस भाई को बताने में बहुत शर्मिंदा था जिसने उसे छोटी कामुक किताब दी थी कि उसे दूसरों ने झाओ बुजियांग समझकर पीटा था क्योंकि उसके पास छोटी कामुक किताब थी। लेकिन यह इस भाई की छोटी सी कामुक किताब का दोष नहीं था। ये सब झाओ बुजियांग की गलती थी। उसे झाओ बुजियांग को पकड़ने मत दो, अन्यथा।
हुम्फ,
ये सिर्फ ली युनई ही नहीं था जो झाओ बुजियांग की तलाश कर रहा था, बल्कि लॉन्ग झान भी था। लॉन्ग झान और लिंग किंगक्सू ने अपने पिछले मार्शल आर्ट विरोधियों से निपटा था। हालांकि वे थोड़े शर्मिंदा थे, लेकिन वे निमंत्रण पाने और अंदर आने में कामयाब भी रहे। लॉन्ग झान ने भीड़ में झाओ बुजियांग और ली युनरुई की आकृतियां ढूंढी, लेकिन उनमें से कोई भी नहीं मिला और उसका मूड खराब हो गया। उसके दिल में खट्टा स्वाद भर गया। वह कुत्ता झाओ बुजियांग कहाँ चला गया? क्या ऐसा हो सकता है कि झाओ बुजियांग ने तियानजियान से मिलने की योजना ही नहीं बनाई थी? इसके बजाय वह ली युनरुई के साथ चावल पकाने चला गया। लानत है उसकी सातवीं राजकुमारी। लॉन्ग झान, लिंग किंगक्सू की ठंडी आवाज वज्रपात की तरह एक महत्वपूर्ण क्षण में सुनाई दी। अपना मन स्थिर रखें, बड़ी तस्वीर महत्वपूर्ण है। लॉन्ग झान ने सिर हिलाया, ये जानते हुए कि वह अपना संयम थोड़ा खो चुका था, और जल्दी से अपना मन स्थिर किया। लिंग किंगक्सू ने बिना कुछ कहे ली युनई की ओर देखा। कई मार्शल आर्ट नायक तब और अधिक अधीर हो गए जब उन्होंने देखा कि तलवार कास्टिंग विला मास्टर अभी तक प्रकट नहीं हुए हैं। जैसे ही हर कोई बिना परवाह किए आगे बढ़ना चाहता था, काले और सफेद लबादे में एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने तलवार पोषण पूल के बाहर जमीन पर फैली तलवारों पर पैर रखा, उड़कर आया और सबके सामने खड़ा हो गया। तलवार कास्टिंग विला के सभी लोगों ने आदरपूर्वक कहा, नमस्कार विला मास्टर। मध्यम आयु का वह व्यक्ति मुस्कुराया और सबके सामने खड़ा हो गया। उसका एक हाथ उसकी पीठ के पीछे था। यदि आप तियानजियान देखना चाहते हैं तो आपको अभी भी एक परीक्षा पास करनी होगी। इसका क्या मतलब है मास्टर जियान? किसी ने भौहें सिकुड़ते हुए सबके मन में उठ रहे सवाल को आवाज दी। आप हमें तलवार देखने से क्यों रोक रहे हैं? कास्टिंग स्वॉर्ड मैनर के स्वामी जियान डोंगलाई ने मुस्कुराते हुए कहा, स्वर्गीय तलवार के निर्माण से सूर्य और चंद्रमा का सार निकलता है। पहाड़ और नदियां सूर्य और चंद्रमा की शक्ति का सामना नहीं कर सकती। इस तलवार पालने वाले तालाब के भीतर की भूमि आपके रौंदने का सामना नहीं कर सकती। मैं काफी समय से यहाँ नहीं आया हूँ और मैं यहाँ इसी विषय पर चर्चा करने आया हूँ। मनो के भीतर चर्चा के बाद केवल 10 लोग ही तलवार पालन तालाब में कदम रख सकते हैं। वे 10 नायक कौन होंगे, इसका निर्णय आपको आपस में करना होगा। जैसे ही ये शब्द बोले गए, कई जियांगू नायक एक दूसरे की ओर देखने लगे और तुरंत सावधान हो गए। तलवार पालन तालाब में केवल 10 लोग ही प्रवेश कर सकते थे और निर्णय लेने का केवल एक ही तरीका था, लड़ाई। शक्ति से बोलो, लॉन्ग झान भी कोशिश करने के लिए उत्सुक था। आज वह परीक्षण करेगा कि ये जियांगू नायक कितने सक्षम हैं। लिंग किंगक्सू ने लॉन्ग झान की ओर ठंडे स्वर में अपना सिर हिलाया और उसे जल्दबाजी में कोई कदम न उठाने का संकेत दिया। उसने ऐसी आवाज में फुसफुसा कर कहा जिसे केवल वे दोनों ही सुन सकते थे, मेरे लोगों ने जांच की और पाया कि कास्टिंग स्वॉर्ड मैनर हाल ही में विभिन्न गुटों के मजबूत व्यक्तियों की लाशों का उपयोग तलवार की बलि देने के लिए कर रहा है। जियान डोंगलाई के पास शायद इस बार भी यही विचार है, वह सभी को एक दूसरे को मारने के लिए मजबूर करना चाहता है। लॉन्ग झान की मोटी भौहें ऊपर उठ गईं।
तो यही मामला था। अगर ऐसा है तो वह कास्टिंग स्वॉर्ड मैनर के बलिदानी तलवार अभ्यास को उजागर करेगा, पानी को पूरी तरह से हिला देगा, उन दिमागहीन मार्शल कलाकारों को कास्टिंग स्वॉर्ड मैनर के साथ लड़ने देगा और फिर वह सीधे तलवार पालन तालाब में कदम रखने का अवसर लेगा।
जियान डोंगलाई, लॉन्ग जहान ने वीरतापूर्वक और धार्मिकता से दहाड़ते हुए कहा, आप हमें तलवार से बलिदान करने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, है ना?
तलवार के लिए बलिदान? जियांगु के नायक आश्चर्यचकित थे। लोगों को तलवार के बलि चढ़ाने के लिए इस्तेमाल करें,
ये सही है।
लॉन्ग जहान ने जियान डोंगलाई को स्थिर दृष्टि से देखा। जानबूझकर हमें एक दूसरे को मारने के लिए उकसाया जा रहा है, तलवार के लिए लाशों का उपयोग किया जा रहा है।
कास्टिंग स्वॉर्ड मैनर से आमंत्रण भी यही चाल है।
लॉन्ग जान की याद दिलाने के बाद सभी ने इसके बारे में सोचा और स्थिति को समझा, और वे तुरंत क्रोधित हो गए। सभी कास्टिंग स्वॉर्ड मैनर के लोगों को देख रहे थे।
जियान डोंगलाई ने अपनी सफेद भौहें उठाई, कुछ हद तक आश्चर्यचकित था कि लॉन्ग जान कास्टिंग स्वॉर्ड मैनर की तलवार बलिदान के माध्यम से देखने में सक्षम था, लेकिन इससे भी अधिक वह तिरस्कारपूर्ण था। आज जीत उसकी मुट्ठी में थी, तो क्या हुआ अगर यह उजागर हो गया? क्या कास्टिंग स्वॉर्ड मैनर एक ऐसी जगह थी जहां ये लोग अपनी मर्जी से आ जा सकते थे?
उसने अपना हाथ ऊपर उठाया और उसके पीछे कई लंबी तलवारों से बनी तलवार की बाड़ हिलने लगी। अगले ही पल दर्जनों लगभग 100 मजबूत व्यक्ति तलवार पालन तालाब के चारों ओर दिखाई दिए और सभी को घेर लिया। तलवार देखने वाली भीड़ में कई जियांगु लोग, जिन्हें झाओ बुजियांग ने अजीब तरह से व्यवहार करते हुए देखा था, अचानक उठे और अपने आसपास के लोगों पर हमला कर दिया। भीड़ में तुरंत अराजकता फैल गई, तरह तरह के गुस्से भरे शाप उठते गिरते बचे।
कास्टिंग स्वॉर्ड मैनर के घात लगाए सैनिकों और स्वर्गीय तलवार के जन को देखने आए लोगों ने एक साथ लड़ाई की। पूरे आसमान के नीचे ऐसी कोई जमीन नहीं है जो राजा की न हो।
ली युनई ने बेल्ट के रूप में प्रच्छन्न सुनहरी रेशमी मुलायम तलवार निकाली। उसे उम्मीद नहीं थी कि कास्टिंग स्वॉर्ड मैनर के ये लोग इतने घमंडी और बेबाक होंगे। उसने अपनी तलवार उठाई और कास्टिंग स्वॉर्ड मैनर के लोगों की ओर तान दी।
तुम्हारे कार्यों को शाही दरबार द्वारा मिटा दिया जाएगा,
बोलने के बाद सभी का ध्यान अपनी आभा और नर्म तलवार पर होने का फायदा उठाते हुए उसने चुपके से अपने दूसरे हाथ से एक सिग्नल फ्लेयर निकाला और सिग्नल को विस्फोट करने और पहाड़ की तलहटी में तैनात बड़ी सेना को बुलाने के लिए उसे जोर से जमीन पर पटकने के लिए तैयार हो गया। उसी समय झाओ बुजियांग ने भीड़ के पीछे एक कदम आगे बढ़ाया, अपनी टोपी के किनारे को नीचे किया, ध्यान आकर्षित न करने की कोशिश करते हुए, जैसे कि दूसरों से कह रहे हों, मेरी तरफ मत देखो, मैं ली युनई के साथ नहीं हूँ।
बुद्धिमानी से खुद की रक्षा करते हुए और अवसर की प्रतीक्षा करते हुए झाओ बुजियांग को पता था कि इस स्थिति में वह केवल अंधेरे में ही अवसर ढूंढ सकता है और उसे नेता नहीं बनना चाहिए।
निश्चित रूप से इससे पहले कि ली युनई के सिग्नल फ्लेयर को जमीन पर जोर से पटक दिया जाता, एक तलवार क्यूई चमकती हुई गुजरी, जिसने सिग्नल फ्लेयर को सीधे गिरा दिया, उस पर से बल हटा दिया, जिससे वह जमीन पर लुढ़क गया, लेकिन विस्फोट करने में विफल रहा। एक और तलवार की क्यू सीधे उसके कंधे की हड्डी में लगी और वह कराह उठा।
ली युनई ने अपने खाली हाथों और जमीन की ओर देखा, उसका दिमाग गूंज रहा था, उसका दिमाग अचानक शांत हो गया था, केवल आसपास की लड़ाई से चीखें और मांस में घुसती तलवारों की आवाज सुनाई दे रही थी। उसने अचानक चारों ओर देखा, कास्टिंग स्वॉर्ड मैनर के लोग और क्रूर चेहरों वाले जियांगु नायकों का एक समूह, हर जगह खून बिखरा हुआ था। वास्तविक जियांगु और जिस जियांगु की उसने कल्पना की थी उनमें वास्तव में कुछ अंतर थे। उसने देखा कि जिस भाई ने उसे छोटी पीली किताब दी थी वह कुछ मूर्खतापूर्ण बात कह रहा था। फिर उसने उसकी कमर पर लात मारी, वह लड़खड़ाया, एक लंबे चाकू से बच गया जो उसके सिर पर वार करने वाला था, और फिर वह जमीन पर गिर पड़ा। जिस व्यक्ति ने उस पर वार किया था उसने देखा कि चाकू चूक गया है, इसलिए उसने जीत का फायदा उठाकर उसका पीछा नहीं किया, बल्कि इसके बजाय एक घिरे हुए जियांगु नायक पर वार करने और उसे मारने का अवसर लिया और साथ मिलकर उसका गला घोंट दिया। झाओ बुजियांग ने शाप दिया, एक मुट्ठी चिपचिपा खून और खून में संकेत चमक को दोनों हाथों से पकड़ लिया, एक कदम आगे बढ़ाया और ली युनई के चेहरे पर खून मार दिया। युद्ध की स्थिति अराजक थी, वह बेतुकी बातें चिल्ला रहा था, अपने शरीर पर खून लगा रहा था, कास्टिंग स्वॉर्ड मैनर के लोगों की घेराबंदी से बचने की कोशिश कर रहा था। साथ ही उसने ये भी देखा कि जैसे जैसे ज्यादा से ज्यादा लोग गिरते गए, खून तलवार पालने वाले तालाब में रिसता हुआ नजर आने लगा। पूरे तलवार पालने वाले तालाब में धीरे धीरे एक धुंधली सफेद धुंध छाने लगी जिसमें खून की गंध भर गई। उसने चारों ओर देखा, बाएं दाएं पीछे और पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। वह केवल तलवार पालने वाले तालाब में कदम रखने का अवसर ले सकता था। ऐसा कहते ही वह दर्द से चिल्ला उठा, ऐसा लग रहा था जैसे वह गंभीर रूप से घायल हो गया है और मर रहा है। वह जमीन पर गिर पड़ा और फिर एक काय कुत्ते की तरह तलवार पालन तालाब की ओर बढ़ गया, चलते समय वह मरने का नाटक कर रहा था। सफेद धुंध और भी ज्यादा घनी होती गई और लड़ाई एक सफेद गर्म अवस्था में पहुंच गई।
लड़ाई और चीख पुकार की सिम्फनी में झाओ गुजियांग तलवार पालन तालाब की सीमा में लुढ़क गया। वह देखने के लिए जमीन पर लेट गया और तभी उसे स्पष्ट रूप से पता चला कि तलवार पालने वाले तालाब का आकार मूल रूप से एक विभाजित लौकी का था और इसे तलवार पालने वाला लौकी ही कहा जाना चाहिए। हालांकि उसने तलवार पालन तालाब की जमीन पर दो पात्रों को देखा जो तलवार क्यूई द्वारा खींचे गए प्रतीत होते थे। तलवार कब्रिस्तान। झाओ गुजियांग ने तलवार पालन तालाब के चारों ओर विभिन्न तलवारों पर नजर डाली और फिर तालाब के केंद्र में स्वर्गीय तलवार पर नजर डाली। एक तलवार आखिरकार बनती है, 10,000 हड्डियां सूख जाती हैं। ये तलवारों का कब्रिस्तान है और इन बलि देने वाले तलवारबाजों का भी कब्रिस्तान है। उसके पास ज्यादा सोचने का समय नहीं था, वह स्वर्गीय तलवार की ओर रेंगता हुआ आगे बढ़ गया। भीड़ में भयंकर लड़ाई हो रही थी जो उसके लिए स्वर्गीय तलवार को जब्त करने का एक अच्छा समय था। तलवार कब्र में पानी के दो तालाब, एक नीला और एक लाल, इस समय पहले से ही उबल रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वे एक भयंकर आग को प्रज्वलित करने वाले हैं। निश्चित रूप से उसने देखा कि स्वर्गीय तलवार अब लाल और नीली लपटों से घिरी हुई थी, मानो अंतिम बलिदान समारोह पूरा हो रहा हो। यहां आओ, वह तेजी से आगे बढ़ा, लेकिन इससे पहले कि वह स्वर्गीय तलवार को छू पाता, एक तलवार क्यूई उसके ऊपर गिर गई और झाओ गुजियांग भाग्यशाली था कि वह जल्दी से बच गया। इसके तुरंत बाद एक जोड़ी पतले जेड पैर उसके सामने प्रकट हुए और उसे रोक दिया। एक सुगंधित हवा उसके चेहरे से टकराई। झाओ गुजियांग थोड़ा स्तब्ध था और चिकनी पिंडली और हल्के धुंधले सफेद स्कर्ट का अनुसरण करते हुए ऊपर देखने लगा, जिससे उसे लिंग किंगक्सू की ठंडी निगाह की एक झलक मिल गई। लिंग किंगक्सू ने दांत पीसते हुए उपहास किया। हैरान हो गए, ये लड़की बहुत देर से तुम्हें घूर रही है। हीरोइन, मेरी जान बख्श दो, मैं एक अच्छा इंसान हूँ। लेकिन जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उच्च तापमान वाले वातावरण और तलवार की क्यूई के प्रभाव से उसके चेहरे का भेस उतर गया और उसका असली चेहरा सामने आ गया। ये देखकर लिंग किंगक्स्यू ने अपने दांत पीसते हुए कहा, तो आप झाओ गुजियांग हैं, एक सौदा करना चाहते हैं, क्या आपने मुझसे पूछा था? लिंग किंगक्स्यू की तलवार की शक्ति विस्मयकारी थी और उसकी हत्या करने की मंशा बढ़ गई। झाओ गुजियांग क्योटो में युवा पीढ़ी के बीच एक लोकप्रिय व्यक्ति हैं। हालांकि उनकी प्रतिष्ठा अच्छी नहीं है, लेकिन काले और लाल भी लाल ही हैं। उसके आसपास होने पर लॉन्ग जान के लिए अलग दिखना मुश्किल होगा, लेकिन इस बच्चे का जीवन कठिन है और वह चालाकियों से भरा है। यदि वह उससे सावधान न होती तो वह गुप्त रूप से फिर से स्वर्गीय तलवार प्राप्त कर लेता। ये बेटा, फिसलन भरा झाओ गुजियांग, अपनी जान ले लो। अरे, तुम यही तो पूछ रहे हो? झाओ गुजियांग भी चिंतित हो रहा था। उसकी मार्शल आर्ट वास्तव में लिंग किंगक्सू से कमतर थी, लेकिन उसे यकीन था कि लिंग किंगक्सू पर पहले भी उसकी सच्ची यांग शक्ति द्वारा हमला किया गया था और उसकी चोटें ठीक नहीं हुई होंगी। इसके अलावा यह उसके रंग रूप से भी देखा जा सकता था। लिंग किंगक्सू वास्तव में एक दिव्य प्राणी की तरह अलग थलग और परिष्कृत थी, नाजुक विशेषताओं और पीली त्वचा के साथ, लेकिन यह एक चांदनी सफेद थी, न कि एक लाश की तरह पीलापन, जो साबित करता था कि उसे आंतरिक चोटें थीं। मौत तक लड़ना चाहते हो? चलो, उसने एक काप जंप किया और सहजता से अपने हाथ से खंजर खींच लिया, क्योंकि वह पहले उस महिला से निपटना चाहता था जो उसकी योजनाओं को बर्बाद कर रही थी। लिंग किंगक्स्यू ने सोचा कि झाओ गुजियांग वास्तव में उससे मौत तक लड़ने वाला है, इसलिए उसने बचाव के लिए अपने कदम पीछे खींच लिए। लेकिन झाओ गुजियांग का चाकू, जो लिंग किंगक्सू की ओर वार करना चाहिए था, लिंग किंगक्सू की आश्चर्यचकित निगाहों में उसकी अपनी हथेली में जा लगा। लिंग किंगक्सू हक्का बक्का रह गया, वह भी नहीं जानती थी, लेकिन झाओ गुजियांग आया और उसने खुद को चाकू मार लिया। खून टपकने लगा। हालांकि झाओ गुजियांग के चेहरे पर एक विश्वासघाती मुस्कान प्रकट हुई। मैं अपने किरदार में हूं, अपने किरदार में गहराई से, आज मेरे खलनायक की जवाबी हमले का क्षण है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने तलवार मकबरे के केंद्र में स्वर्गीय तलवार की ओर खून छिड़क दिया। रक्त स्वर्गीय तलवार की लाल और नीली लपटों को पार कर गया, तलवार के शरीर को सूंघ गया और आग की लपटों से जल्दी से वाष्पित हो गया, बिना किसी निशान के गायब हो गया। आज मैं तुम्हारा पिता पलट जाऊंगा और मालिक बन जाऊंगा, तलवार आओ। झाओ गुजियांग ने अपने दिल में दहाड़ लगाई, उम्मीद करते हुए कि स्वर्गीय तलवार को उसके द्वारा बुलाया जाएगा और उसके हाथों में बुलाया जाएगा, लेकिन स्वर्गीय तलवार अभी भी बिना किसी अतिरिक्त प्रतिक्रिया के चुपचाप खड़ी थी। हम झाओ गुजियांग अवाक रह गया। क्या ऐसा हो सकता है कि मेरा खून काम नहीं करता? क्या केवल लॉन्ग जान का खून ही स्वर्गीय तलवार को उसके स्वामी को पहचानने में सक्षम बना सकता है? धिक्कार है, यह उचित नहीं है। लिंग किंगक्स्यू ने झाओ गुजियांग की उसके खून को काटने और छिड़कने की क्रियाओं की श्रृंखला को देखा और झाओ गुजियांग के आंतरिक विचारों को सुना। इस बच्चे के पास सचमुच बहुत सारी तरकीबें हैं। उसे कैसे पता चला कि स्वर्गीय तलवार को अपने स्वामी को पहचानने के लिए रक्त की आवश्यकता है? लॉन्ग जान, जल्दी आओ। लिंग किंगजू चिल्लाया। लॉन्ग जान, जो तलवार मकबरे के बाहर जमकर लड़ रहा था, आश्चर्य से देखा और तलवार मकबरे की ओर दौड़ा। इसके अलावा अन्य जीवित बचे नायक और स्वॉर्ड कास्टिंग विला से लोगों का एक समूह भी वहां पहुंचा। लॉन्ग जान आगे की ओर बढ़ा और अपनी वरिष्ठ बहन लिंग किंगक्सू के साथ वह स्वर्गीय तलवार के पास पहुंचने वाला पहला व्यक्ति था। एक महत्वपूर्ण क्षण में तलवार कास्टिंग विला के स्वामी जियान डोंगलाई ने एक नायक पर बमबारी करने के बाद तेजी से एक बवंडर के बल के साथ आगे बढ़े और लॉन्ग जान पर भारी प्रहार किया। आप इस सीट की स्वर्गीय तलवार को छूना चाहते हैं। आप स्वर्गीय तलवार के लिए सिर्फ बलिदान हैं। तुरंत लॉन्ग जान कराह उठा, खून थूकने लगा और एक तरफ गिर पड़ा। जब वह गिरा तो उसका ज्यादातर खून स्वर्गीय तलवार पर फैल गया। झाओ बुजियांग, जो पहले ही भांप चुका था कि कुछ गड़बड़ है और एक कोने में छिप गया था, इस दृश्य को देखता रह गया। उन्होंने मूल कहानी के कथानक के बारे में सोचा, जहां लॉन्ग जान ने भी गलती से स्वर्गीय तलवार पर खून गिरा दिया था, जिससे स्वर्गीय तलवार अपने स्वामी को पहचान सकी थी। अफसोस, एक सड़ा हुआ कथानक, अनुचित। स्पष्टतः पहला खून मेरा था, झाओ बुजियांग अपने दिल में चिल्लाया। इस समय लिंग किंगक्सू को भी जियान डोंगलाई ने पीछे धकेल दिया। उसकी चोटें और भी खराब हो गईं और वह और भी कमजोर हो गई। जियान डोंगलाई ने भीड़ को अभिभूत कर दिया। उनकी पांचवी कक्षा की शिखर साधना ऐसे घायल तथाकथित नायकों से निपटने के लिए आसान थी। इसके अलावा तलवार कास्टिंग विला के शिष्यों और सुदृढ़ीकरण ने एक साथ कार्रवाई की। एक पल में अधिक से अधिक लोग गिर गए, सभी तलवार कब्र में ढह गए। स्वर्गीय तलवार को बहुत समय से गढ़ा जा रहा है, लेकिन ये कभी भी वास्तव में जन्म नहीं ले पाए। लेकिन हमारे जियान कबीले की पैतृक शिक्षाओं में कहा गया है कि स्वर्गीय तलवार में आत्मा होती है और इसे रक्त से बलिदान किया जाना चाहिए। स्वर्गीय तलवार की ओर अधिकाधिक रक्त एकत्रित होता हुआ देखना। ये हो गया, मेरी स्वर्गीय तलवार पूरी होने वाली है, जियान डोंगलाई ने भीड़ पर अपनी नजर घुमाई। खासकर जब उसकी नजर झाओ बुजियांग पर पड़ी, जो कोने में दुबका हुआ था, उसने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, तुम कमजोरों के झुंड, अपने खून का उपयोग करके स्वर्गीय तलवार खोलने में सक्षम होना भी तुम्हारा सम्मान है। जियान डोंगलाई ने स्वर्गीय तलवार को देखा, जो लाल और नीली लपटों में लिपटी हुई थी, और बड़ी महत्वाकांक्षा के साथ आगे बढ़ा। हालांकि जब वह स्वर्गीय तलवार के पास पहुंचा तो उसे अचानक स्वर्गीय तलवार पर लगी आग के कारण पीछे हटना पड़ा। असंभव, स्वर्गीय तलवार, तुम अभी भी मुझे अपना स्वामी मानने को तैयार क्यों नहीं हो? जब जियान डोंगलाई को पीछे हटने पर मजबूर किया गया तो खून से लथपथ ली युनई क्रोध से भरकर तलवार मकबरे में घुस गया। विद्रोही गद्दार, उसे नीचे ले जाओ, झाओ बुजियांग ने जब ये देखा तो वह अवाक रह गया। उसने ली युनई को पहले ही मृत होने का नाटक करने को कह दिया था, फिर भी यह बेवकूफ इस कीचड़ भरे पानी में क्यों घुस रहा था? शायद पर्याप्त खून नहीं है, पर्याप्त खून नहीं है, तुम ठीक समय पर आए हो, जियान डोंगलाई ने व्यंग्य किया। उसका शरीर लहरा रहा था, उसने सीधे ली युनई का गला पकड़ लिया, उसे अपने सामने रोकने के लिए उठा लिया और कदम दर कदम ज्वाला से लिपटी हुई स्वर्गीय तलवार के पास पहुंचा। कोहरा बहुत घना था और तलवार मकबरा एक विशाल स्टीमर की तरह था, जो सभी को भाप बनाकर मारना चाहता था और स्वर्ग में बलिदान करना चाहता था। ली युनई का चेहरा लाल हो गया था, लगातार संघर्ष कर रहा था, लेकिन वह पांचवीं कक्षा के शीर्ष विशेषज्ञ का मुकाबला कैसे कर सकता था? उसे केवल कदम दर कदम स्वर्गीय तलवार के पास जाने के लिए मजबूर किया जा सकता था। उसकी पीठ पर कपड़े गर्मी से झुलस रहे थे। लॉन्ग जान ने समायोजन की एक छोटी अवधि के बाद अपनी मजबूत प्रतिभा के साथ बहुत सुधार किया था। अब ली युनई को पकड़े जाने पर उसे पता चल गया कि यह छठा राजकुमार है। राजकुमार को बचाना एक बड़ी उपलब्धि होगी। छठे राजकुमार को रिहा करो, लॉन्ग जान दहाड़ा। सच्चा यांग हृदय सूत्र फूट पड़ा, एक राजा की आभा फूट पड़ी और उसने जियान डोंगलाई पर भयंकर हमला किया। जियान डोंगलाई ने नजर घुमाए और थप्पड़ मारा। अपने आप को अधिक आंकना, लॉन्ग जान अभी भी कोई मुकाबला नहीं कर पा रहा था। वह लड़खड़ाता हुआ पीछे जा रहा था, उसके मुंह के कोने से खून रिस रहा था, उसकी मोटी भौहें और भी गहरी हो गई थी। हालांकि अगले ही पल तलवार की कब्र में धुंध हिंसक रूप से उमड़ पड़ी। तालाब के बीच में स्वर्गीय तलवार हिंसक रूप से कांपने लगी। सभी की चकित निगाहों में स्वर्गीय तलवार तालाब को तोड़कर आकाश में उभरी और लॉन्ग जान की ओर उड़ी। लॉन्ग जान पहले तो दंग रह गया, फिर बहुत खुश हुआ। उसने अपने हाथ में स्वर्गीय तलवार पकड़ ली और तलवार की अनंत ऊर्जा ने उसे तुरंत घेर लिया। स्वर्गीय तलवार मुझे अपना स्वामी मानती है, लॉन्ग जान ने अपने हाथ में चमकदार स्वर्गीय तलवार को देखा और बहुत खुश हुआ। ये सही है, यह मेरा भाग्य है, सभी अच्छी चीजें, सभी खूबसूरत महिलाएं मेरी होनी चाहिए। असंभव, यह असंभव है, जियान डोंगलाई ये दृश्य देखकर लगभग पागल हो गया। हमारे तलवार कास्टिंग विला ने जिस खजाने को बनाने में 3 पीढ़ियों का प्रयास किया है, वह आपको अपना स्वामी क्यों मानता है? यह उचित नहीं है, वह स्वर्गीय तलवार को वापस छीनने के लिए दौड़ा। लिंग किंगक्सू की आंखें चमक उठी और उन्होंने लॉन्ग जान को याद दिलाया कि उसे बहकने न दें। छोटे भाई, पहले जियान डोंगलाई को मारो, तुम और मैं यहां से चले जाओ। ठीक है, लॉन्ग जान ने सिर हिलाया, हाथ में स्वर्गीय तलवार थामे, दुनिया पर हावी होने की आभा के साथ। लेकिन जैसे ही लॉन्ग जान अपनी तलवार घुमाने वाला था, अगले ही पल स्वर्गीय तलवार अचानक लाल और नीली तलवार ऊर्जा के साथ लहरा उठी। क्या चल रहा है? लॉन्ग जान हर किसी की बढ़ती हुई भयभीत निगाहों के सामने स्वर्गीय तलवार को नियंत्रित नहीं कर सका। स्वर्गीय तलवार दो भागों में विभाजित हो गई। लॉन्ग जान के हाथ में स्वर्गीय तलवार एक ठंडी नीली रोशनी वाली तलवार में बदल गई और दूसरी रक्त लाल और भयानक तलवार सीधे झाओ बुजियांग की ओर उड़ गई, जो एक अगोचर कोने में छिपा हुआ था, और सीधे झाओ बुजियांग के सामने उतरी। योजना बदल गई है। झाओ बुजियांग ने तुरंत रक्त लाल और भयानक तलवार निकाली और सबकी निगाहों के सामने कहा, तुम लोग लड़ते रहो, मेरी माँ मुझे रात के खाने के लिए घर बुला रही है। जियान डोंगलाई गुस्से में था। मैं समझ गया। ये पता चला कि स्वर्गीय तलवार के लिए रक्त बलिदान जीवित लोगों के खून से स्वर्गीय तलवार का बलिदान करना था। कोई आश्चर्य नहीं कि उसने पहले तलवार की बलि देने के लिए इतने सारे शवों का इस्तेमाल किया, लेकिन फिर भी स्वर्गीय तलवार को पूरी तरह से खोलकर जन्म नहीं दे सका। इन दोनों लोगों ने तलवार के लिए खून का बलिदान दिया है, इसलिए स्वर्गीय तलवार में अच्छाई और बुराई दोनों हैं, इसलिए ये दो भागों में विभाजित हो जाती है, एक राजा तलवार, एक तानाशाह तलवार। धत्तेरी की, जियान डोंगलाई के गाल फड़क उठे। उसने अपना हाथ ऊपर उठाया और हिलाया, और तलवार मकबरे के बाहर से एक कीमती तलवार उसके हाथ में आ गई। वह हत्या करने के इरादे से भरा हुआ था। स्वर्गीय तलवार इस बूढ़े आदमी को सौंप दो। दो तलवार ऊर्जाएं लॉन्ग जान और झाओ बुजियांग की ओर बही। हालांकि लॉन्ग जान को यह बात नापसंद थी कि स्वर्गीय तलवार दो भागों में विभाजित हो गई थी और आधा झाओ बुजियांग द्वारा छीन लिया गया था। अभी उसे सबसे पहले जियान डोंगलाई से निपटना था। उसने नीली रोशनी वाली तलवार पकड़ी और तलवार निकाली। झाओ बुजियांग ने पहले ही अपनी तलवार घुमा ली थी। जैसे ही जियान डोंगलाई की हत्या की मंशा का पता चला, उसने जवाबी हमला कर दिया। बेहतर है कि पहले हमला कर दिया जाए, खासकर इस तरह की जीवन मरण की स्थिति में। एक नीली और एक लाल तलवार की ऊर्जा जियान डोंगलाई की ओर बही और वे वास्तव में हवा में एक में विलीन हो गईं। स्वर्गीय तलवार तुम्हारे हाथों में बर्बाद हो गई है। जियान डोंगलाई अपनी दबंगई में असीम था। उसने अपनी तलवार को ब्लॉक करने के लिए घुमाया। अपनी पांचवीं श्रेणी की शक्ति के साथ वह इन दो युवा बदमाशों को नहीं हरा सकता था, लेकिन उसने तलवार की ऊर्जा को कम करके आंका। झिंग, उसने जो तलवार घुमाई उसकी ऊर्जा नष्ट हो गई। स्वर्गीय तलवार की तलवार ऊर्जा विनाशकारी थी। अगले ही पल जियान डोंगलाई के हाथ में तलवार भी टूट गई, लेकिन इसके तुरंत बाद तलवार की ऊर्जा पुनः दो भागों में विभाजित हो गई। लाल प्रकाश तलवार की ऊर्जा सीधे उसके शरीर में प्रवाहित हुई। वह अविश्वास में हिंसक रूप से कांप उठा। नीली रोशनी वाली तलवार की ऊर्जा फिर से उसके शरीर में फैल गई। वह फिर से कांप उठा और एक घुटने पर झुक गया। उसने जीवन भर स्वर्गीय तलवार का पीछा किया था, लेकिन अब वह स्वर्गीय तलवार की शक्ति से छलनी हो गया था। वह अनिच्छा से मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया। क्या ये स्वर्गीय तलवार की शक्ति है? अच्छा। अगले ही क्षण वह खून के धुंध से भरे आकाश में बिखर गया, जो धुंधले सफेद कोहरे में मिल गया। खून की गंध लहरदार हो गई। लॉन्ग जान ने अपनी तलवार को म्यान में नहीं रखा, पलट गया और ठंडे मन से उस दिशा को तिरस्कृत किया जहां झाओ बुजियांग था, और तलवार को पकड़े हुए कलाई को एक चाप में घुमाया। अपने हाथ में तलवार मुझे सौंप दो। लॉन्ग जान इस तथ्य का फायदा उठाना चाहता था कि झाओ बुजियांग से छुटकारा पाने के लिए उसे कोई नहीं रोक रहा था। ली युनई ने लॉन्ग जान की हरकतों को देखा और चिल्लाया, लॉन्ग जान, तुम्हारा क्या मतलब है? ये भाई इस राजकुमार का रक्षक है। अगर वह न होता तो इस राजकुमार को पहले ही बहुत तकलीफें झेलनी पड़ती। ऐसा कहने के बाद ली युनई आगे बढ़ने वाला था और लॉन्ग जान को रोकने के लिए राजकुमार के रूप में अपनी स्थिति का उपयोग करने वाला था। छठे राजकुमार, लिंग किंगक्सू की आंखें ठंडी और सख्त थीं। उसने व्यंग्य किया, ये तुम्हारा उद्धारकर्ता वही झाओ बुजियांग है जिसकी तुम तलाश कर रही थी। वह झाओ बुजियांग है। ली युनई ने अपने समान विचारधारा वाले अच्छे भाई को अविश्वास से देखा। उसका मन चकित था। लॉन्ग जान ने चकित छठे राजकुमार की ओर देखा, ठंडी सांस ली और एक बार फिर झाओ बुजियांग की ओर राजा की तलवार चलाई। ये दोनों तलवारें उसकी होनी चाहिए, लॉन्ग जान। झाओ बुजियांग के पास लॉन्ग जान की चीजों को अपवित्र करने के लिए कौन से गुण और क्षमताएं थीं? आज वह झाओ बुजियांग को मार डालेगा, इस बेकार चीज की आंखों में खटकने वाली चीज को, और उसे मारने के बाद तलवार भी जब्त कर लेगा। झाओ बुजियांग ने पहले ही लॉन्ग जान की हत्या की मंशा को भांप लिया था। वह बिना प्रतिरोध के पकड़े जाने वाला व्यक्ति नहीं था। कास्टिंग स्वॉर्ड मैनर के मास्टर की हत्या के क्षण से ही वह लॉन्ग जान के अचानक भड़कने से लगातार सतर्क था। इस समय उसने अपनी तलवार को जोर से घुमाया और रक्त लाल तलवार की ऊर्जा लहरों में परिवर्तित हो गई, जो लॉन्ग जान द्वारा चलाई जा रही जलनीली तलवार की ऊर्जा की ओर बढ़ रही थी। लाल और नीली तलवार की ऊर्जाएं आपस में टकरा गईं, सीधे हवा में विस्फोट हो गया। तलवार की ऊर्जा के घेरे लगातार सभी दिशाओं में लहराते रहे, हर किसी के सिर के ऊपर चट्टान की दीवारों और चट्टानों को काटते हुए। उड़ती हुई बजरी, फिर भी इसने तलवार के मकबरे की जमीन पर गहरी खाई खोद दी और धरती ढहने लगी। पूरा स्वॉर्टूम हिलने लगा और मलबा लगातार नीचे गिरने लगा। बचे हुए लोग स्वर्गीय तलवार की शक्ति पर आश्चर्यचकित थे, लगातार चट्टानों को चकमा देते हुए और कास्टिंग स्वॉर्ड मैनर की ओर भागते हुए। लॉन्ग जान अभी भी हार मानने को तैयार नहीं था। उसके दिल में झाओ गुजियांग की उसके हमले का विरोध करने की क्षमता पूरी तरह से स्वर्गीय तलवार के दूसरे हिस्से द्वारा झाओ गुजियांग को दी गई शक्ति के कारण थी। अन्यथा उसकी एक तलवार के वार से झाओ गुजियांग निश्चित रूप से राख में बदल जाएगा। तुमने वो चुरा लिया जो मेरा होना चाहिए था। लॉन्ग जान की आंखें भयंकर थीं। हिलती चट्टानों और आसन पतन को अनदेखा करते हुए उसने झाओ गुजियांग पर फिर से अपनी तलवार से वार किया। जाओ, लिंग किंगक्सू ने जबरदस्ती लॉन्ग जान को खींच लिया। तलवार मकबरा ढहने वाला था और लंबे समय तक वहां रहना उचित नहीं था। झाओ गुजियांग ने तलवार से वार किया और फिर ली युनई को खींच लिया, जिसकी अभिव्यक्ति जटिल थी, और पहाड़ से नीचे भाग गया। अब उसके पास लॉन्ग जान के साथ खिलवाड़ करने का समय नहीं था। वह जानता था कि क्या महत्वपूर्ण था, अब भागना प्राथमिकता थी। ये देखकर कि वह अभी भी झाओ गुजियांग को नहीं हरा पाया, लॉन्ग जान की भौहें तन गईं, लेकिन असहाय होकर वह केवल अपनी बड़ी बहन के साथ ही बच सकता था। कोई भी ढहती तलवार कब्र के अंदर दफन नहीं होना चाहता था। ली युनई झाओ गुजियांग के पीछे पीछे आ रहे थे। उन्होंने पूछा, भाई, क्या तुम सच में झाओ हो? ये सही है। अब जब बात यहां तक पहुंच गई थी, झाओ गुजियांग ने कोई दिखावा नहीं किया और अपने पत्ते खोल दिए। मैं झाओ गुजियांग हूँ। ली युनई की अभिव्यक्ति और भी जटिल हो गई। वह उस घृणित झाओ गुजियांग को लंबे समय से खोज रहा था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वे दोनों पहले ही मिल चुके हैं। युनरुई कहाँ है? उसने भौहें सिकोड़ी। चिंता मत करो, वह ठीक है। झाओ गुजियांग ने अपना सिर नहीं घुमाया, उसके पैर हवा की तरह बेहद शांत। चलो पहले किसी सुरक्षित स्थान पर चलें। रुकना, झाओ गुजियांग की बात पूरी होने से पहले ही उसे एहसास हो गया कि कुछ गड़बड़ है। ऊंची जगह से देखने पर पता चला कि जियांगू के लोगों का एक बड़ा समूह कास्टिंग स्वॉर्ड मैनर से बाहर निकल आया है। ये जियांगू लोग वे थे जिनके पास मूल रूप से निमंत्रण नहीं थे और वे कास्टिंग स्वॉर्ड मैनर के बाहर एकत्र हुए थे। अब जब उन्होंने स्वर्गीय तलवार को प्रकट होते देखा, तो उन्हें अब निमंत्रण की परवाह नहीं थी और वे सीधे कास्टिंग स्वॉर्ड मैनर की सुरक्षा को तोड़कर पीछे के पहाड़ की ओर भागे। ये लोगों का समूह भूखे भूतों की तरह था। उनसे टकराने पर निश्चित रूप से अराजक युद्ध छिड़ जाएगा। हम बर्बाद हो चुके हैं। ली युनई का चेहरा पीला पड़ गया था। जियांगू में प्रवेश करने के बाद ही उसे एहसास हुआ कि ये जियांगू लोग कितने भयानक थे। वे आमतौर पर नैतिकता की बात करते थे, लेकिन हितों के सामने वे बिल्कुल भी तर्क नहीं करते थे। वे क्रूर और निर्दयी थे। ली युनई, तुम मुझे एक और जीवन देना चाहते हो? इस महत्वपूर्ण क्षण में झाओ गुजियांग ने फिर भी हंसते हुए खून से सना हुआ सिग्नल फ्लेयर निकाला और ली युनई की हैरान निगाहों के सामने उसे जमीन पर पटक दिया। एक तीर बादलों को भेदता है और हजारों सेनाएं आ जाती हैं सामना करने के लिए। सिग्नल फ्लेयर फट गया और एक भूतिया हरा धुआं हवा में उड़ गया। एक पल में झाओ गुजियांग ने अस्पष्ट रूप से कास्टिंग स्वॉर्ड मैनर के पैर पर तैनात शाही सेना को देखा। एक काले ज्वार की तरह कास्टिंग स्वॉर्ड मैनर की ओर बढ़ रहा था। बेवकूफी से काम लेना बंद करो। झाओ गुजियांग ने ली युनई को खींच लिया और जंगल की तरफ भाग गया। बाहर निकलने के बाद यह मत कहना कि मैं तुम्हें छोटे जंगल में ले गया था। ली युनई बेहद शर्मिंदा हुई और उन्होंने जवाब दिया, तुम ही हो जो मुझे छोटे जंगल में ले गए। हालांकि अफवाहें पक्षपातपूर्ण हैं, फिर भी उनमें कुछ अर्थ तो है। तुम वाकई बेशर्म हो। झाओ गुजियांग और ली युनई घने जंगल में छिप गए। दोनों नीचे झुके हुए थे और शाही सेना को कास्टिंग स्वॉर्ड मैनर में घुसते हुए और जियांगू लोगों से लड़ने के लिए पीछे के पहाड़ की ओर भागते हुए देख रहे थे। लॉन्ग जान और लिंग किंगक्सू को दो समूहों के लोगों ने रोक दिया। लॉन्ग जान ने अपनी पहचान बताई और शाही सेना के साथ मिलकर जियांगू विद्रोहियों को पकड़ने का काम किया। चमकता चांद धीरे धीरे खिसकने लगा और लड़ाई की आवाजें कम होती गईं। पहाड़ की ओर जाने वाला रास्ता खून से लथपथ लाशों से भर गया और जियांगू के लोग धीरे धीरे हार कर पीछे हटने लगे। लिंग किंगक्सू और लॉन्ग जान एक साथ हैं, एकदम सही। इस महिला ने काओ शियाओलान के परिवार को मार डाला और गश्ती बटालियन द्वारा इस कृत्य में पकड़ी गई। जब तक मैं ली युनई को बाहर निकालता हूं और इस मामले को उजागर करता हूं, तब तक लॉन्ग जान को अनिवार्य रूप से फंसाया जाएगा। झाओ गुजियांग अंधेरे में छिप गया और लॉन्ग जान और लिंग किंगक्सू पर नजर डाली। अब लॉन्ग जान को काबू में करने का सही समय था। झाओ गुजियांग अपने मन में सोच रहा था, तभी अचानक लिंग किंगक्सू ने पास ही घने जंगल की ओर देखा, उसकी खूबसूरत भौहें सिकुड़ गईं। झाओ गुजियांग वहां छिपा था। बकवास, वह स्वर्गीय तलवार के लिए लड़ने और पहले से लड़ने में बहुत व्यस्त थी और उसने ध्यान नहीं दिया। अब अगर झाओ गुजियांग ली युनई के सामने लॉन्ग झान पर आरोप लगाती है और उसे एक हत्यारा के रूप में उजागर करती है, और वह और लॉन्ग झान एक साथ हैं, तो क्या इसे लॉन्ग झान पर आरोप नहीं लगेगा? नहीं, उसे जल्दी जाना होगा। लिंग किंगक्स्यू ने लॉन्ग झान के पास कुछ शब्द फुसफुसाए, फिर घास पर कदम रखा और हल्के से उड़कर कास्टिंग स्वॉर्ड मैनर की ओर बढ़ गया और पहाड़ों में गायब हो गया। झाओ गुजियांग, जो अंधेरे में छिपा हुआ था, भौहें सिकोड़ रहा था। लिंग किंगक्स्यू बहुत तेजी से भागा। ऐसा कैसे लग रहा था कि उसे पता था कि वह क्या सोच रहा था? ली युनई, गंदगी साफ करने की बारी तुम्हारी है। झाओ गुजियांग ने ली युनई को धक्का दिया। अब छठे राजकुमार के लिए श्रेय लेने का अच्छा समय था। मेरी बहन कहाँ है? ली युनई ने पूछा। आपने पहले कहा था कि वह सुरक्षित है। उस समय स्थिति गंभीर थी और मेरे पास आपसे पूछने का समय नहीं था। वह अब कहाँ है? मैं उसे यहाँ ले आऊंगा, झाओ गुजियांग ने फिर निर्देश दिया। पहले गंदगी साफ करो, इस राजकुमार को क्यों सुनना चाहिए? ली युनई ने झाओ गुजियांग को घूर कर देखा, जो एक पल में दूर भाग गया और धीमी आवाज में कुछ शब्दों को कोसा, लेकिन अंत में उसने छोड़ने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की। झाओ गुजियांग और वह एक जैसे विचार वाले थे, इसलिए उससे नफरत करने की कोई वजह नहीं थी। इसके अलावा उसने दो बार उसकी जान बचाई थी। अब जब यहाँ इतने सारे लोग मर चुके हैं और घायल हो चुके हैं, तो किसी को इस गंदगी को साफ करना चाहिए। वह जंगल से बाहर निकल गया। शाही सेना ने शुरू में अपनी तलवारें आगे की ओर तान रखी थी, लेकिन जब उन्होंने उसे देखा तो उन्होंने अपनी तलवारें वापस खींच ली और सम्मानपूर्वक उसे छठा राजकुमार कहकर संबोधित किया। लॉन्ग झान ने झाओ गुजियांग की हरकतों को देखा और अंदाजा लगाया कि झाओ गुजियांग शायद ली युनरुई को खोजने जा रहा है। वह भी उसका पीछा करना चाहता था। चूंकि वह पहले ली युनरुई के मामले में झाओ गुजियांग से एक कदम पीछे था, इसलिए अब ली युनरुई को वापस लेने का अच्छा समय था। वह कौन? कमांडर लॉन्ग, लॉन्ग झान, क्या तुम आदेशों की अवहेलना करने जा रहे हो? सेना को अपने पक्ष में पाकर ली युनई ने राजकुमार की शान फिर से हासिल कर ली। तुम यहीं रहो और इस गंदगी को साफ करने में राजकुमार की सहायता करो, लॉन्ग झान ने रुककर कहा, उसकी अभिव्यक्ति बदल गई। ली युनई ली युनरुई का भाई था और पसंदीदा राजकुमारों में से एक था। अगर वह अब झाओ गुजियांग को खोजने के लिए अपना रास्ता बनाता है, तो वह ली युनई को नाराज कर देगा। अपने दिल में पक्ष विपक्ष को तौलने के बाद वह मुड़ा और अपनी मुठियां भींच ली। लॉन्ग झान आपके महामहिम के आदेशों का सम्मानपूर्वक पालन करता है। हाथ में सर्वोच्च तलवार लेकर मेरे पास संसार है। रक्तलाल भयानक सर्वोच्च तलवार को पकड़े हुए झाओ गुजियांग ने सावधानीपूर्वक अपने अतिथि कक्ष की ओर अपना रास्ता बनाया। ली युनरुई को दूर ले जाने और इस परेशानी भरे स्थान को छोड़ने की तैयारी की। इस सर्वोच्च तलवार के साथ उसे सुरक्षा के मामले में अधिक सुरक्षा मिलेगी, जिससे उसके लिए जीवित रहना आसान हो जाएगा और आसानी से हेरफेर से बचा जा सकेगा। वह बहुत उत्साहित होकर अतिथि कक्ष के दरवाजे पर पहुंचा। उसकी निगाहें उस क्षेत्र पर घूम रही थी, लेकिन अचानक उसका दिल बैठ गया। जाने से पहले उन्होंने कमरे के प्रवेश द्वार पर जो औषधीय पाउडर छिड़का था, वह बिखर गया था। क्या कोई अतिथि कक्ष में घुस आया है? उसने दरवाजा खोला और देखा कि ली युनरुई बिस्तर पर चुपचाप बैठी है और उसने धीरे से राहत की सांस ली। तुम्हारी ये तलवार, तुम सफल हुए झाओ गुजियांग। ली युनरुई का चेहरा मुस्कुराहट से भरा था, क्योंकि वह उसका अभिवादन करने के लिए जल्दी से आगे बढ़ी। उसकी आंखें जिज्ञासा से भरी हुई थी। वह झाओ गुजियांग की स्वर्गीय तलवार को छूना चाहती थी। हाँ, मैं अंततः सफल हो गया। झाओ गुजियांग ने ली युनरुई की बाहों को पकड़ लिया और उसे चूमा। उसके लाल होठों पर एक जोरदार थप्पड़ मारा, जिससे लार पीछे छूट गई। ली युनरुई कुछ आश्चर्यचकित दिखे। झाओ गुजियांग जल्दी में था, लगातार ली युनरुई के गालों को चूम रहा था, साथ ही साथ एक हाथ बढ़ाकर उसके शरीर को सहला रहा था और उसे बिस्तर की ओर धकेल रहा था। झाओ, झाओ गुजियांग, एक क्षण रुकें। ली युनरुई का चेहरा तमतमा गया था। रॉयल ब्रदर यहाँ है, अभी यह सुविधाजनक नहीं है। बोलने के बाद ली युनरुई ने झाओ गुजियांग को दूर धकेल दिया और विनम्रतापूर्वक कहा, ठीक है, जब हम वापस आएंगे तो मैं आपको संतुष्ट कर दूंगा। पहले मुझे स्वर्ग की तलवार देखने दो। झाओ गुजियांग ने अभी भी ली युनरुई की कलाई पकड़ रखी थी, अपना सिर उसके करीब लाया, उसके गालों से लेकर गर्दन तक उसे चूम रहा था। लगातार तसु 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 की आवाजें निकाल रहा था और ली युनरुई के कपड़ों पर लगे रिबन को खोलने के लिए हाथ बढ़ाना शुरू कर दिया। अरे औरत, अभी भी मेरा फ्लावर वाटर मून के साथ मुझे धोखा देने की कोशिश कर रही हो। ठीक है, चूंकि आप खुद को समर्पित कर रहे हैं, तो मैं आपका फायदा कैसे न उठाऊं। झाओ गुजियांग के मन की बात सुनकर ली युनरुई के चेहरे पर भाव बदल गए। इसका मतलब है कि झाओ गुजियांग ने बहुत पहले ही उसकी असलियत जान ली थी। उसने झाओ गुजियांग को अपनी हथेली से दूर धकेल दिया और स्वर्ग की तलवार को जबरदस्ती छीनने के लिए आगे बढ़ी। लेकिन स्वर्ग की तलवार ने पहले ही अपने स्वामी को पहचान लिया था। जैसे ही उसने स्वर्ग की तलवार को उसके पीछे से पकड़ा, अचानक एक रक्तलाल भयानक प्रकाश फूट पड़ा। तलवार की ऊर्जा रक्त की तरह थी, जिसने पूरे अतिथि कक्ष को रोशन कर दिया। लियुनरू एक तीव्र प्रकाश से उत्तेजित हो गई और अब मिरर फ्लावर वाटरमून को बनाए नहीं रख सकी। लिंग किंगक्सू की उपस्थिति में वापस आ गई। रक्तलाल तलवार की रोशनी ने उसकी आंखों को घायल कर दिया, जिससे उसकी आंखों से खून के आंसू बहने लगे। लिंग किंगक्सू पहले से ही गंभीर रूप से घायल थी और अब मिरर फ्लावर वाटरमून को जबरन तोड़ दिया गया था और उसकी आंखें घायल हो गई थी, जिससे चोट पर चोट और बढ़ गई। वह सीधे हताश होकर भाग गई। झाओ गुजियांग से उलझना नहीं चाहती थी। झाओ गुजियांग ने भी उसका पीछा नहीं किया। उसने पहले ही लिंग किंगक्सू की भागने की गति देख ली थी और वह कोशिश करने पर भी उसे पकड़ नहीं सका। उसने कमरे में लियुनरुई को ढूंढा। लिंग किंगक्सू ने अभी अभी उसे धोखा दिया था, लेकिन कुछ ही समय में लियुनरुई को कहीं और छिपाने का समय नहीं था। उसे अभी भी कमरे में होना चाहिए। निश्चय ही उसने जल्द ही कोठरी में लियुनरुई को पाया। लियुनरुई अभी भी बेहोश थी, जो उसकी सामान्य अवस्था थी। झाओ गुजियांग जब कमरे में दाखिल हुआ तो हैरान रह गया। उसे लगा कि उसने लियुनरुई को बेहोश कर दिया है और दवा लगा दी है। इतने कम समय में उसका खुद से जागना नामुमकिन था। कमरे में दाखिल होते समय उसने लियुनरुई को कैसे देखा? झाओ गुजियांग ने मारक दवा निकाली और लियुनरुई की नाक के सामने रख दी ताकि वह उसे अंदर ले सके। कुछ ही देर में लियुनरुई जाग उठी। वह चकित और भ्रमित दिख रही थी। क्या हुआ? मैं तो बेहोश हो गया हूँ। अभी अभी एक हत्यारा आया था। झाओ गुजियांग ने सावधानीपूर्वक अपने शब्दों का चयन किया। वह इसे नजरअंदाज करना चाहता था। मुझे पता है। लियुनरुई ने झाओ गुजियांग को गले लगाया। उसका चेहरा खुशी से भरा हुआ था और उसने एक पल के लिए सोचा, आपको मेरी सुरक्षा की चिंता रही होगी, इसलिए आपने मुझे छिपा दिया और अकेले हत्यारे से लड़ने चले गए। ओह हाँ, झाओ गुजियांग अवाक रह गया। प्यार में डूबा दिमाग ऐसा ही होता है। उसे समझाने की भी जरूरत नहीं थी और वह पहले से ही चीजों की कल्पना करने लगी थी। झाओ गुजियांग व्यक्ति के आने से पहले आवाज पहले सुनाई दी। छठे राजकुमार, लियुनरुई की आवाज कमरे के बाहर गूंजी और फिर एक जल्दबाजी में व्यक्ति कमरे में भाग गया। मेरी बहन को जाने दो, लियुनरुई ने कमरे में गले मिलने का दृश्य देखकर चिल्लाया। झाओ गुजियांग, तुम मेरी बहन का अपहरण करने की कोशिश क्यों कर रहे हो? लियुनरुई झाओ गुजियांग को कसकर गले लगा रही थी, लेकिन उसे उसके मूर्ख भाई ने रोक दिया और उसके दिल से गुस्सा फूट पड़ा। वह खड़ी हुई, एक कदम आगे बढ़ी और सीधे अपने भाई लियुनरुई के कान को पकड़ लिया। झाओ गुजियांग और मैं एकदम सही जोड़ी हैं, क्या एक भाई के रूप में आपत्ति करने की आपकी बारी है? ए ए ए, लियुनरुई ने अपनी बहन के कान को पकड़ लिया और तुरंत अपनी अभिव्यक्ति बदल दी और विनम्रतापूर्वक मुस्कुराया। लियुनरुई, मुझे बस तुम्हारी चिंता है। लियुनरुई हमेशा से इस बहन से प्यार करती थी और उससे डरती भी थी। भाई बहनों को फिर से एक साथ और अस्थायी रूप से सुरक्षित देखकर झाओ गुजियांग कमरे से बाहर निकल गया। मैं हत्यारे का पीछा करने जा रहा हूँ, मैं भी जाऊंगी। लियुनरुई ने जब ये देखा तो वह झाओ गुजियांग का पीछा करना चाहती थी। लियुनरुई ने लियुनरुई का रास्ता रोका। ये बहुत खतरनाक है, मत जाओ। तो फिर आप झाओ गुजियांग की मदद करें। लियुनरुई ने भौहें चढ़ा दी। तसक, लियुनरुई ने अपना सिर हिलाया। झाओ गुजियांग के पास स्वर्ग की तलवार है, हत्यारे से डरने की क्या बात है? उसने स्वर्ग की तलवार प्राप्त की। लियुनरुई ने आश्चर्य से अपना छोटा सा मुंह ढक लिया। झाओ गुजियांग ने इतने सारे मार्शल आर्ट विशेषज्ञों से स्वर्ग की तलवार छीन ली। थोड़ा विचार करने पर वह झाओ गुजियांग के नायकों के खिलाफ लड़ने के प्रभावशाली दृश्य की कल्पना कर सकती थी। ये पूरी तरह से प्राप्त नहीं हुआ है। लियुनरुई ने अपना सिर हिलाया। इसका आधा हिस्सा अभी भी लॉन्ग झांग के हाथों में है। तुम उस समय वहां नहीं थे, तुम्हें नहीं पता कि यह कितना खतरनाक था। लियुनरुई के मन में अभी भी कुछ डर था, क्योंकि वह धीरे धीरे अपनी बहन को स्वर्ग की तलवार के लिए लड़ाई की क्रूरता के बारे में बता रहा था। अपने भाई के द्वारा रोमांचकारी दृश्य का वर्णन सुनकर लियुनरुई को एहसास हुआ कि वह शुरू से ही बहुत हठी थी। झाओ गुजियांग उसे अपने पीछे आने से इसलिए मना कर रहा था क्योंकि यह बहुत खतरनाक था। जरा सी चूक उसे तलवार की कब्र में दफना सकती थी। मुझे कहना होगा कि झाओ गुजियांग ने जो निर्णायकता और शांति दिखाई, वह वास्तव में मेरी अपेक्षाओं से कहीं अधिक थी। लियुनरुई ने भी आह भरी। वह उतना भद्दा, अहंकारी और हर किसी को नजरअंदाज करने वाला नहीं है, जैसा कि अफवाहों में कहा जाता है। इसके विपरीत वह सतर्क है और उसके अपने तरीके हैं। इस तरह से देखा जाए तो शायद पिता का उसके प्रति पूर्वाग्रह बहुत गहरा है। झाओ गुजियांग द्वारा लिंग किंगक्सू को देखे जाने और अधिपति तलवार की रोशनी से उसकी आंखें घायल होने के बाद वह तलवार कास्टिंग विला में नहीं छिपी, नहीं वह पहाड़ से नीचे भागी, बल्कि दूरदराज के पहाड़ पर भाग गई। पीछे का पहाड़ घना जंगल था जो छिपने और उपचार के लिए उपयुक्त था। जब तक वह अपनी चोटों को ठीक कर लेगी, उसके पास झाओ गुजियांग से बदला लेने का मौका होगा। हालांकि उसे यह नहीं पता था कि झाओ गुजियांग पहले ही पीछे के पहाड़ पर जाने का रास्ता ढूंढ चुका था। तुमने मेरा फायदा उठाने के लिए ली युनरुई का रूप धारण कर लिया और अब तुम इतनी आसानी से चले जाना चाहते हो? इतना आसान नहीं है। झाओ गुजियांग ने हल्के से हंसते हुए पेड़ों की छाया के बीच से लिंग किंगक्सू की सुंदर सफेद पोशाक को देखा और उसके पीछे पीछे चला गया। डॉट 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 डॉट। एक ही समय पर लॉन्ग झान ने ली युनरुई को गंदगी साफ करने में मदद करने के बाद विला में लिंग किंगक्सू की आकृति की खोज की, लेकिन वह उसे नहीं ढूंढ सका। एक मिनट रुको, मेरी बड़ी बहन कहाँ है? बड़ी बहन अलविदा कहे बिना अकेले पहाड़ से नीचे नहीं उतरती, लेकिन वह कहाँ जाती? जब लॉन्ग जान विचार कर रहा था, उसने फिर से पीछे के पहाड़ की ओर देखा। क्या ऐसा हो सकता है कि वरिष्ठ बहन को चिंता थी कि विला में बहुत सारे लोग थे, उन्हें डर था कि कहीं उन्हें क्योटो से आए हत्यारे के रूप में पहचान न लिया जाए, इसलिए वह छिप गई। उसे ढूंढने के लिए पीछे पहाड़ पर जाओ। लॉन्ग जान ने राजा की तलवार को उसके नीले प्रकाश के साथ पकड़ लिया, उसकी आभा रसातल की तरह गहरी थी, और पीछे के पहाड़ की ओर भागा। जैसे ही वह पीछे के पहाड़ के प्रवेश द्वार पर पहुंचने वाला था, एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति जो ब्रोकेट का लबादा पहने हुए था और शानदार कश्मीरी टोपी पहने हुए था कोने से बाहर आया। उसके बगल में एक साधारण सा लड़का बैठा था, लेकिन लॉन्ग जान की राजा तलवार कांपने से खुद को नहीं रोक सकी, मानो उसे खतरे का आभास हो गया हो। आप कौन हैं? लॉन्ग जान ने पूछा। मेरे स्वामी शेन हाओ, वह चीज कहाँ है जिसे लाने के लिए सबसे बड़ी राजकुमारी ने आपसे कहा था? लड़का उदासीनता से बोला। शेन हाओ, लॉन्ग जान की आंखें सिकुड़ गईं। सबसे बड़ी राजकुमारी ने कहा कि कोई ना कोई उस ब्रोकेट बक्से के लिए उसके पास आएगा, लेकिन लॉन्ग जान ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि दूसरी पार्टी दुनिया के सबसे धनी व्यापारी शेन हाओ होंगे। लॉन्ग जान ने ब्रोकेट बॉक्स निकाला और उसे सौंप दिया। शेन हाओ ने इसे नहीं लिया, बल्कि अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे पकड़ लिया। इसके बजाय लड़के ने ब्रोकेट बॉक्स लिया, उसका निरीक्षण किया और शेन हाओ को सूचना दी। मास्टर, सामग्री नहीं खोली गई है। तभी शेन हाओ ने ब्रोकेट बॉक्स लिया और उसे धीरे से खोला। ब्रोकेट के बक्से के अंदर एक पत्र था और पत्र की सामग्री को पढ़कर उसकी आंखें चमक उठी और उसका चेहरा खुशी से भर गया। लॉन्ग जान ने ये सब देखा। इस शेन हाओ के बारे में अफवाह है कि वह एक देश से भी ज्यादा अमीर है। सबसे बड़ी राजकुमारी का उसके साथ किस तरह का सहयोग है? यदि वह शेन हाओ के पीछे पड़ जाए तो क्या भविष्य में उसे धन और संबंधों की कोई कमी नहीं होगी? चूंकि बड़ी बहन छिपी हुई है, इसलिए मैं उसे अभी अकेला छोड़ दूंगी और पहले शेन हाओ से परिचित हो जाऊंगी। लॉन्ग जान ने राजा की तलवार अपने पीछे रखी और झुककर प्रणाम किया। मैं लॉन्ग जान हूं, मैंने लंबे समय से श्री शेन की शानदार प्रतिष्ठा के बारे में सुना है। डॉट 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 डॉट। तलवार कास्टिंग विला, पीछे पहाड़। लिंग किंगक्सू लड़खड़ा कर जमीन पर गिर पड़ी। अंधेरे में उसका चेहरा भयावह रूप से पीला पड़ गया था, उसमें स्पष्ट रूप से ताकत की कमी थी। लेकिन ठीक इसी समय एक हथेली का बल हवा के माध्यम से टूट गया और कुछ हद तक घृणित कोण से उसकी जेड पर वार किया। लिंग किंगक्सू जमीन पर गिर पड़ी, उसके चेहरे पर भय का भाव था। उसने अपना सिर घुमाया, लेकिन क्योंकि उसकी आंखें घायल हो गई थी, वह दूसरे व्यक्ति का चेहरा स्पष्ट रूप से नहीं देख सकती थी, लेकिन हथेली की शक्ति में व्याप्त सच्ची आंग आंतरिक शक्ति ने उसे बहुत स्पष्ट कर दिया। झाओ गुजियांग, तुम नीच खलनायक हो, अगर तुम में क्षमता है तो छिपकर हमला मत करो। झाओ गुजियांग ने लिंग किंगक्सू को अपनी तलवार को बेतहाशा लहराते हुए देखा। वह इस बात से पूरी तरह अनजान थी कि उसके शरीर पर कपड़े शाखाओं से फटे हुए थे, जिससे अंदर की बर्फ सी सफेद त्वचा दिखाई दे रही थी। इस महिला ने उसे कई बार नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है और झाओ गुजियांग हमेशा नफरत का बदला लेता है, इसलिए उसे बीमार होने पर उसकी जान ले लेनी चाहिए। हालांकि झाओ गुजियांग एक स्थिर व्यक्ति है और वह अपना नाम इस्तेमाल नहीं कर सकता। ये देखकर कि वह झाओ गुजियांग को बिल्कुल भी नहीं मार सकती, लिंग किंगक्सू और भी अधिक चिंतित हो गई। झाओ गुजियांग, मेरे लिए बाहर आओ। लेकिन अगले ही पल उसे लड़ाई की आवाज सुनाई दी। क्या हो रहा है? क्या उस कमीने को किसी ने रोक रखा है? वह केवल धुंधला धुंधला सा एक आकृति को दूर जाते हुए देख पा रही थी। जब वह सोच रही थी, उसने झाओ गुजियांग की हताश दहाड़ सुनी। लॉन्ग जान, मैं इसे आज तुम्हें दे दूंगा। क्योटो लौटने के बाद ये युवा स्वामी तुम्हें कभी जाने नहीं देगा। इसके बाद लिंग किंगक्सू ने घास और पेड़ों पर रौंदने की आवाज सुनी, जल्दी से पीछे हट गया। ऐसा लग रहा था कि झाओ गुजियांग पहले ही भाग चुका था। लिंग किंगक्सू ने धीरे से राहत की सांस ली। जूनियर भाई यहाँ है, मैं सुरक्षित हूँ। वह अब अपनी चोटों को छिपा नहीं सकी और एक पहाड़ी चट्टान पर लेट गई, जो चांदनी रात में बहुत सुंदर और हिलती डुलती दिख रही थी।
पदचिह्न निकट आ गए। छोटे भाई, मेरी आंखें घायल हो गई हैं, जल्दी से मेरी मदद करो।
लिंग किंगक्स्यू ने देखा तो उसे केवल एक लंबा व्यक्ति दिखाई दिया, जो लॉन्ग जान के आकार जैसा था। यह आकृति उसके पास आए और उसे उठने में मदद की, और सच्ची यांग शक्ति की एक धारा उसके शरीर में प्रवाहित हुई। वह अधिकाधिक सहज महसूस करने लगी। सच्चा यांग हृदय सूत्र आक्रामक और रक्षात्मक दोनों है, और सच्ची यांग शक्ति में काफी उपचार क्षमताएं हैं।
लेकिन अगले ही पल, छोटे भाई, आप क्या कर रहे हैं?
लिंग किंगक्सू ने अचानक महसूस किया कि लॉन्ग जान उसकी स्कर्ट उतार रहा है। लेकिन वह घायल और थकी हुई थी, और यद्यपि वह उसे रोकना चाहती थी, वह ऐसा नहीं कर सकती थी। वह केवल शर्मीली, क्रोधित और चुलबुली हो सकती थी, मच्छर की तरह पतली। नहीं, ये लॉन्ग जान हमेशा उसका फायदा उठाना चाहता था और वह हमेशा उससे बचती रही थी। लेकिन इस बार उसके पास विरोध करने की ताकत ही नहीं थी। रात के आकाश के नीचे छोटे से जंगल में वस्त्रों के फटने की आवाज गूंज उठी।
मत करो, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ।
लिंग किंगक्सू अधिक से अधिक नाजुक होता गया। अतीत का हिमखंड अब पिघल चुका था और उसका चेहरा और भी अधिक लज्जित हो गया। लेकिन जितना अधिक वह संघर्ष करती, उतनी ही तेजी से उसके कपड़े उतार दिए जाते, जब तक कि उसकी गोल पतली जेड टांगें चांदनी के सामने नहीं आ गईं। अपनी बची हुई चेतना के कारण उसने मना करने का प्रयास किया, लेकिन उस आदमी ने उसकी जेड जैसी टांगों को खींचा और उसे अपने कंधों पर उठा लिया।
रुको, लॉन्ग जान, क्या तुम पागल हो?
वह कमजोरी से बुदबुदाई। उसके दिल में लॉन्ग जान के लिए नफरत अपने चरम पर पहुंच गई थी। लेकिन वह नहीं जानती थी कि उसके सामने वाला व्यक्ति लॉन्ग जान नहीं, बल्कि झाओ बुजियांग था, जिसके चेहरे पर उत्साह साफ झलक रहा था। झाओ बुजियांग ने अपने सामने मौजूद अद्भुत सौंदर्य को देखा, जो एक खिलती हुई फूल की कली की तरह उसके तोड़ने का इंतजार कर रही थी। उसके पास कुछ भी सोचने का समय नहीं था, वह केवल अपने शरीर की आज्ञा का पालन करना जानता था। लिंग किंगक्सू के सबसे कमजोर बिंदु पर निशाना साधते हुए अवसर का फायदा उठाना चाहता था। आधे घंटे बाद झाओ बुजियांग ने लिंग किंगक्सू के कपड़ों को धीरे से ठीक किया, उसकी योग्यता और प्रसिद्धि को गहराई से छिपाते हुए चांदनी में गायब हो गया। लिंग किंगक्सू की अभिव्यक्ति धीरे धीरे अनुपस्थित चित से सामान्य में बदल गई। वह आशा कर रही थी कि जो कुछ हुआ था वह महज एक सपना था, लेकिन उसके शरीर में दर्द उसे बता रहा था कि सब कुछ वास्तविक था। वह अपनी मासूमियत खो चुकी थी। लिंग किंगक्सू का चेहरा शिकायत से भरा था। उसने अपनी चोटों को ठीक करने के लिए अपनी ऊर्जा प्रसारित की और उसकी दृष्टि धीरे धीरे ठीक हो गई।
लॉन्ग जान, तुम मरने के लायक हो।
लिंग किंगक्सू ने उस क्रूर छोटे भाई की तलाश में इधर उधर देखा। लॉन्ग जान और शेन हाओ के बीच अच्छी बातचीत हुई। बातचीत खत्म होने के बाद उसने देखा कि लिंग किंगक्सू गुस्से में वापस आ रही है। शेन हाओ के अच्छे पक्ष में आने के बाद लॉन्ग जान बहुत अच्छे मूड में था। उसने अपनी बड़ी बहन की आकृति को देखा, जो विजयी भाव लिए हुए थी।
बड़ी बहन, क्या आप ठीक हैं?
लेकिन उसके हाव भाव ने लिंग किंगक्सू को और भी क्रोधित कर दिया।
तुमने जबरदस्ती मेरी मासूमियत छीन ली, क्या आपको बहुत गर्व है?
घिनौना आदमी। लॉन्ग जान ने लिंग किंगक्सू के जवाब का इंतजार नहीं किया, केवल एक थप्पड़। लिंग किंगक्सू ने लॉन्ग जान के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारा। अगर तुमने आज की घटना के बारे में बोलने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। लॉन्ग जान ने अपना गाल ढक लिया। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। आज की घटनाएं?
कौन सी घटनाएं?
क्या ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसने सारी स्वर्गीय तलवार पर कब्जा नहीं किया था? मुझे तुरंत दाओ संप्रदाय में लौटना होगा। लिंग किंगक्सू मुश्किल से खड़ा हुआ और लॉन्ग जान को घूरते हुए बोला, जब मैं वापस आऊंगा तो स्वर्गीय तलवार के दो भागों में विभाजित होने की बात मास्टर को बताऊंगा। लॉन्ग जान ने प्रतिक्रिया व्यक्त की। क्या ये वास्तव में इसी वजह से था? क्या उसे थप्पड़ मारना पड़ा? ये औरत सचमुच बहुत दुष्ट है, मुझे ये पसंद है। लॉन्ग जान ने अपनी मुट्ठी बांधी और कहा, अच्छा, जब आप वापस आएं तो कृपया मास्टर से कहें कि वे मेरी मदद करने के लिए और अधिक वरिष्ठ बहनों को भेजें। मुझे सबसे बड़ी वरिष्ठ बहन, दूसरी वरिष्ठ बहन और तीसरी वरिष्ठ बहन की भी बहुत याद आती है। ठीक है,
ठीक है।
लिंग किंगक्सू की आंखों में घृणा की झलक दिखाई दी। यह अच्छा ही है कि मैं अब तुम्हें नहीं देखना चाहता।
लॉन्ग जान
ने तो इसकी व्याख्या भी नहीं की थी। लिंग किंगक्सू पहले ही बह चुकी थी, उसका पूरा शरीर बर्फ की तरह ठंडा था, एक शाश्वत हिमखंड की तरह। स्वॉर्ड कास्टिंग विला के नीचे सेना तैयारी कर रही थी। ली यूनरुई को उसका भाई ली यूनई गाड़ी की ओर खींच रहा था। ली यूनरुई हर कुछ कदम पर अपना सिर पीछे घुमाती, स्वॉर्ड कास्टिंग विला को देखती, चिंतित।
भाई, झाओ बुजियांग कहाँ है? क्या हमें उसका इंतजार करना चाहिए?
त्वरित वितरण, पिता सम्राट का आदेश जिसमें हमें शाही आदेश प्राप्त करने और तुरंत राजधानी लौटने का निर्देश दिया गया है। ली युनई ने भी स्वॉर्ड कास्टिंग विला की ओर देखा। मूल रूप से उन्हें झाओ गुजियांग का इंतजार करना चाहिए था, लेकिन पिता सम्राट के आदेश का उल्लंघन नहीं किया जा सका। संभवतः महल में कुछ महत्वपूर्ण घटना घटी थी। चलो झाओ गुजियांग का थोड़ा और इंतजार करते हैं, शायद वह जल्द ही वापस आ जाएगा। ली युनरुई ने गाड़ी में चढ़ने से इनकार कर दिया। उसकी आवाज में विनती थी, पहले कार में बैठो। ली युनई ने उसे दिलासा दिया, क्या तुमने उसके लिए पहले ही कोई पत्र नहीं छोड़ा है? जब वह उसे देखेगा तो वह स्वाभाविक रूप से आएगा। इसके अलावा उसके हाथ में स्वर्गीय तलवार का आधा हिस्सा है, आम लोग उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकते। उसकी सावधानी के कारण कोई खतरा नहीं है। ली युनरुई ने अपने लाल होठों को दबाया और गाड़ी में बैठ गई। वह अभी भी चिंतित थी। ली युनई ने घोड़े को थपथपाया और उसे चलने का संकेत दिया। वह भी अपने घोड़े पर कूद पड़ा और अपनी बहन की गाड़ी की रखवाली करने लगा। उसे अस्पष्ट रूप से महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन वह ये नहीं बता सका कि वह क्या गड़बड़ है। एक कप चाय के बाद झाओ गुजियांग पीछे के पहाड़ से अतिथि कक्ष में लौट आया। ये बहुत ताज़ा है। लियु रुयान काफी जंगली है, लिंग किंगसु काफी शुद्ध है। लॉन्ग झान, ओ लॉन्ग झान, आप किस तरह का रफेज खा रहे हैं? झाओ गुजियांग ने अपनी बेल्ट पर खून के धब्बे को देखा और मुस्कुराया। हालांकि लिंग किंगसु का पहला खून आखिरकार मेरा है, लेकिन मुझे अभी जिम्मेदार होने की जरूरत नहीं है। उसने चारों ओर देखा। हम वह शाही भाई बहन कहाँ चले गए? उन्होंने ली युनरुई और ली युनई को नहीं देखा, लेकिन झाओ गुजियांग ने ली युनरुई द्वारा छोड़ा गया एक पत्र देखा। पत्र पढ़ने के बाद झाओ गुजियांग गहरी सोच में पड़ गया। बादशाह ने उन्हें तुरंत वापस लौटने का आदेश दिया है और मुझे साथ नहीं लाए। झाओ गुजियांग को अजीब सी गंध महसूस हुई। यात्रा के अनुसार यह शाही फरमान कब जारी किया गया था? ये तो बस यूं हुआ कि तलवार कास्टिंग विला का मामला खत्म हो गया और शाही आदेश प्राप्त हो गया। इसका मतलब यह है कि क्याली युनई ने शाही आदेश जारी होने के कुछ समय पहले ही यात्रा शुरू की थी। बहुत संयोग है। ऐसा नहीं लगता कि यह कोई आपातकालीन स्थिति है, बल्कि यह पूर्व नियोजित योजना है। इसका मतलब यह है कि यहाँ बहुत खतरा होगा, इसलिए राजकुमार और राजकुमारी की रक्षा करें और पहले निकल जाएं। झाओ गुजियांग ने यह सोचते हुए अपनी तलवार जैसी भौहें ऊपर उठाई। ऐसा लग रहा था कि यह जगह लंबे समय तक रहने के लिए उपयुक्त नहीं है, शायद कुछ बड़ा होने वाला था। उसने जल्दी से पुनः कपड़े पहने, स्वर्गीय तलवार को एक छतरी के आकार में लपेटा और यह सुनिश्चित किया कि उसके भेष में कोई दोष न हो। वह पहाड़ से नीचे उतरा, भीड़ में शामिल हो गया और राजधानी की दिशा की ओर तेजी से चल पड़ा। पहाड़ों और जंगलों में वनस्पति बहुत हरी भरी नहीं थी। झाओ गुजियांग पूरे रास्ते सतर्क था, घास की हर सरसराहट पर ध्यान दे रहा था। वह भी अभी एक पहाड़ पार कर रहा था और एक नदी के किनारे विश्राम करने की तैयारी कर रहा था, तभी उसके हाथ में पकड़ी हुई दिव्य तलवार चुपचाप कंपन करने लगी। उसी समय उसे आगे घने जंगल में गिरे हुए पत्तों पर कई लोगों के पैर रखने की आवाज भी सुनाई दे रही थी। वह जाने के लिए मुड़ा, लेकिन जैसे ही वह मुड़ा उसके कदम अचानक रुक गए। उसके पीछे और बगल में भी लोग आ रहे थे जो स्पष्टतः उसे घेरे हुए थे। झाओ गुजियांग ने स्वर्गीय तलवार को पकड़ लिया और वह तुरंत बर्फ जैसा ठंडा हो गया। आप बहुत सतर्क हैं, आधिकारिक रास्ता नहीं अपना रहे हैं। झाओ गुजियांग के सामने घने जंगल से गहरे नीले रंग के टाइट फिटिंग सूट पहने नकाबपोश मजबूत पुरुषों का एक समूह बाहर आया। वहां लगभग 10 लोग थे। नेता अपनी पीठ पर एक लंबी तलवार लटकाए रहता था, जबकि अन्य लोग लंबे चाकू या जंजीरें और हुक निकाल लेते थे। लेकिन हम भी मूर्ख नहीं हैं, इसलिए महाराज आज आपके पास भागने का कोई रास्ता नहीं है। झाओ गुजियांग ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके विचार मत रहे थे। तो ऐसा नहीं था कि स्वॉर्ड कास्टिंग विला में कुछ बड़ी घटना घटी थी, लेकिन उसके साथ कुछ बड़ा घटित हो रहा था। झाओ गुजियांग, राजकुमार और राजकुमारी पर कोई प्रभाव न पड़े, इसलिए उन्हें तुरंत राजधानी लौटने को कहा गया। अच्छा अच्छा अच्छा, झाओ गुजियांग ने तलवार की मूठ को कसकर पकड़ लिया और अपने दाहिने हाथ के एक हिस्से और तलवार की मूठ को कपड़े से लपेट लिया ताकि अधिक खून न बहे और वह बिना पलक झपकाए हत्या करते समय तलवार को पकड़ने में असमर्थ हो जाए। करो, उसका सिर पीछे लाओ, नकाबपोश आदमी ने ठंडी सांस ली। नकाबपोश लोगों ने घेर लिया और हमला कर दिया। भले ही झाओ गुजियांग की तलवार की चालें सामान्य थी, लेकिन स्वर्गीय तलवार की शक्ति कई अंतरालों को सुचारू करने के लिए पर्याप्त थी, जिससे उसे अपने स्तर से परे लड़ने की एक मजबूत क्षमता मिली। रक्तलाल तलवार की ऊर्जा सीधे घास काटने की तरह बही और नकाबपोश लोगों के एक समूह को तुरंत पीछे धकेल दिया। मैं तुमसे लड़ने जा रहा हूँ, झाओ गुजियांग ऐसा लग रहा था जैसे वह खूनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार था। भाइयों, उसके पास कुछ कौशल हैं, गंभीर बनो, नकाबपोश नेता ने मुस्कुराकर हाथ हिलाया। लेकिन जब अन्य लोग लड़ने की मुद्रा में थे तो उन्होंने झाओ गुजियांग को मुड़कर भागते हुए देखा।
पीछा करना, सामने झाओ गुजियांग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था। 10 हत्यारे, उनमें से प्रत्येक की मार्शल आर्ट उससे कम नहीं थी। लड़ो क्या, केवल मूर्ख ही मृत्यु की चाहत रखेगा। केवल झाओ गुजियांग ने अनजाने में पीछे मुड़कर देखा और अपने दिल में कोस रहा था। जिस गति से लोगों का ये समूह भाग रहा था वह उसकी गति से कम नहीं थी, और भागते समय वे उसे रास्ता भटकने से रोकने के लिए दोनों ओर अपनी सीमा बढ़ा रहे थे। यह शाही दरबार के कब्जा करने वाले दल जैसा क्यों लग रहा है, झाओ गुजियांग अपने दिल में चिल्लाया। अचानक उसने देखा कि एक और आकृति उसके सामने प्रकट हुई। जब वह करीब गया तो वह स्पष्ट रूप से देख सकता था कि जो व्यक्ति आया था उसने बर्फ सफेद हल्के धुंधले कपड़े पहने थे, एक पेंटिंग की तरह नाजुक विशेषताएं थी। ये लिंग किंगक्सू था। लिंग क्विंगजू ने झाओ गुजियांग पर भी ध्यान दिया। लिंग किंगक्सू की चोटें ठीक होने के बाद उसकी दृष्टि ठीक हो गई थी, इसलिए उसने झाओ गुजियांग को स्पष्ट रूप से देखा। बेशर्म साथी, अगर तुमने मुझे पहले घायल नहीं किया होता तो मेरे साथ बलात्कार नहीं होता। लिंग किंगक्सू गुस्से से चिल्लाए और हमला करने के लिए अपनी तलवार निकाली। आगे भेड़िए और पीछे बाघ देखकर झाओ गुजियांग के मन में प्रेरणा की एक चमक दौड़ गई। उसकी आंखें घूम गईं और वे भी लाल हो गईं। पत्नी, मुझे बचा लो। पति जानता है कि वह गलत था और वह तुम्हें फिर कभी नहीं छोड़ेगा। लिंग किंगक्सू दंग रह गया। झाओ गुजियांग क्या बकवास कर रहा था, लेकिन पीछे से पीछा करने वाले दंग रह गए। तो झाओ गुजियांग के साथी थे। उसे भी नीचे ले जाओ, नकाबपोश नेता ने अपना हाथ हिलाया। लिंग किंगक्सू पहले से ही बुरे मूड में थी क्योंकि उसने अभी अभी अपना कौमार्य खोया था। दाओ संप्रदाय में वापस जाते समय कौन जानता था कि उसका सामना कुत्ते चोर झाओ गुजियांग से होगा और वह इन लोगों के समूह से घिर जाएगी। तुम मौत को दावत दे रहे हो, लिंग किंगक्सू ने अपनी तलवार से जवाब दिया, मानो वह अपना गुस्सा निकाल रही हो। ये लिखते हुए मुझे आशा है कि पाठकों को हमारा डोमेन नाम ताइवान नॉवेल नेटवर्क tuon.com याद होगा। लेकिन इससे अप्रत्यक्ष रूप से झाओ गुजियांग को मदद मिली। मेरी पत्नी ठीक समय पर आ गई है। झाओ गुजियांग, तुम बेशर्म हो। मेरी पत्नी सही कह रही है, ये बेशर्म लोगों का समूह है जो मेरा पीछा कर रहा है। लिंग किंगक्सू इतनी गुस्से में थी कि उसकी छाती धड़क उठी और उसके कपड़ों का कॉलर फटने वाला था। लेकिन हथियारों ने इसे गंभीरता से लिया और दो समूहों में विभाजित हो गए। 5 ने झाओ गुजियांग को और 5 ने लिंग किंगक्सू को घेर लिया। उन्होंने बिना कुछ कहे लड़ना शुरू कर दिया। लिंग किंगक्सू की आंखें चमक उठी। अब वह केवल इन लोगों को पीछे धकेल सकती थी। उसने अपनी तलवार घुमाई और अपने पीछे आ रहे लोगों पर तान दी। झाओ गुजियांग ने भी अपनी तलवार घुमाई और रक्त लाल तलवार की ऊर्जा एक तेज झरने की तरह थी जो लिंग किंगक्सू की तलवार की ऊर्जा के साथ पीछा करने वालों की ओर फट रही थी। कुछ समय के लिए पहाड़ों के पेड़ पौधे टूटकर बिखर गए और मलबा चारों ओर फैल गया, जिससे पीछा करने वालों का रास्ता अवरुद्ध हो गया। धन्यवाद मेरी अर्धांगिनी, झाओ गुजियांग ने अपनी भौहें उठाई और मुस्कुराया। लिंग किंगक्सू ने अपने दांत पीस लिए और दोनों एक साथ भाग गए। जब तक धुआं और तलवार की ऊर्जा समाप्त हुई तब तक वे दोनों बहुत पहले ही गायब हो चुके थे। हथियारों ने पहाड़ों की ओर देखा और गुस्से से कोसने लगे। .. एक अदृश्य पहाड़ी जलधारा के किनारे बजरी फैली हुई थी और अनगिनत पौधे उग रहे थे। वनस्पति के बीच में एक गुफा थी। झाओ गुजियांग, जो यहाँ छिपा हुआ था, ने अपने द्वारा लाए गए पानी का एक घूंट लिया और राहत की सांस ली, लेकिन उसका दाहिना हाथ अभी भी स्वर्गीय तलवार को कसकर पकड़े हुए था, उसे कभी नहीं छोड़ रहा था। कारण कोई और नहीं बल्कि लिंग किंगक्सू था, जो उसके साथ भाग गई थी, अब उसके सामने बैठी थी, उसे गुस्से से घूर रही थी, मानो वह उसे जिंदा खा जाना चाहती हो। कुछ चाहते हैं, झाओ गुजियांग ने पानी की थैली उसे थमा दी, ऐसा अभिनय करते हुए जैसे वह उससे परिचित हो। लेकिन झाओ गुजियांग द्वारा पानी की थैली सौंपने के बीच के अंतराल में लिंग किंगक्सू ने अपनी तलवार झाओ गुजियांग पर तान दी। तलवार की नोक झाओ गुजियांग की आंखों से केवल 1 फुट की दूरी पर थी। झाओ गुजियांग तैयार था और रक्तलाल और अजीब स्वर्गीय तलवार पहले से ही लिंग किंगक्सू की कमर पर निशाना साध रही थी। वह मुस्कुराया, प्यार की एक रात 100 रातों की दयालुता के बराबर है, क्या ऐसा होना जरूरी है? क्या हमें लड़ना होगा? तुम्हारे साथ एक रात के लिए कौन है, तुम बेशर्म चीज हो। लिंग किंगक्सू ने ठंडी सांस ली। वह सिर्फ ली युनरुई होने का नाटक कर रही थी और झाओ गुजियांग नामक इस बेशर्म व्यक्ति ने उसे कई बार चूमा था। क्या उसे जोड़ा माना जाता था? लेकिन वह नहीं जानती थी कि झाओ गुजियांग पीछे के पहाड़ पर हुए युद्ध की बात कर रहा था। ये देखकर कि लिंग किंगक्सू ने अपनी तलवार नीचे रख दी, झाओ गुजियांग ने भी उसे नीचे रख दिया। उसकी आंखों ने बिना किसी छुप छुप के लिंग किंगक्सू के शरीर को देखा और उसने जानबूझकर पूछा, तुम यहाँ क्यों हो? क्या तुम लॉन्ग झान के साथ नहीं गई थी? क्या ऐसा हो सकता है कि लॉन्ग झान अब तुम्हें नहीं चाहता? लिंग किंगक्सू को लॉन्ग झान के बारे में सोचकर थोड़ी घृणा महसूस हुई। वह मुझे क्यों नहीं चाहेगा?
क्या वह योग्य है? ओह, क्या तुम्हारा ब्रेकअप हो गया? झाओ गुजियांग की मुस्कान और भी मजबूत हो गई। ये तुम्हारा कोई काम नहीं है, लिंग किंगक्सू ने जवाब दिया। उसका गुस्सा बढ़ रहा था। झाओ गुजियांग ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। वह मूल रूप से चाहता था कि लॉन्ग झान ही कार्यभार संभाले, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि यह बड़ी बहन और छोटा भाई अलग अलग रास्ते पर चले जाएंगे। तब शायद उसे कुछ अतिरिक्त आश्चर्य मिल सके। हम दोनों पृथ्वी के छोर से गिर गए हैं। चूंकि आप और लॉन्ग झान टूट गए हैं, तो आप दाओ संप्रदाय को मेरा समर्थन क्यों नहीं करने देते? ईमानदारी से कहूं तो मैं वास्तव में एक अच्छा बीज हूं। झाओ गुजियांग ने आगे की जांच की। हे, अच्छा बीज? लिंग किंगक्सू ने इसे तिरस्कार के साथ खारिज कर दिया। अभी जो लोग तुम्हारा पीछा कर रहे थे, उनके द्वारा इस्तेमाल किए गए कौशल जियांगू से नहीं, बल्कि शाही दरबार से हैं। तुम शाही दरबार में भी अपनी रक्षा नहीं कर सकते, और फिर भी तुम एक अच्छे इंसान हो। लिंग किंगक्सू द्वारा उजागर किए जाने पर झाओ गुजियांग शर्मिंदा नहीं हुआ और लापरवाही से मुस्कुराया। लिंग किंगक्सू ये देख सकता था, और वह भी। इसके अलावा उसने पिछली अराजक लड़ाई में एक टोकन भी उठाया, जो कि सम्राट द्वारा विशेष रूप से इस्तेमाल की जाने वाली ब्लैक कैवेलरी फबिडन आर्मी थी। कुत्ते सम्राट ने मुझे मारने के लिए ब्लैक कैवेलरी फबिडन आर्मी भेजी, क्या वह मुझे विद्रोह करने के लिए मजबूर करने की कोशिश कर रहा है? अगर वह अधर्मी है तो मुझे बेवफा होने का दोष मत दो। जब मेरे पिता सेना को वापस अदालत में लाएंगे तो मैं उन्हें ड्रैगन कुर्सी से लुढ़का दूंगा। लिंग किंगक्सू की आंखें कांप उठी और उसने अविश्वास से झाओ गुजियांग की ओर देखा। उत्तर का राजा मरा नहीं है, वह कैसे संभव है? लेकिन झाओ गुजियांग के आंतरिक विचारों को गढ़ा नहीं जा सकता, इसमें कोई छिपी हुई कहानी जरूर होगी। कोई आश्चर्य नहीं कि झाओ गुजियांग इतना घमंडी है, ये पता चला है कि उत्तर का राजा वास्तव में मरा नहीं है। झाओ गुजियांग विद्रोह करना चाहती है, लेकिन क्या उसका दाओ संप्रदाय भी ऐसा ही नहीं कर रहा है? दाओ संप्रदाय दुनिया के लोगों को दुख से बचाना चाहता है। झाओ गुजियांग विद्रोह करना चाहता है। वह झाओ गुजियांग और उसके पीछे 1,000,000 सैनिकों वाली उत्तरी सीमा सेना का इस्तेमाल क्यों नहीं करती? यदि वह झाओ गुजियांग को जीत सकती है तो दाओ संप्रदाय का महान उद्देश्य पूरा हो सकता है। इसके अतिरिक्त झाओ गुजियांग को लॉन्ग झान की जगह लेने देने से वह घृणित चीज जो वरिष्ठ बहनों को धमकाती है, उसके दिल में गुस्सा भी कम हो जाएगा। ठीक है, लिंग क्विंगशू अचानक बोला। झाओ गुजियांग हैरान था। ठीक है क्या? लिंग किंगक्सू ने उसे घूर कर देखा। वास्तव में झाओ गुजियांग के लिए उसकी भावनाएं बहुत खास थीं। उसे झाओ गुजियांग के आंतरिक विचारों को सुनने में सक्षम होने के लिए किसने कहा? मैंने कहा, मैं दाओ संप्रदाय को आपका समर्थन करने दे सकता हूं, लेकिन यह मामला बहुत महत्वपूर्ण है। मैं पहले आपके साथ उत्तरी राजा के महल में वापस जाना चाहता हूं और फिर इस पर चर्चा करना चाहता हूं। झाओ गुजियांग हैरान था। अभी तो वह मेरा मजाक उड़ा रही थी, लेकिन अब उसने इतनी जल्दी समझौता कर लिया। क्या कोई जाल हो सकता है? इसके अलावा वह सही है, मुझे सम्राट ने बस पीछा करके मार डाला था। मेरे पास कोई शक्ति या प्रभाव नहीं है। वह क्या चाहती है? अरे, ये औरत मेरे शरीर के पीछे तो नहीं है, है ना? लिंग किंगक्सू के चेहरे पर गुस्सा था। क्या तुम परेशान हो? तुम जा रहे हो या नहीं? यह झाओ गुजियांग अभी भी हिचकिचा रहा था। लिंग किंगक्सू को और भी अधिक महसूस हुआ कि एक आदमी को पाना जितना कठिन है, वह उतना ही अधिक मूल्यवान है। मैं एक महिला हूं और जब आप नीचे हैं तो मैं आपका पीछा करने की हिम्मत करती हूं। क्या आप एक बड़े आदमी हैं फिर भी डरते हैं? ये सही है। झाओ गुजियांग ने लिंग किंगक्सू पर नजर डाली, जो अचानक उत्साहित हो गया था। तो चलो पहले राजधानी वापस चलते हैं। लिंग किंगक्सू ने अचानक याद दिलाया, शाही दरबार आपको मारना चाहता है, क्या आप पहले कुछ तैयारी करना चाहते हैं? कोई जरूरत नहीं है। झाओ गुजियांग की अभिव्यक्ति उदासीन थी। सम्राट ने सीधे तौर पर उसे मारने का आदेश जारी नहीं किया, बल्कि उसकी हत्या करने के लिए किसी को भेजने से पहले उसे राजधानी से दूर स्थानांतरित कर दिया, केवल उसकी दो पहचानों के कारण। उत्तर के राजा का पुत्र, भावी शाही दामाद लियुनरुई के साथ शादी की तारीख भी नजदीक आ रही है, और शाही दामाद की पहचान उसका सबसे अच्छा ताबीज होगी। मैं खुलेआम और ईमानदारी से वापस जाऊंगा। झाओ गुजियांग ने राजधानी की दिशा में देखा। हवा और बादल उमड़ रहे थे। झाओ गुजियांग और लिंग किंगक्सू पहाड़ों और जंगलों को पार करते हुए राजधानी की ओर बढ़े। अचानक उन्होंने एक आदमी को चिल्लाते हुए सुना। हीरो, कृपया, मैं वास्तव में शेन हाओ हूँ। यदि आप मुझे जाने देंगे तो मैं वापस आने पर आपको उपहार के रूप में 1,000 टेल सोना भेजूंगा। पता चला कि डाकुओं का एक समूह एक आदमी को घेर रहा था। एक नकाबपोश डाकू ने व्यंग्य करते हुए कदम दर कदम आगे बढ़ते हुए कहा। शेन हाओ, दुनिया का नंबर एक व्यापारी, उसके आसपास गार्ड कैसे नहीं हो सकते? क्या आपको लगता है कि मैं मूर्ख हूँ? यदि आप शेन हाओ हैं तो मैं सम्राट हूँ। समझदार बनो, अपने कपड़े और पैंट उतारो, हम तुम्हारी तलाशी लेना चाहते हैं, तुम में और भी खजाने छिपे होंगे। झाओ गुजियांग ने स्पष्ट रूप से सुना और उसकी तलवार जैसी भौहें सिकुड़ गईं। उन्होंने मूल कहानी को याद किया। स्वर्गीय तलवार की साजिश के बाद शेन हाओ को सबसे बड़ी राजकुमारी ली झाओ हुआ के लिए कुछ महत्वपूर्ण करने के लिए अकेले जाना चाहिए था, क्योंकि इसमें अत्यधिक गोपनीयता की आवश्यकता थी, इसलिए उन्होंने अपने साथ कोई अनुयायी नहीं लाया। बाद में वह सड़क पर डाकुओं द्वारा पकड़ा गया और सबसे बड़ी राजकुमारी ने गुस्से में अपनी छिपी शक्ति का उपयोग करके शेन हाओ को लूटने वाले डाकुओं के अड्डे को उखाड़ फेंका। समयरेखा के अनुसार शेन हाओ होने का दावा करने वाला यह व्यक्ति संभवतः असली है। मेरी एक मदद करो, झाओ गुजियांग ने लिंग किंगजू के कपड़ों को खींचा। कार्रवाई करें और इस व्यक्ति को बचाएं। मैं आपकी बात क्यों सुनूं? लिंग किंगजू ने ठंडे चेहरे से कहा, यदि आप उसे बचाना चाहते हैं तो उसे स्वयं बचाए। झाओ गुजियांग का स्वर दृढ़ था, ठीक है तो चलो अलग हो जाते हैं। वह पहले से ही लिंग किंगजू के सहयोग करने की अचानक सहमति से सतर्क था। अब दूसरे पक्ष की ईमानदारी का परीक्षण करने का अच्छा समय है। ये सुनकर लिंग किंगजू की भावनाएं थोड़ी बढ़ गईं। रुको, बस एक बार। लिंग किंगजू ने दांत पीसते हुए जवाब दिया, घास और पेड़ों पर कदम रखते हुए डाकुओं और अन्य लोगों की ओर बढ़ी। झाओ गुजियांग लिंग किंगजू के पीछे पीछे चल रहा था, हर समय आसपास की हरकतों पर ध्यान दे रहा था। अगर स्थिति झूठी होती तो वह निश्चित रूप से पीछे मुड़कर भाग जाता। लिंग किंगजू ने अपनी ताकत वापस पा ली, उसके लिए पहाड़ के चोरों के समूह से निपटना आसान हो गया। उसने कुछ ही झटकों में डाकुओं के समूह को खत्म कर दिया। शेन हाओ ने पहले ही अपनी पैंट उतार दी थी। जब उसे पता चला कि वह बच गया है तो एक आपदा से बचने की राहत ने उसे राहत की सांस दी। झाओ गुजियांग ने समय पर कार्रवाई की और शेन हाओ के सामने उपस्थित हुआ। शेन हाओ ने देखा कि दोनों एक ही समूह में थे। उसने अपनी मुठियां बांध ली और कहा, आप दोनों का आपकी सहायता के लिए धन्यवाद। झाओ गुजियांग ने लापरवाही से अपना हाथ हिलाया। वह पास आया और बोला, मैं झाओ गुजियांग सबसे बड़ी राजकुमारी का एक आदमी हूँ। शेन हाओ की अभिव्यक्ति जम गई। झाओ गुजियांग झेनबेई के राजा का पुत्र, सबसे बड़ी राजकुमारी का कौन सा व्यक्ति? शेन हाओ ने बेवकूफ बनने का नाटक किया और कहा, मुझे नहीं पता कि झाओ शिजी किस बारे में बात कर रहा है। ये देखकर कि शेन हाओ उससे सावधान था, झाओ गुजियांग मुस्कुराया, आपको युद्ध के घोड़े और आपूर्ति खरीदने का आदेश दिया गया था, है ना? शेन हाओ को झाओ गुजियांग द्वारा सीधे उजागर किया गया था। उसने अविश्वास में झाओ गुजियांग को देखा। उसे अभी अभी ड्रैगन बॉल ब्रोकेड बॉक्स में कार्य मिला था और वह उसे करने ही वाला था। सामने वाले आदमी को कैसे पता चला? यदि वह सबसे बड़ी राजकुमारी का विश्वास पात्र नहीं था तो ये जानने का कोई तरीका नहीं था। शेन हाओ चौंक गया, क्या ये हो सकता है कि आप और सबसे बड़ी राजकुमारी? झाओ गुजियांग ने अपना हाथ उठाया, यह आपके दिल में जानने के लिए पर्याप्त है, इससे अधिक कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ हाँ, शेन हाओ ने जानबूझकर सिर हिलाया। बस उसकी जिज्ञासा बढ़ती गई कि सबसे बड़ी राजकुमारी ने दो लोगों को क्यों भेजा? क्या लॉन्ग झान, जिसने पहले उससे संपर्क किया था, विश्वास पात्र नहीं था? या फिर उसके सामने झेनबेई के राजा का बेटा ही असली विश्वास पात्र है? शेन हाओ की हिचकिचाहट को देखकर झाओ गुजियांग ने पहले ही कहा, जाओ और वही करो जो सबसे बड़ी राजकुमारी ने आदेश दिया है, मुझे बस गुप्त रूप से आपकी रक्षा करने का आदेश दिया गया है। समझ गया। शेन हाओ ने अपने जूतों से एक विशेष चांदी का नोट निकाला। झाओ शिजी, ये चांदी का नोट ले लो, अगर भविष्य में तुम्हें किसी चीज की जरूरत होगी तो तुम मुझे खोजने के लिए मेरे शेन हाओ के किसी भी बैंक में आ सकते हो, मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ। हम सब एक ही पक्ष में हैं, विनम्र होने की कोई आवश्यकता नहीं है। झाओ गुजियांग ने चांदी के नोट को जल्दी से अपनी आस्तीन में ठूंसते हुए कहा, मैं अगली यात्रा के लिए आपकी रक्षा करूंगा, जब हम अलग होंगे तो आप अधिक सुरक्षित रहेंगे। शेन हाओ ने अपने हाथों को जोड़कर धन्यवाद व्यक्त किया। लिंग किंगजू ने झाओ गुजियांग को रिश्वत लेते हुए देखा और उसके मन में उसके प्रति घृणा उत्पन्न हो गई। वह थी जिसने उस व्यक्ति को बचाया, लेकिन झाओ गुजियांग ने लाभ उठाया। अल्पविराम, क्योटो, शाही महल, ब्लैक कैवेलरी गार्ड्स के कमांडर ली जायुआन को झाओ गुजियांग पर घात लगाकर हमला करने की स्थिति की रिपोर्ट दे रहे थे। ली जायुआन जितना अधिक सुनता उसका चेहरा उतना ही उदास और ठंडा होता जाता। ब्लैक कैवेलरी गार्ड्स को भेजा गया जो आधिकारिक सड़क और घात लगाने के लिए आवश्यक सड़कों पर छिप गए, लेकिन वे फिर भी झाओ गुजियांग को मारने में विफल रहे। वह अपनी बेटी को झाओ गुजियांग से शादी करने की इजाजत नहीं देंगे। उनके दिल में राजकुमार पत्नी के उम्मीदवार का झुकाव लॉन्ग झान की ओर अधिक था। लॉन्ग झान की प्रतिभा उत्कृष्ट थी, उसकी पृष्ठभूमि असाधारण थी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह आज्ञाकारी था। लेकिन चार दिन बाद ली युनरुई और झाओ गुजियांग की शादी की तारीख होगी। यह शादी जरूरी थी क्योंकि हर 20 साल में महान जिया राजवंश को देश में खुशी और समृद्धि लाने के लिए एक राजकुमारी की शादी की आवश्यकता होती है। यह महान जिया राजवंश का शासन है। सम्राट होने के नाते स्वाभाविक रूप से वह स्वयं नियमों को नहीं तोड़ सकते। लेकिन झाओ गुजियांग उसे पसंद नहीं करता है और वह नहीं चाहता कि वह सत्ता हासिल करे और झेनबेई का दूसरा राजा बने। सम्राट का क्रोध बढ़ता देख ब्लैक कैवेलरी गार्ड्स के कमांडर ने डर से कांपते हुए अपना सिर जमीन पर दबा लिया। आपका अधीनस्थ अक्षम है और झाओ गुजियांग मेरे आदेश के तहत एक दस्ते के नेता से बच निकला। कमांडर के रूप में मैं अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकता। मुझे उम्मीद है कि मैं अपने पापों का प्रायश्चित कर सकूंगा और व्यक्तिगत रूप से झाओ गुजियांग को पकड़कर मार सकूंगा। ली ज़ायुआन ने ब्लैक कैवेलरी कमांडर की ओर देखा जो दोषी होने की दलील दे रहा था। उसका चेहरा थोड़ा सा हिल गया और उसके शरीर से एक शक्तिशाली आभा निकली। एक पल में पूरे शाही अध्ययन में एक तेज हवा चली जिससे मेज पर रखी स्मारक और किताबें सरसराहट करने लगी। बेवकूफ, ली ज़ायुआन के लंबे बाल उड़ गए, उसकी आंखें भयंकर थीं। एक बार असफल होना ठीक है, लेकिन क्या आप फिर भी दूसरी बार असफल होना चाहते हैं? क्या शिजीक राजा का बेटा को जबरन मार दिया जाएगा? अगर यह मामला उजागर हो गया तो मेरा मुंह कहाँ रहेगा? तुम्हारा अधीनस्थ अपनी गलती जानता है। ब्लैक कैवेलरी कमांडर ने अपना सिर जमीन पर कसकर दबाया। दूसरे दर्जे के मार्शल कलाकार की शक्तिशाली ताकत उसके सामने मौजूद ली ज़ायुआन ने दबा दी थी और वह हिलने में असमर्थ था। उसे बहुत पसीना आ रहा था। इस समय महाराज, गश्ती शिविर ने नवीनतम समाचार भेजा है। नपुंसक चेन ने सिर झुकाकर सूचना भेजी। ये सूचना गश्ती शिविर का नियमित गश्ती रिकॉर्ड था जिसमें क्योटो में गणमान्य व्यक्तियों और उनके परिवारों के प्रवेश और निकास का विवरण था। ली ज़ायुआन ने रिपोर्ट ली और उसे खोला। जब उसने उस पर तीन शब्द झाओ गुजियांग देखे तो उसका चेहरा भयावह रूप से उदास हो गया। झाओ गुजियांग क्योटो लौट आया है। उन्होंने कोई रास्ता नहीं बदला बल्कि खुलेआम क्योटो लौट आए। उन्होंने शुरू में सोचा था कि झाओ गुजियांग अपनी पहचान छिपाएगा, ध्यान आकर्षित नहीं करेगा और क्योटो में प्रवेश करने के लिए एक चक्कर लगाएगा जिससे ब्लैक कैवेलरी गार्ड्स को उसकी हत्या करने का मौका मिल जाएगा। लेकिन रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि झाओ गुजियांग ने जिंगझोऊ के क्षेत्र में कदम रखने के बाद कितने ईमानदार और अभिमानी तरीके से कदम रखा। जितना अधिक झाओ गुजियांग ने जिंगझोऊ के क्षेत्र में एक बड़ा प्रदर्शन किया उतना ही झाओ गुजियांग पर सीधे हमला करना मुश्किल था, क्योंकि यह झेनबेई के राजा का पुत्र है। ये झेनबेई के राजा द्वारा अपनी मृत्यु से पहले नामित दामाद और सम्राट है। अच्छा झाओ गुजियांग, अल्पविराम, राजकुमारी निवास। ली झाओहुआ ने एक गुप्त पत्र उठाया जो शेन हाओ द्वारा भेजा गया था। उसकी पतली उंगलियों ने गुप्त पत्र खोल दिया। पत्र में उल्लेख किया गया था कि यदि झाओ गुजियांग की जीवन रक्षक कृपा न होती, और ये तो छोड़िए कि उसके जीवन की गारंटी भी नहीं होती, तो सैन्य गोला बारूद और आपूर्ति खरीदने का मामला निश्चित रूप से विलंबित हो जाता। उनमें से शेन हाओ ने झाओ गुजियांग की भी प्रशंसा करते हुए कहा कि झाओ गुजियांग एक विश्वासपात्र व्यक्ति बनने के योग्य थे जो सैन्य आग और आपूर्ति के बारे में जानते थे और वह पहली नजर में असाधारण दिखते थे। जब ली झाओहुआ ने इसे पढ़ा तो वह अपने दिल में सदमे को छिपा नहीं सकी और हल्की धुंधली स्कर्ट शायद ही उसकी छाती के उतार चढ़ाव को छिपा सकी। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि झाओ गुजियांग, ये शतरंज का मोहरा जिसे वह पहले नीची निगाह से देखती थी और जिसे छोड़ने के लिए तैयार थी, वास्तव में ऐसे महत्वपूर्ण क्षण में उसकी बहुत मदद करेगा। उसने झाओ गुजियांग के मूल्य को कम करके आंका, लेकिन झाओ गुजियांग को युद्ध के घोड़ों और आपूर्ति की खरीद के बारे में खुद और शेन हाओ के अलावा कैसे पता चला? क्या ऐसा हो सकता है कि झाओ गुजियांग के पास अपनी स्वयं की आईलाइनर सेना हो? ऐसा लगता है कि इस महल ने आपको कम आंका है। झाओ गुजियांग के शतरंज के मोहरे का मूल्य उसकी उम्मीदों से कहीं अधिक है, लेकिन उसने पहले भी झाओ गुजियांग को छोड़ने के बारे में सोचा था और इस बार वह उसका एहसानमंद है। उसे पहले झाओ गुजियांग का एहसान चुकाना होगा। इसे वापस कैसे चुकाया जाए? ली झाओहुआ आकर्षक और कामुक थी। उसकी जेड उंगलियां उसके सामने गर्वित वक्रों पर फिसल रही थीं। झाओ गुजियांग, उस तरह का कामुक छोटा बदमाश संभालने के लिए सबसे अच्छा है। उत्तर गैरिसन किंग निवास। झाओ गुजियांग अभी अभी लिंग क्विंगशु के साथ लौटा था। उन्होंने तुरंत गृहस्वामी को उसके लिए एक कमरे का प्रबंध करने का निर्देश दिया। बूढ़ी गृहस्वामिनी ये देखकर हैरान रह गई कि झाओ गुजियांग एक और खूबसूरत महिला को वापस लेकर आया है जो पिछली महिलाओं से भी अधिक आकर्षक थी। युवा मास्टर के हाल के अधिग्रहणों की गुणवत्ता में काफी सुधार हुआ है। तुम कहाँ जा रहे हो? लिंग किंगक्सू ने पूछा जब उसने झाओ गुजियांग को निर्देश देने के बाद जाते देखा। बेशक, मुझे कुछ गंभीर मामलों पर ध्यान देना है, झाओ गुजियांग ने प्रस्थान करने से पहले कहा। लिंग किंगक्सू ने अवचेतन रूप से उसकी तुलना लॉन्ग झान से की। जब वह लॉन्ग झान के निवास पर होता तो लॉन्ग झान अक्सर उसके सामने घूमता रहता। ऐसा लग रहा था जैसे वह हर दिन उसे निगल जाना चाहता है, पर उसकी कोई महत्वाकांक्षा नहीं दिख रही थी। दूसरी ओर झाओ गुजियांग थके हुए लौटने के तुरंत बाद गंभीर मामलों पर ध्यान देने के लिए उत्सुक थे और उन्होंने जिम्मेदारी की मजबूत भावना प्रदर्शित की। वह और भी अधिक आश्वस्त हो गई कि झाओ बुजियांग को जीतने का उसका विचार सही था। हालांकि उसका संप्रदाय निश्चित रूप से इससे सहमत नहीं होगा, क्योंकि उसके गुरु लॉन्ग झान का बहुत सम्मान करते थे। इसलिए उसे पहले झाओ बुजियांग को कुछ हासिल करने में मदद करनी थी, कम से कम दाओ संप्रदाय के लिए कुछ फायदेमंद, ताकि वह उसे संप्रदाय के लिए अनुशंसित कर सके और उस घृणित लॉन्ग झान से भी निपट सके। झाओ बुजियांग की डरपोक छवि को देखकर लिंग क्विंगशु ने बड़बड़ाते हुए कहा, झाओ बुजियांग, मुझे आशा है कि आप मुझे निराश नहीं करेंगे। इस दौरान झाओ बुजियांग ने लिंग किंगक्सु को इसलिए निकाल दिया क्योंकि नौकरानी ने उसे देखा था। अध्ययन कक्ष में वापस आकर उसे एक गुप्त उत्तरी सीमाबाज का पत्र मिला। ये पुष्टि होने के बाद कि सम्राट उसे मारना चाहता था, झाओ बुजियांग और भी सतर्क हो गया। ये पत्र निस्संदेह एक जीवन रेखा थी। उसने दरवाजा खोलने से पहले उसे बंद कर दिया। पत्र की विषय वस्तु सरल थी, मेरे बेटे डरो मत, आपके पिता सातवीं राजकुमारी के साथ आपकी शादी में शामिल होने के लिए 4 दिनों में राजधानी पहुंचेंगे। मेरे बेटे डरो मत, ये वाक्य उनके लिए एक आश्वासन की गोली की तरह था। उसे सहना ही होगा, सम्राट उसे निशाना बना रहा था, यहां तक कि उसे मारना भी चाहता था। लेकिन अंततः अंधेरा छंट जाएगा और उसका सस्ता बूढ़ा आदमी, जो उसका साथ दे सकता था, वापस आ रहा था। मूल कहानी में यदि उत्तरी गैरीसन का राजा नर्म दिल न होता तो वह वास्तव में सिंहासन हड़प सकता था। लेकिन अब चूंकि वह जीवित था, वह धीरे धीरे उत्तरी गैरीसन राजा का दिमाग बदल सकता था। 10 लाख सैनिकों वाली उत्तरी सीमा सेना की शपथबद्ध निष्ठा के साथ कुछ भी संभव था। समाचार से राहत महसूस करते हुए झाओ बुजियांग बैठकर चाय पीने ही वाला था कि एक नौकर दौड़ता हुआ आया और कहने लगा कि सबसे बड़ी राजकुमारी ने उसे अपने निवास पर आमंत्रित किया है। मेरे वापस आते ही वह मुझे ढूंढने लगेगी। क्या शेन हाओ और ली झाओहुआ ने मेरी दयालुता की सूचना दी? सबसे बड़ी राजकुमारी का निवास महल के बाहर था। यह उत्तरी गैरिसन किंग निवास के बहुत करीब था और प्रवेश की प्रक्रिया बहुत सरल थी। हालांकि उसे उम्मीद नहीं थी कि झाओ बुजियांग इतनी जल्दी आ जाएगा। ली झाओहुआ के कमरे के बाहर झाओ बुजियांग ने पानी की आवाज सुनी। क्या यह महिला नहा रही होगी? तो मुझे थोड़ा इंतजार करना चाहिए। लेकिन ली झाओहुआ की आवाज तुरंत कमरे के अंदर से आई, युवा मास्टर झाओ, अंदर आइए। ओह, क्या यह इतना रोमांचक है? झाओ बुजियांग ने दरवाजा खोला और नम सुगंधित हवा उसके चेहरे को छू गई। उसने तुरंत अपने सामने एक स्क्रीन देखी जिस पर पतले कपड़े लटके हुए थे तथा उसके पीछे एक धुंधला सा चित्र था। वह सबसे बड़ी राजकुमारी के सुडौल ऊपरी शरीर को धुंधला धुंधला देख सकता था। हालांकि रोशनी बहुत कम थी और रूपरेखा थोड़ी धुंधली थी, लेकिन फिर भी यह उसके उभारों को छिपा नहीं सका। नमस्कार सबसे बड़ी राजकुमारी, झाओ बुजियांग ने सिर झुकाया। बैठ जाओ, ली झाओहुआ की कोमल और आकर्षक आवाज स्क्रीन के पीछे से आई, साथ में पानी के छींटे पड़ने की आवाज भी आई। क्या तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया है? मुझे नहीं पता, झाओ बुजियांग सतर्क थे। ली झाओहुआ टब से उठी और धीरे धीरे अपना शरीर पोंछने लगी। शेन हाओ के मामले में आपकी मदद के लिए धन्यवाद, महाराज बहुत दयालु हैं, ये तो बस एक छोटा सा प्रयास था। ये स्क्रीन वास्तव में बाधा डाल रही है, ये बहुत धुंधली है। पर्दे के पीछे से कपड़ों की सरसराहट की आवाज आई, मानो झाओ बुजियांग क्या सोच रहा था ये जानते हुए धीरे धीरे पर्दा खोला गया, जिससे ली झाओहुआ का फिगर सामने आया। वह सुगंधित हवा के साथ सुंदरता से निकट आई। झाओ बुजियांग शांत होने का नाटक करते हुए बैठा रहा। अब जब तुमने मेरी मदद की है तो तुम हम में से एक हो, ली झाओहुआ ने गोलमेज पर झाओ बुजियांग के सबसे नजदीक वाली सीट चुनी और सीधे बैठ गए। वह आकर्षक ढंग से मुस्कुराए। यदि आप न होते तो युद्ध के घोड़े और रसद काफी समय तक विलंबित हो जाते। झाओ बुजियांग भावशून्य रहा, लेकिन वह ली झाओहुआ के कॉलर के गैप को घूरने से खुद को रोक नहीं सका। इस महिला ने जानबूझकर ऐसे कपड़े पहने हैं, है ना? चाहे वह कुछ भी चाहे, मैं देखने का मौका नहीं छोड़ूंगा। ली झाओहुआ, झाओ बुजियांग के विचारों से प्रसन्न होकर मुस्कुराया। झाओ बुजियांग कामुक था और उसमें खामियां थी, जिससे उसे ज्यादा सहजता महसूस होती थी। उसके लिए झाओ बुजियांग को अपने वश में करना और उसे अपना अधीनस्थ बनाना आसान होगा। युरुई जल्द ही आपसे शादी करने वाली है, मुझे आश्चर्य है कि क्या आप उसे खुश कर पाएंगे। महाराज कृपया निश्चिंत रहें, मैं सातवीं राजकुमारी के साथ अच्छा व्यवहार करूंगा और उसके साथ जीवन मरण साझा करूंगा। महिलाओं आह, जो सहन करना सबसे कठिन है वह है अकेलापन। जब वे अकेली होती हैं तो वे बहुत अधिक सोचती हैं, बेतहाशा सोचती हैं, और जब वे बेतहाशा सोचती हैं तो चीजें आसानी से गलत हो जाती हैं। ली झाओहुआ की आंखें वसंत से भरी थी और उनकी आवाज कोमल और आकर्षक थी। तो आपको उसे अकेलापन से बचाना होगा, मैं नहीं जानता कि क्या आप में उसे अकेलापन से बचाने की क्षमता है। अरे इस औरत का क्या मतलब है? ओह, मैं अपने शरीर को मजबूत करने के लिए अधिक व्यायाम करूंगा। हे, ली झाओहुआ को पता था कि झाओ हुजियांग ने उसका मतलब गलत समझा था। वे सभी कहते हैं कि तुम एक प्लेबॉय होने के लिए प्रसिद्ध हो, अब तुम मेरे सामने एक बच्चे की तरह कैसे लग रहे हो?
महाराज, इसका क्या मतलब है? ली झाओहुआ ने स्पष्ट रूप से कहा, यदि आप यूं रूई से खुश नहीं हैं, तो यहाँ के दरवाजे हमेशा आपके लिए खुले रहेंगे।
झाओ हुजियांग ने समझदारी से सिर हिलाया, तो आपका यही मतलब है, तो धन्यवाद महाराज। जाओ, तुम्हारी शादी होने वाली है, तुम्हें और तैयारी करनी होगी, ली झाओहुआ ने चंचलता से कहा। ये झाओ हुजियांग अभी भी युवा था, शायद उसे अभी तक उसके शब्दों का मूल्य पता नहीं था, लेकिन शायद उसे तब समझ में आएगा जब उसकी शादी के दिन उसके साथ विश्वासघात किया जाएगा। लोगों को हमेशा बड़ा होना सीखना पड़ता है, और वह भी इसी चीज से गुजर चुकी थी। अल्पविराम। उत्तरी गैरिसन राजा निवास पर वापस आकर झाओ हुजियांग ने ली झाओहुआ पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि लियू रुयान पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया। तलवार कास्टिंग विला की इस यात्रा के दौरान उनकी साधना 8वें रैंक के महत्वपूर्ण बिंदु पर पहुंच गई थी। पवित्र ड्रैगन बॉडी द्वारा पुनः पोषित होने के बाद वह जल्द ही 7वें रैंक में कदम रखने में सक्षम हो जाएगा। झाओ हुजियांग की वापसी ने लियू रुयान को चौंका दिया। तुम मर कैसे नहीं गए? तुम सचमुच चाहते थे कि मैं मर जाऊं? झाओ हुजियांग मुस्कुराया। उसने इस महिला के साथ कई बार व्यवहार किया था, फिर भी वह अभी भी उसके प्रति शत्रुता रखती थी। निश्चय ही उपन्यासों में प्रलोभन पुनर्तः नकली था। थोड़ी बहुत योग्यता वाली सभी महिलाओं की अपनी अपनी तर्कसंगतता होती है और वे केवल इसी पहलू के कारण समर्पण नहीं करती। असंभव, चूंकि मेरी चौथी वरिष्ठ बहन ने कार्रवाई की है, इसलिए ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे आप बिना किसी नुकसान के वापस लौट सकें। तुम्हारी चौथी बड़ी बहन, अब वह भी मेरी औरत है, झाओ हुजियांग ने मन ही मन सोचा। लियू रुयान के साथ शब्दों को बर्बाद करने में वह बहुत आलसी है। लियू रुयान का दिमाग घूम गया। चौथी बड़ी बहन, क्या वह भी आपकी स्त्री है? असंभव, चौथी वरिष्ठ बहन ने हमेशा पुरुषों को कुछ नहीं समझा था। यहां तक कि जूनियर भाई, चौथी वरिष्ठ बहन जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति ने भी उस पर कभी दूसरी नजर नहीं डाली थी। वह इस कामुक झाओ हुजियांग को कैसे पसंद कर सकती थी? लेकिन झाओ हुजियांग ने उसके विचारों की परवाह नहीं की। चलो पहले काम पर लग जाएं। लियू रुयान को दर्द के कारण ही होश आया। इस समय वह बहुत कम कपड़ों में थी। उसके सुंदर शरीर से आश्चर्यजनक आकृतियां झलक रही थीं। झाओ हुजियांग ने सीधे उसके मुंह को रूमाल से ठूंस दिया। उसे डर था कि उसकी अनियंत्रित चीखें बाहर लिंग किंगक्सु को डरा देंगी। झाओ हुजियांग की उन्मत्त मांगों के तहत लियू रुयान केवल आक्रोशपूर्ण कराहें ही निकाल सकती थी। उसका शरीर हवा में फूल की तरह कांप रहा था और पवित्र ड्रैगन बॉडी की मदद से झाओ हुजियांग की सच्ची यांग शक्ति तेजी से समृद्ध हो गई। जब तक कि लियू रुयान कई बार छलनी की तरह कांपकर जमीन पर गिर नहीं गया। झाओ हुजियांग ने पैर मोड़कर बैठकर सच्चे यांग हृदय सूत्र का पाठ किया। उसकी आंतरिक शक्ति बाढ़ की तरह फूट पड़ी, 8वीं कक्षा की बेड़ियों को तोड़ते हुए। तभी लियू रुयान ने आश्चर्य से देखा, तुमने केवल 10 दिन की साधना की है और तुम मार्शल आर्ट न जानने से 7वीं कक्षा तक पहुंच गए हो। उसकी सांसें तेज हो गई थीं और उसे और भी अविश्वसनीय महसूस हो रहा था। यहां तक कि लॉन्ग झान को भी 7वीं श्रेणी की युद्ध शक्ति प्राप्त करने के लिए दाओ संप्रदाय की मार्शल आर्ट के साथ मिलकर दिन रात कठोर अभ्यास करना पड़ता था। अब अधिक से अधिक उसके पास केवल 6ठी श्रेणी की लड़ाकू शक्ति ही बची है। झाओ हुजियांग इतनी जल्दी कैसे उसे पकड़ सकता था? झाओ हुजियांग इतना आलसी था कि उसने उस पर ध्यान नहीं दिया। मैं कुछ और दिनों तक अभ्यास करने के बाद तुम्हें अपना स्तर बढ़ाने के लिए ढूंढूंगा। झाओ हुजियांग चुपचाप कालकोठरी से बाहर निकल गया। जब वह छोटे से कालकोठरी कक्ष से बाहर निकला तो लिंग किंगक्सु उसे एक मुश्किल कोण से घूर रहा था। लिंग किंगक्सु हैरान दिख रहा था। झाओ हुजियांग 2 घंटे के लिए इस रहस्यमय छोटे कमरे में घुसा था। बाहर आने के बाद उसकी सच्ची यांग शक्ति बहुत समृद्ध लग रही थी। उसने थकान और ताजगी दोनों का एहसास जताया। इस छोटे से कमरे में आखिर क्या था? उसे अंदर जाकर इसकी जांच करने का अवसर अवश्य ढूंढना चाहिए। अगली सुबह बुलाए जाने पर झाओ हुजियांग परिषद हॉल में प्रवेश किया। ली ज़ायुआन का चेहरा शांत था। मूल रूप से उसका इरादा उससे स्वर्गीय तलवार को निजी तौर पर छिपाने के बारे में सवाल पूछना था और शादी को सुझाने के लिए झाओ हुजियांग को पदावनत करना था। कौन जानता था कि इससे पहले कि वह कुछ बोल पाता, झाओ हुजियांग ने चीख कर कहा, महाराज, आपको इस विनम्र विषय के लिए खड़ा होना होगा। ली ज़ायुआन दंग रह गया। घटनाक्रम उसकी उम्मीद से अलग क्यों हुआ? झाओ हुजियांग ने अपने आंसू पोंछे और अपनी शिकायतें उगल दी। महाराज, आप यह नहीं जानते, लेकिन आपने मुझे जो कार्य सौंपा था उसे पूरा करने के लिए मैंने अपना भेष बदला, अपमान सहा और तलवार कास्टिंग विला तक भारी बोझ उठाया। कौन जानता था कि मुझे खलनायकों द्वारा नुकसान पहुंचाया जाएगा। सौभाग्य से मैं हमेशा महामहिम के बारे में सोच रहा था और इस तरह मैं 9 मौतों से बच गया और लाशों के पहाड़ और खून के समुद्र से बाहर निकल आया। मैं इतना भाग्यशाली था कि आपने मुझे जो कार्य सौंपा था उसे पूरा कर सका। लेकिन झाओ गुजियांग ने अपना स्वर बदला, कौन जानता था कि राजधानी लौटते समय भी मुझ पर हत्यारों ने घात लगाकर हमला किया था, जिन्होंने स्वर्गीय तलवार छीन ली थी। महामहिम की सुरक्षा के कारण मुझे केवल गंभीर चोटें ही आईं। उसी समय मुझे पता चला कि जिस व्यक्ति ने स्वर्गीय तलवार छीनी थी वह वास्तव में दरबार का ही कोई व्यक्ति था। झाओ गुजियांग के शब्दों से अदालत में मौजूद अधिकारी एक दूसरे की ओर निराशा से देखने लगे। उन्होंने सोचा कि झाओ गुजियांग को आज महामहिम द्वारा दंडित किया जाएगा, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि झाओ गुजियांग उन पर उंगली उठाएगा। युवा मास्टर झाओ, आपका क्या मतलब है? मेरे दरबार के कर्मचारी महामहिम के प्रति वफादार हैं, आपकी तलवार किसने छीन ली? ये सही है, ये सही है। झाओ गुजियांग ने ठंडी सांस ली और सीधे एक टोकन पेश किया। वह चिन्ह ब्लैक कैवेलरी फॉरबिडन आर्मी का चिन्ह था, लेकिन बहुत कम लोग उसे पहचान सके। लीजा युआन बहुत तेज दिमाग वाला था और उसने तुरंत किसी को टोकन पेश करने को कहा। उसकी आंखें गुस्से से भरी हुई थीं। इन मूर्खों ने वास्तव में टोकन खो दिया और झाओ गुजियांग को इसे लेने दिया। महाराज, एक दरबारी ने स्वर्गीय तलवार छीन ली जिसे आपने व्यक्तिगत रूप से निर्दिष्ट किया था। यह विद्रोह है। ये जानते हुए कि झाओ गुजियांग उसे मुश्किल स्थिति में डाल रहा है, लीजा युआन ने पलटकर जवाब दिया, यह एक दरबारी अधिकारी है या नहीं इसकी पुष्टि होनी बाकी है, लेकिन आपको अपने हाथों में मौजूद स्वर्गीय तलवार के नुकसान की जिम्मेदारी भी लेनी होगी। कौन जानता था कि झाओ गुजियांग ने पहले से ही एक बहाना सोच लिया था और लॉन्ग झान की ओर उम्मीद भरी नजरों से देख रहा था। लॉन्ग झान चुप था क्योंकि उसके हाथ में भी एक प्रभावशाली स्वर्गीय तलवार थी। उसे डर था कि यह मामला उसे जला देगा, लेकिन अप्रत्याशित रूप से झाओ गुजियांग ने फिर भी देखा। तुम मेरी तरफ क्यों देख रहे हो? झाओ गुजियांग ने सोचा, कमांडर लॉन्ग, आप किसका इंतजार कर रहे हैं? मुझसे जो तलवार छीनी गई थी वह सिर्फ एक नकली तलवार थी। क्या मैंने असली तलवार वापस लाने के लिए आपको नहीं सौंपी थी? क्या आपने इसे महामहिम के सामने पेश नहीं किया था? जैसे ही ये शब्द निकले, दरबार के सभी अधिकारी एक साथ लॉन्ग झान की ओर देखने लगे। लॉन्ग झान के रोंगटे खड़े हो गए। एक पल के लिए वह खुद को रोक नहीं पाया और झाओ गुजियांग को मारने के लिए दौड़ पड़ा। इस कमीने ने अपनी तलवार खो दी है और वह मुझे भी अपने साथ नीचे खींचना चाहता है। महाराज, लॉन्ग झान, क्या स्वर्गीय तलवार तुम्हारे पास है? लीजा युआन ने भी लॉन्ग झान की ओर देखा। लॉन्ग झान ने अपने दिल में झाओ गुजियांग को कई बार कोसा। उसने खुद को संभाला और सिर हिलाते हुए खड़ा हो गया। ये वास्तव में इस विनम्र व्यक्ति के हाथों में है, लेकिन सुबह सुबह अदालत में ब्लेड देखना उचित नहीं है। इस विनम्र व्यक्ति ने मूल रूप से अदालत के स्थगित होने के बाद इसे पेश करने का इरादा किया था। लॉन्ग झान ने जुआ खेलने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार ली युनई को स्वर्गीय तलवार के बारे में पता था। अब जब झाओ गुजियांग ने यह स्पष्ट कर दिया था तो वह सम्राट को धोखा देने और स्वर्गीय तलवार छिपाने का अपराध करने का जोखिम नहीं उठा सकता था। वह इसे अभी के लिए ही सहन कर सकता था। एक बार जब उसकी बड़ी बहनें उसकी मदद करने के लिए आ गईं, तो वह झाओ गुजियांग इस कुत्ते को मार सकता था। दरबार में लॉन्ग झान को हावी स्वर्गीय तलवार सौंपने के लिए मजबूर किया गया। झाओ गुजियांग को इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। वह पहले से ही बहुत सारे कर्जों के बोझ तले दबा हुआ था। लॉन्ग झान निश्चित रूप से उसे जाने नहीं देगा। बेहतर होगा कि इस अवसर का उपयोग लॉन्ग झान की युद्ध शक्ति को कमजोर करने के लिए किया जाए ताकि इस छोटे खलनायक को जीवित रहने के अधिक अवसर मिले। उसी समय एक वृद्ध दरबारी ने अपनी राय व्यक्त की। महाराज, झाओ गुजियांग इस बार तलवार कास्टिंग विला में गया और कई जियांगू विद्रोहियों को खत्म करने में दरबार की मदद की। वह बहुत सावधान भी है और उसने स्वर्गीय तलवार की रक्षा के लिए एक अचूक योजना का इस्तेमाल किया है। उसे पुरस्कृत किया जाना चाहिए। एक अन्य पुराने दरबारी अधिकारी ने कहा, हाँ महाराज, झाओ गुजियांग ने इस यात्रा में महान योगदान दिया है। झाओ गुजियांग ने अदालत के अधिकारियों की ओर देखा जो उसकी ओर से बोल रहे थे। ये दरबारी अधिकारी राजकुमारी के गुट से लगते हैं। क्या वे अब राजकुमारी के इरादों के कारण उसके बारे में अच्छी बातें कह रहे हैं? लीजा युआन ने हॉल में बैठे अधिकारियों की ओर देखा। क्या ऐसा हो सकता है कि झाओ गुजियांग ने पहले ही निजी तौर पर एक गुट बना लिया हो? उसने लॉन्ग झान की ओर देखा और गहरी आवाज में कहा, यद्यपि झाओ गुजियांग में योग्यता है, फिर भी उसमें दोष भी हैं। दूसरी ओर लॉन्ग झान ने स्वर्गीय तलवार को आगे बढ़ाने में योगदान दिया है। आज से उसे जियाओजी गार्ड बटालियन के कमांडर से जियाओजी बटालियन के डिप्टी कमांडेंट के रूप में पदोन्नत किया जाएगा, जो जियाओजी स्पीयर बटालियन, तोप बटालियन, रतन कवच बटालियन और गार्ड बटालियन के प्रबंधन में जियाओजी कमांडेंट की सहायता करेगा। ये सुनकर लॉन्ग झान प्रसन्न हुआ और एक घुटने पर बैठ गया। धन्यवाद महाराज। अन्य न्यायालय अधिकारियों की प्रतिक्रिया भिन्न थी। झाओ गुजियांग की योग्यता को एक वाक्य में पारित कर दिया गया और लॉन्ग झान को उसकी योग्यता के लिए सीधे पदोन्नत किया गया। शियाओजी बटालियन का ये डिप्टी कमांडेंट जल्द ही कमांडेंट बन जाएगा, निशिद सेना का एक वास्तविक नेता। लॉन्ग झान एक उभरता हुआ सितारा है। शियाओजी बटालियन की अन्य 3 बटालियनों के कमांडर वरिष्ठता के मामले में लॉन्ग झान से ऊपर हैं। क्या ये हो सकता है कि महामहिम के इरादे? झाओ गुजियांग की आंखें सिकुड़ गईं और उसके चेहरे पर ज्यादा भावनात्मक उतार चढ़ाव नहीं था, लेकिन उसने अपने दिल में ठंडक का एहसास किया। ये ठंडापन न केवल ली ज़ायुआन से आया बल्कि लॉन्ग झान से भी आया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि वह लॉन्ग झान को धोखा देगा और लॉन्ग झान की युद्ध शक्ति को कमजोर कर देगा, लेकिन लॉन्ग झान को फिर भी पदोन्नत किया गया और वह निषिद्ध सेना के सर्वोच्च अधिकारी की ओर बढ़ रहा था। यदि वह वास्तव में कमांडेंट के पद पर बैठता तो लॉन्ग झान के पास पहले निष्पादन करने और बाद में रिपोर्ट करने का अधिकार होता। क्या ये नायक का प्रभामंडल है? यदि यह जारी रहा तो वह लॉन्ग झान के खिलाफ कैसे जीत सकता है? क्या यही उसकी नियति है कि वह एक छोटा खलनायक बन जाए? चाहे वह कितना भी संघर्ष कर ले, वह निश्चित मृत्यु के भाग्य से बच नहीं सकता और लॉन्ग झान का अनुभव पैक नहीं बन सकता। उसने लॉन्ग झान की निगाह भी महसूस की, ठंडा, अभिमानी, आत्मविश्वासी। मानो झाओ गुजियांग ने चाहे कितना भी संघर्ष किया हो, अंततः लाभार्थी तो लॉन्ग झान ही होगा। धत तेरी की, झाओ गुजियांग ने अपने दांत पीसते हुए कहा, मेरा भाग्य मेरे हाथ में है, स्वर्ग के हाथ में नहीं। तुम रुको, मैं तुम्हारी चौथी बड़ी बहन को ढूंढकर अपनी भड़ास निकालता हूँ। अदालत स्थगित होने के बाद सम्राट ने अकेले में लॉन्ग झान को बुलाया। लॉन्ग झान आपका अभिवादन करता है महाराज, मेरे सम्राट 10,000 वर्ष जीवित रहें। उठना, ली ज़ायुआन ने लॉन्ग झान को देखा जो लंबा और मजबूत था, प्रचुर मात्रा में क्यूई और रक्त से युक्त था, ऊर्जा से भरा था और एक सुंदर दिखने वाला व्यक्ति भी था। उसकी नजर में वह दुबले पतले झाओ गुजियांग की तुलना में कहीं अधिक आकर्षक था। युनरुई की शादी होने वाली है। ली ज़ायुआन ने उस चाय का एक घूंट लिया जो ली युनरुई ने पहले बनाई थी और बोल पड़ा। लॉन्ग झान को समझ नहीं आया। ली युनरुई झाओ गुजियांग से शादी करने जा रही थी। उसे भी इस बात का बहुत अफसोस था, लेकिन वह लाचार था। महामहिम ने अचानक ये बात क्यों कही? उन्होंने कुछ देर सोचा, फिर दोनों हाथों को मोड़कर झुके और आदरपूर्वक कहा, लॉन्ग झान निश्चित रूप से उस दिन की सुरक्षा की रक्षा करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि कोई भी राजकुमारी की शादी में खलल न डाले। ली ज़ायुआन मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया। उसकी अभिव्यक्ति धीरे धीरे गंभीर होती गई। उसने लॉन्ग झान की ओर देखा और पूछा, अगर मैं आपसे युनरुई को वापस छीनने के लिए कहूं तो आप राजकुमार बन जाएंगे, क्या आप झाओ गुजियांग का विरोध करने की हिम्मत करेंगे? लॉन्ग झान की अभिव्यक्ति रुक गई। जल्द ही उसे शब्दों के पीछे का मतलब समझ में आ गया। सम्राट चाहता था कि वह सातवीं राजकुमारी को वापस छीन ले। स्वर्ग मेरी सहायता करता है, लेकिन लॉन्ग झान जानता था कि यह मामला जितना गंभीर होगा उसे उतना ही शांत रहना होगा। उसने अपनी अस्थिर भावनाओं को दबा लिया। जब तक महाराज झाओ शिजी को मरना चाहते हैं, मैं जल्लाद बनने को तैयार हूँ। बहुत बढ़िया, मैंने तुम्हें गलत नहीं समझा। वापस जाओ और अच्छी तरह से तैयारी करो। परसों भव्य शादी के दिन तुम और झाओ गुजियांग प्रभुत्व के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे। आपका विषय निश्चित रूप से विजयी होगा, लॉन्ग झान ने युवा जोश के साथ कहा और फिर तेजी से और निर्णायक कार्रवाई के साथ तैयारी करने के लिए वापस चला गया। ली ज़ायुआन ने संतोष से सिर हिलाया। वह लॉन्ग झान की प्रतिभा और मजबूत व्यक्तित्व की बहुत प्रशंसा करता था और उससे भी ज्यादा लॉन्ग झान की उसके प्रति वफादारी की। वह ऐसा दामाद चाहते थे जिसे नियंत्रित करना आसान हो, न कि झाओ गुजियांग जैसा कोई व्यक्ति जिसने पहले से ही गुट बना लिए हो और जिसे उत्तरी क्षेत्र की सेना का समर्थन प्राप्त हो जिससे उसे नियंत्रित करना मुश्किल हो। इसके अलावा झाओ गुजियांग उत्कृष्ट लॉन्ग झान से कहीं अधिक हीन था। उसने ये काम युनरुई की भलाई के लिए किया ताकि युनरुई को भविष्य में पछताना न पड़े। झाओ गुजियांग उत्तरी राजकुमार मनो में लौट आए। उसने देखा कि ली युनरुई उत्तरी राजकुमार मनो में अपना सिर ऊंचा करके पहुंची और अपने साथ पूरा दहेज लेकर आई, कुल 2 बड़े बक्से जो ली ज़ायुआन द्वारा दिए गए सोने, चांदी, गहने और उत्तम दुर्लभ वस्तुओं से भरे थे। ली युनरुई का चेहरा प्रत्याशा से भरा था। वह अपनी शादी के दिन का इंतजार कर रही थी जिस दिन वह वास्तव में एक महिला बनेगी। बूढ़े बटलर के चेहरे पर बड़ी मुस्कान फैल गई और वह जल्दी से आगे बढ़ा और दहेज लेकर चला गया, जिससे वे दोनों अकेले रह गए। शादी तो परसों है, फिर भी तुम इतने दुखी क्यों हो? ली युनरुई झाओ गुजियांग के बगल में बैठे और धीरे से उसे धक्का दिया। 2 दिन और समय बहुत धीरे बीत रहा है, मैं बहुत चिंतित हूँ। झाओ गुजियांग ने चुपचाप आह भरी। बूढ़ा सम्राट उसे दरबार में दबा रहा था, लॉन्ग झान का जोरदार समर्थन कर रहा था, उसका पूर्वाग्रह स्पष्ट था। शादी निश्चित रूप से आसान नहीं होगी, आखिरकार मूल पुस्तक में शादी भाग्य द्वारा चुने गए नायक लॉन्ग झान के लिए थी, न कि उसके लिए, झाओ गुजियांग मामूली खलनायक जो शुरुआती अध्याय में मर गया था। सौभाग्य से, उत्तरी राजकुमार निश्चित रूप से शादी के दिन राजधानी में वापस आ जाएगा। उस समय उत्तरी राजकुमार और वह पिता के प्यार और पुत्रवत भक्ति की एक तस्वीर होंगे, जो खुशी से कठिनाइयों पर काबू पा लेंगे। अन्यथा यदि उत्तरी राजकुमार देर से पहुंचे तो ये पिता के देर से आने और पुत्र के गायब होने जैसा मामला होगा। अब उन्हें उम्मीद है कि शादी आज होगी और उत्तरी राजकुमार उनका समर्थन करने के लिए आज राजधानी लौटेंगे। मुझे पता है तुम चिंतित हो, ली युनरुई ने अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनी और सोचा कि झाओ बुजियांग पहले से ही उससे शादी करने के लिए अधीर है। उसके दिल में मिठास का एक झोंका महसूस हुआ। ये लड़का हमेशा बोलने में अनिच्छुक रहता है लेकिन शारीरिक रूप से ईमानदार होता है। वह उसे उग्र लगता है लेकिन वास्तव में वह उसे अपने दिल में बहुत पसंद करता है। मैं भी आपसे जल्दी शादी करना चाहता हूँ, ली युनरुई ने धीरे से समझाया, लेकिन महारानी माँ ने मुझसे कहा कि शादी की तारीख देश के भाग्य से जुड़ी है और इसे यूं ही नहीं बदला जा सकता। अन्यथा नहीं तो मैं हर बात में आपकी बात मानूंगा। ली युनरुई का गोरा चेहरा लाल हो गया जब उसने ये कहा। पहले से ही एक गुणी पत्नी और प्यार करने वाली माँ की भावना दे रहा था। उसने अपनी आंख के कोने से झाओ बुजियांग की ओर देखा और झाओ बुजियांग के हाव भाव को ध्यान से देखा। ये देखकर कि झाओ बुजियांग अभी भी भौहें सिकुड़े हुए था, उसने अपनी खूबसूरत आंखें घुमाई और झाओ बुजियांग के गाल को चूम लिया। झाओ बुजियांग ने आश्चर्य से ली युनरुई की ओर देखा। तुम क्या चाहते हो? मैं एक सभ्य व्यक्ति हूँ, ली युनरुई ने अपने मुंह के कोनों को सिकोड़ लिया, अपनी आवाज को कम कर लिया, नर्म और चिपचिपा हो गई और ऑर्किड की तरह सांस ली। तुमने मेरा पैर काट दिया पिछली बार हम सराय में जो काम पूरा नहीं कर पाए थे। जब परसों हमारी शादी होगी तो रात लंबी होगी और हम इसे धीरे धीरे करेंगे भोर होने तक। ऐसा कहने के बाद ली युनरुई को लगा कि उसके इशारे बहुत स्पष्ट थे। उसका सुंदर चेहरा लाल हो गया और वह जल्दी से उठकर कमरे से बाहर चली गई। भागते समय उसने अपनी हरकतों को छिपाने के लिए ये बातें बताईं। अभी भी बहुत से काम निपटाने हैं, पहले मैं निकल जाऊंगा। वह परसों होने वाली शादी को लेकर काफी उम्मीदें लगाए बैठी थी। उसका प्रेमी महल की गहरी दीवारों को पार कर शाही पैतृक मंदिर तक जाता और उसे वापस जागीर में ले जाता। झाओ बुजियांग ने ली युनरुई की भागती और सुंदर पीठ को देखा। उसके हृदय में द्वंद्व था। मूल कथानक के अनुसार यह महिला ऐसी व्यक्ति नहीं थी जिसे छूने के लिए वह योग्य था। आखिरकार बाद में ली युनरुई बड़े होने के बाद एक उचित महिला प्रधान थी, लेकिन अब वह चाहकर भी उसे भगा नहीं सकता था। झाओ बुजियांग शुरू में ली युनरुई के साथ अपने रिश्ते को स्पष्ट करना चाहता था, लेकिन बूढ़े बटले को पैसे के लालची की तरह दहेज गिनते हुए देखना, ली युनरुई उसके प्रति बहुत दयालु थे, तो फिर कौन सा आदमी शुगर मम्मी को मना कर सकता है। हालांकि आधार यह है कि उसे जीवित रहना होगा। खलनायक की आत्म साधना की प्रथाओं में से एक यह है कि परिश्रम से अनाड़ीपन की भरपाई हो सकती है, और इसके अलावा उसके पास असाधारण प्रतिभा होती है, उसे विकसित न करना बर्बादी होगी। उन्होंने सातवें दर्जे के मार्शल कलाकार के रूप में अपने क्षेत्र को और मजबूत करने के लिए अपने कमरे में लौटने का निर्णय लिया। कमरे में कदम रखते ही उसे एक हल्की सी खुशबू महसूस हुई। ये खुशबू बहुत हल्की थी लेकिन उसकी याददाश्त में बहुत गहरी बैठ गई। ये तब की बात है जब उसने पहाड़ के जंगल में बड़े पत्थर पर लिंग किंगक्सू के साथ गहन बातचीत की थी। उसने लिंग किंगक्सू पर इसकी गंध महसूस की थी। ठंडे चेहरे के साथ उसने कमरे में एक अंधेरी जगह की ओर देखा। बाहर आओ, कमरा शांत था। आप हमारे बीच के सहयोगात्मक रिश्ते की अवहेलना करते हैं और जल्दबाजी में उस कमरे में घुस जाते हैं जिसमें आपको नहीं घुसना चाहिए था। आपने मुझे अपमानित किया है। क्या आपके पास जरा भी सम्मान है? झाओ बुजियांग की आवाज और अधिक ठंडी होती गई। उसकी आंखें सामने के अंधेरे स्थान पर टिकी रहीं। अगले ही पल पीछे से लिंग किंगक्सू की आवाज आई। सच्चा यांग हृदय सूत्र संप्रदाय की एक गुप्त विधि है। मुझे जानना चाहिए कि आपने गुप्त रूप से सच्चा यांग हृदय सूत्र कैसे सीखा। झाओ बुजियांग ने बस ठंडी सांस ली। यह मैंने गुप्त रूप से नहीं सीखा, आपकी छोटी बहन ली युरुयान ने मुझे व्यक्तिगत रूप से सिखाया है। जूनियर बहन ने इसे झाओ बुजियांग को सिखाया। क्या ऐसा हो सकता है कि छोटी बहन भी झाओ बुजियांग के साथ चली गई हो? ओह, मैंने भी क्यों कहा, वह कहाँ है? मैं उससे व्यक्तिगत रूप से पूछना चाहता हूँ। झाओ बुजियांग ने कोई जवाब नहीं दिया, वह आगे बढ़ गया। उसने पहले से ही सब कुछ तैयार कर रखा था। लिंग किंगक्सू पीछे पीछे चला, बाएं दाएं चक्कर लगाता हुआ। उत्तरी राजकुमार मनो में सैकड़ों कमरे थे। काफी देर बाद झाओ बुजियांग एक बड़े कमरे के बाहर रुका। दरवाजा खुल गया। गरिमा में और सुंदर पोशाक पहने ली युरुयान शांत सौंदर्य और वैभव से सुसज्जित कमरे में बैठकर शांति से चाय पी रहे थे। पांचवी जूनियर बहन आश्चर्यचकित होने के अलावा लिंग किंगक्सू और भी अधिक सतर्क थी। उसने ली युरुयान को देखा और फिर झाओ बुजियांग को देखा और ठंडे स्वर में कहा, पांचवी कनिष्ठ बहन, क्या आप जानती हैं कि गुरु की अनुमति प्राप्त किए बिना संप्रदाय के बाहर किसी को सच्चा यांग हृदय सूत्र सिखाने के लिए संप्रदाय के नियमों के अनुसार आपको किस प्रकार की सजा भुगतनी पड़ेगी?
बड़ी बहन, बहुत दिन हो गए मिलते हुए, पहले बैठ जाओ।
लियु रुयान और झाओ बुजियांग की आंखें मिली और अलग हो गईं। स्टूल को लिंग किंगक्सू की ओर धकेल दिया।
वरिष्ठ बहन, ईमानदारी से कहूं तो मैं पहले ही झाओ बुजियांग के साथ चली गई हूं।
झाओ बुजियांग मेरा आदमी बन गया है, उसे मुश्किल से ही दाओ संप्रदाय का सदस्य माना जाता है। मैंने उसे सच्चा यांग हृदय सूत्र सिखाया, ये संप्रदाय के नियमों का उल्लंघन नहीं माना जाता।
लिंग किंगक्सू ने सदमे में कहा, आप और वह?
जूनियर बहन, क्या आप जानती हैं कि आपका ड्रैगन पोषण करने वाला पवित्र शरीर कितना कीमती है?
कोई आश्चर्य नहीं कि यह अफवाह है कि झाओ बुजियांग एक बेकार व्यक्ति है, लेकिन अब उसकी मार्शल आर्ट इतनी शक्तिशाली है।
झाओ बुजियांग ने सूखी खांसी के साथ कहा, मैं अभी भी यहाँ हूँ दोस्त।
लिंग किंगक्सू उस पर ध्यान देने में बहुत आलसी थी और फिर से पूछना चाहती थी, लेकिन लियु रुयान ने बीच में टोक दिया।
जूनियर सिस्टर ने सीनियर सिस्टर से नहीं पूछा है, आप झाओ बुजियांग के पास कैसे पहुंची और यहाँ कैसे आईं?
आप जूनियर भाई लॉन्ग झान के साथ क्यों नहीं हैं?
जब लिंग किंगक्सू ने लियु रुयान को लॉन्ग झान का जिक्र करते सुना तो उसे घृणा महसूस हुई। उसने दांत पीसते हुए कहा,
लॉन्ग झान नीच और बेशर्म है, मैं पहले से ही उसके साथ समझौता करने लायक नहीं हूँ।
यही कारण है कि मैंने लॉन्ग झान को छोड़ दिया।
लियु रुयान मुस्कुराई। झाओ बुजियांग के साथ मेहनत करने के बाद वह समझ गई कि झाओ बुजियांग उस पहलू में लॉन्ग झान से अधिक उत्कृष्ट है।
लिंग किंगक्सू का चेहरा लाल हो गया, कुछ अविश्वास से।
आखिरकार कास्टिंग स्वॉर्ड मैनर के पीछे पहाड़ पर वह दिन।
यद्यपि उसे शर्म महसूस हुई, फिर भी ये प्रक्रिया उतार चढ़ाव से भरी थी और उसने इसका आनंद लिया।
जूनियर बहन, लॉन्ग झान पर मास्टर की गहरी कृपा है, क्या आपने इस पर गहराई से सोचा है?
लिंग क्विंगशू के शब्दों ने लियु रुयान को एक पल के लिए झिझकने पर मजबूर कर दिया।
वास्तव में उनके पीछे अभी भी संप्रदाय है।
झाओ बुजियांग के साथ जाने या न जाने का फैसला वे आसानी से नहीं कर सकते।
झाओ बुजियांग ने सुना कि वे आखिरकार व्यापार के बारे में बात कर रहे थे और समय पर हस्तक्षेप किया।
लॉन्ग झान पुराने सम्राट द्वारा बहुत अनुग्रहित है, एक लंबे समय के लिए एक पत्नी के रूप में मेरी स्थिति को लालच दे रहा है।
यदि वह मेरी पत्नी का पद छीन लेता है, ये पद प्राप्त कर लेता है और एक कदम आगे चला जाता है, तथा वृद्ध सम्राट द्वारा और भी अधिक मूल्यवान समझा जाता है तथा अपनी पूरी शक्ति से उसका पालन पोषण करता है।
लेकिन सम्राट स्वाभाविक रूप से संदिग्ध है। अगर सम्राट को पता है कि उसके पीछे एक संप्रदाय है और वह चाहता है कि लॉन्ग झान वफादार रहे, तो फिर लॉन्ग झान कैसे चुनेगा? क्या ये संप्रदाय के प्रति निष्ठा है या विश्व पर शक्ति?
लिंग किंगक्सू और लियु रुयान दोनों बुद्धिमान थे और झाओ बुजियांग के संकेत के बाद वे एक ही समय में चुप हो गए।
लियु रुयान ने भी आह भरी, दाओजोंग सिर्फ एक जियांगू संप्रदाय है और आकाश के नीचे की सारी जमीन राजा की है।
जूनियर भाई पहले से ही महत्वाकांक्षी है, इसलिए उसे कैसे चुनना चाहिए?
क्या ये स्पष्ट नहीं है?
उसने हिम्मत की।
लिंग किंगक्सू की छाती फूल गई। जितना अधिक वह इसके बारे में सोचती, उसका गुस्सा उतना ही बढ़ता जाता।
ठीक है।
झाओ बुजियांग ने लिंग किंगक्सू के कंधों को पकड़ लिया और धीरे से कहा,
पहले आप बाहर जाकर शांत हो जाइए, मुझे बाद में आपसे कुछ पूछना है।
लिंग क्विंगशू को झाओ बुजियांग ने आउट कर दिया।
लियु रुयान ने अपना भेष उतार दिया।
वह झाओ बुजियांग के करीब झुकी, भौहें सिकोड़ी, अपनी आवाज धीमी की और विनती की,
मैंने पहले ही अभिनय में आपका सहयोग किया है, जल्दी से मुझे मारक दवा दे दो।
स्वाभाविक रूप से तुम्हें मारक दवा दी जाएगी, लेकिन मामला पूरा हो जाने के बाद।
झाओ बुजियांग ने मुस्कुराते हुए कहा, अब से आप यहाँ आराम से रह सकते हैं, वापस कालकोठरी में जाने की कोई जरूरत नहीं है।
जब आपके पास समय हो तो नए पदों के बारे में सोचें, यह मेरे लिए अच्छा है और यह आपके लिए भी अच्छा है।
लियु रुयान कुछ कहना चाहता था लेकिन रुक गया, लेकिन झाओ बुजियांग पहले ही लिंग किंगक्सू को खोजने के लिए स्वतंत्र रूप से निकल चुका था।
लियु रुयान को अचानक बहुत दबाव महसूस हुआ। यह अनुमान लगाया जा सकता था कि चौथी वरिष्ठ बहन भी झाओ बुजियांग में शामिल हो जाएगी। चाहे सुंदरता हो या आकृति, चौथी बड़ी बहन उससे किसी भी तरह कम नहीं थी।
वह जानती थी कि वह अब झाओ बुजियांग के प्रति पहले की तरह अहंकारी नहीं हो सकती, अन्यथा उसे वास्तव में ठंडे महल में फेंक दिया जाएगा।
मुझे इसके लिए लड़ना होगा।
कमरे के बाहर, क्या कहा आपने?
लिंग क्विंगक्सू ने सीधे झाओ बुजियांग से पूछा।
मैंने उसके साथ चर्चा की कि लॉन्ग झान से कैसे निपटा जाए।
उससे नहीं निपटा जा सकता।
लिंग किंगक्सू ने सीधे ठंडा पानी डाला।
लॉन्ग झान की प्रतिभा हमारी पांच बहनों से कहीं ज्यादा है। हालांकि तुमने भी ट्रुयांग हॉर तकनीक सीखी है, लेकिन तुम्हारी मौजूदा ताकत अभी भी उससे बहुत पीछे है।
तुम उसे आमने सामने की लड़ाई में नहीं हरा सकती, इसीलिए तो तुम मेरे पास हो, है ना?
झाओ बुजियांग की आंखें विश्वास से भरी थीं जब उसने लिंग किंगक्सू को देखा। आपके पास एक रास्ता है। मूल पुस्तक में मेरा फ्लावर वाटरमून के अलावा लिंग किंगसू भी एक मार्शल आर्ट जानता था जो ज्वार को मोड़ सकता था,
लियू रुयान ने तुम्हें बताया, लिंग किंगसू ने आश्चर्य से पूछा।
बेशक हम सभी एक ही पक्ष में हैं, झाओ बुजियांग ने जानबूझकर कहा।
लिंग किंगसू ने भौहें सिकोड़ी। यह उसका रहस्य था, लेकिन लियू रुयान ने वास्तव में झाओ बुजियांग को बताया था।
भूल जाओ, चूंकि मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं, मैं अपनी पूरी ताकत से तुम्हारी मदद करूंगा।
इसे मेरी ईमानदारी माना जा सकता है, लिंग किंगसू ने सच कहा। मैंने संप्रदाय में एक अनोखा कौशल सीखा है जिसे ब्राइडल गाउन दिव्य कौशल कहा जाता है, जिसके लिए दो या दो से अधिक लोगों को एक साथ अभ्यास करने की आवश्यकता होती है। अभ्यास सफल होने के बाद एक महत्वपूर्ण क्षण में उनमें से एक अस्थायी रूप से खुद को आशीर्वाद देने के लिए दूसरे की शक्ति उधार ले सकता है और उनकी ताकत आसमान छू जाएगी।
बस इतना ही, झाओ बुजियांग ने सिर हिलाया। चलो इसका अभ्यास करते हैं।
लिंग क्विंगजू ने झाओ बुजियांग को गुस्से से देखा। आपके साथ अभ्यास कौन करना चाहता है?
ब्राइडल गाउन दिव्य कौशल का अभ्यास करने के लिए दो लोगों को एक दूसरे के प्रति ईमानदार और एकनिष्ठ होना आवश्यक है।
एक दूसरे के प्रति ईमानदार, झाओ बुजियांग ने गंभीरता से कहा।
मैं एक ईमानदार व्यक्ति हूं, इसलिए एक दूसरे के साथ ईमानदार होने में कोई बुराई नहीं है।
लिंग किंगसू ने अपना मुंह खोला, अवाक महसूस करते हुए, लेकिन मैं आपके साथ ईमानदार नहीं होना चाहती।
मैं समझ गया, झाओ बुजियांग के चेहरे पर अचानक एक प्रबुद्ध भाव आया। आप मेरे नाजुक शरीर से मोहित होने के बारे में चिंतित हैं और एकाग्रचित होने में असमर्थ हैं, इसलिए आपने मना कर दिया।
चले जाओ, लिंग किंगसू गुस्से में सीधे मुड़ा, अपना मुंह बंद करो और मेरे कमरे में आओ।
जल्द ही लिंग किंगसू और झाओ बुजियांग बिस्तर पर एक दूसरे के सामने बैठे थे।
झाओ बुजियांग ने अपना टॉप उतार दिया जिससे उसका मजबूत ऊपरी शरीर दिखने लगा, वह उदार दिख रहा था। उसने अपना सिर और छाती ऊपर उठाई जिससे लिंग किंगसू को उसकी सराहना करने का मौका मिला।
लिंग किंगसू के चांदी जैसे दांत गुस्से से कांपने लगे और वह अपने दिल में खुद को सांत्वना देती रही।
ये सब झाओ बुजियांग को जीतने, संप्रदाय को गौरवान्वित करने और दुनिया के लोगों को बचाने के लिए था।
यह सिर्फ ब्राइडल गाउन दिव्य कौशल का अभ्यास था, यह नहीं था।
यह मांस का एक टुकड़ा खोने जैसा नहीं था।
देखना बंद करो, अब तुम्हारी बारी है, झाओ बुजियांग ने अपने कपड़े तय करते हुए लिंग किंगसू से आग्रह किया।
लिंग किंगसू स्पष्ट रूप से अभी तैयार नहीं था।
तुम रात में कई सपने आते हैं। जितना अधिक समय हम अभ्यास करेंगे उतना ही मैं मजबूत हो जाऊंगा और लॉन्ग जान के लिए पत्नी की स्थिति को जब्त करने की संभावना कम होगी। दाओजोंग उतना ही सुरक्षित होगा और आप अधिक सहज होंगे।
मैंने तुम्हें अपना कुंवारा शरीर पहले ही दिखा दिया है, क्या तुम थोड़ा सा भी दिखाने को तैयार नहीं हो?
तुमने जूनियर सिस्टर के साथ पहले ही ऐसा कर लिया है, तुम एक भूतिया कुंवारी हो।
लिंग किंगसू अनिच्छुक थी और झाओ बुजियांग की झुंझलाहट से परेशान थी।
उसने अपने कपड़े उतारने शुरू कर दिए और उसके गोरे और नाजुक गालों पर मोमबत्ती की मंद रोशनी में दो लाल धब्बे हल्के से दिखाई देने लगे।
उसकी गोरी त्वचा पर आप छोटे छोटे कांपते हुए रोएं और छोटे छोटे रोंगटे भी देख सकते थे।
झाओ बुजियांग ने इसे स्पष्ट रूप से देखा और उसने निगल लिया।
ये लिंग किंगसू का फिगर वाकई बहुत अच्छा है। वह आमतौर पर इतने रूढ़िवादी कपड़े पहनती है, आप ये भी नहीं बता सकते, यह इतना विपरीत है, मुझे ये पसंद है।
अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर लिंग किंगसू को झाओ बुजियांग को ब्राइडल गाउन दिव्य कौशल का अभ्यास करने के लिए सहमत होने पर और भी अधिक पछतावा हुआ।
लिंग किंगसू को गुस्से से अपना चेहरा दूसरी ओर घुमाते हुए देखकर,
मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपके लिंग किंगसू का मन इतना असहनीय होगा,
झाओ बुजियांग ने ठंडी सांस ली।
मैंने बस थोड़ी सी त्वचा दिखाई और आपने नजरें फेर ली।
आपकी आंखें नहीं देख रही थी लेकिन आपका दिल देख रहा था।
मैंने नहीं किया, तुमने किया।
यदि तुम्हें मौन रूप से पता था तो तुम अपनी आंखें क्यों छिपाते?
लिंग किंगसू पहले से ही घमंडी थी और अब वह झाओ बुजियांग द्वारा उकसाई गई थी। उसने गुस्से से अपना चेहरा घुमाया और झाओ बुजियांग के शरीर को घूरने लगी।
उसका फिगर वाकई अच्छा है।
नहीं, इसका मुझसे क्या संबंध है?
इस महिला का चेहरा इतना लाल क्यों है? क्या ऐसा हो सकता है कि वह अभ्यास करने से पहले ही पागल हो गई है?
चुप रहो, मैंने कुछ नहीं कहा। संक्षेप में, चुप रहो, कुछ मत सोचो, अपना हाथ मेरी कमर पर रखो।
लिंग किंगसू ने अपनी खूबसूरत आंखों से झाओ बुजियांग को घूरा, उसका हाथ पकड़ा और उसे अपनी विलो कमर पर रख दिया।
झाओ बुजियांग की हथेली बहुत गर्म थी जिससे लिंग किंगसू को थोड़ी देर के लिए गर्मी महसूस हुई।
उसका हाथ भी झाओ बुजियांग की कमर पर था। किसी और चीज के बारे में मत सोचो,
बाद में तुम और मेरी शक्ति कमर के साथ एक दूसरे के डांटियन में प्रवेश करेगी।
प्रक्रिया के दौरान आपको अपने मन को स्थिर करना याद रखना चाहिए।
मेरे मन को स्थिर क्यों करना है? क्या ऐसा हो सकता है कि मैं कुछ करने से खुद को रोक ना पाऊं?
झाओ बुजियांग को पता नहीं क्यों लिंग किंगसू ने उसे घूर कर देखा और कोई और समय बर्बाद नहीं किया।
एक पल में एक झुलसाने वाली आंतरिक शक्ति झाओ बुजियांग की कमर के साथ साथ उसके डेंटियन में भर गई। झाओ बुजियांग को तुरंत पूरे शरीर में सुन्नता और कुरकुरापन महसूस हुआ।